सम्राट बंजर भूमि महाद्वीप तीन प्रतिबंधित क्षेत्रों में से एक दानव गुफा अस्थि भूमि में काले बादलों ने आकाश को ढक लिया और बिजली का प्रकोप बढ़ गया। और दानव गुफा अस्थि भूमि के भीतर एक बड़े पैमाने पर ढह चुके पर्वत शिखर पर एक रक्तरंजित अंधा व्यक्ति खड़ा था। मैं 100 वर्षों में आदरणीय बना, 1000 वर्षों में सम्राट, फिर भी मैंने कभी नहीं सोचा था कि आज आप भाग्य के बच्चों द्वारा मुझे एक मृत अंत तक मजबूर किया जाएगा। सचमुच हंसी की बात है, सचमुच सचमुच हंसी की बात है, हाहा हाहा हा। वांग चेन पागल सा लग रहा था। पहाड़ की चोटी पर खड़ा, अपने चारों ओर ऊपर और नीचे घने भाग्य के बच्चों का सामना कर रहा था और जोर से हंस रहा था। पहाड़ की चोटी पर तेज हवा के कारण उसका फटा हुआ खून से सना हुआ जुबान जिन रोग जोर से फड़फड़ाने लगा, जिससे उसका शरीर अस्त व्यस्त दिखाई देने लगा। काश तुम्हें ये पता होता तो तुमने ऐसा व्यवहार क्यों किया। तुम पहले ही पतन के गर्त में गिर चुके हो और तुम्हारे पास अभी भी स्वर्ग दावमन का जैसा महान हथियार है। तुम्हें फांसी दे देनी चाहिए। तलवार जैसी भौहों और तारों भरी आंखों वाला एक सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति भीड़ में से वांग चेन की ओर तलवार तानते हुए मन ही मन कुछ बुदबुदा रहा था। उसका पाखंडी रूप सचमुच घृणित था। अगर मैं मर भी जाऊं तो भी तुम्हारे लिए यह आसान नहीं होगा। वांग चेन की आंखें पहले से ही अंधी थीं, खून लगातार बह रहा था। बोलने के बाद उसका आभामंडल फिर से फूट पड़ा और उसके पूरे शरीर की त्वचा तेजी से फटने लगी। उसके दाहिने हाथ में रखा स्वर्ण मन का पूरी ताकत से कुचल दिया गया और अत्याचारी ऊर्जा धीरे धीरे फूट पड़ी। अच्छा नहीं, उसने अभी अभी अपनी मुसीबतें पूरी की हैं। स्वर्ग दाव मनके की आत्मा विनाशकारी शक्ति को कम करके नहीं आंका जा सकता। भागो। इस समय उपस्थित भाग्य के घने बच्चे बहुत भयभीत थे और भागने के लिए अपने जीवन रक्षक तरीकों का उपयोग कर रहे थे। अपने शरीर को धीरे धीरे फैलते और फटते हुए महसूस करते हुए वांग चेन ने अपना सिर उठाया। उसकी अंधी आंखें आकाश की ओर थीं, जो अत्यधिक अनिच्छा से भरी हुई थीं। जियांग लिंग जियान, अगर अगला जीवन है तो मैं निश्चित रूप से इस गुरु शिष्य संबंध को तोड़ दूंगा और तुम्हें, उस पापी को जिसने अप्रत्यक्ष रूप से मेरी मृत्यु का कारण बना, कठोर दंड दूंगा। धमाका। सम्राट बंजर भूमि महाद्वीप को हिला देने वाले विस्फोट के साथ वांग चेन की गुस्से वाली दहाड़ धीरे धीरे बढ़ती आग की लपटों में डूब गई। डॉट 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 1000 साल पहले सम्राट बंजर भूमि महाद्वीप पर। देर रात सम्राट बंजर भूमि महाद्वीप के सम्राट बंजर भूमि क्षेत्र में स्थित विशाल ताइजू अमर संप्रदाय के भीतर वांग चेन बिस्तर पर पसीने से लथपथ था। अचानक चौंक कर जाग गया। उसकी आंखें अचानक खुल गईं। बस एक झिर्री सी। क्या क्या हो रहा है? वांग चेन धुंधली दृष्टि के साथ बिस्तर पर लेटा हुआ था। रजाई की गर्मी महसूस कर रहा था, जो न केवल गर्म थी बल्कि मुलायम भी थी। नहीं नहीं, क्या मुझे पहले ही मर जाना चाहिए था? वांग चेन बहुत डर गया था। वह सच्चाई जानना चाहता था, इसलिए उसे पहले अपनी आंखें पूरी तरह खोलनी पड़ी। लेकिन उसने बहुत कोशिश की, लेकिन वह आसपास के वातावरण को केवल मोटे तौर पर ही देख पाया। वह उसे पूरी तरह से खोल नहीं सका। इस समय वह ऐसा था जैसे किसी को नींद में लकवा मार गया हो। वह होश में था और अपने आसपास की चीजों को धुंधला धुंधला देख सकता था, लेकिन वह हिल नहीं सकता था। डिंग डिंग डिंग, क्रैकल क्रैकल। तभी वांग चेन के दिमाग से अचानक एक हकलाने वाली आवाज आई, साथ ही एक अराजक कट की आवाज भी आई। साय सिस्टम। वांग चेन को लगा जैसे उसका शरीर शिथिल पड़ गया हो, लेकिन उसका दिल खुशी से उछल पड़ा। उसे पता था कि उसका रक्षक आ गया है। हा हा हा। हो होस्ट, जरा रुको क्रैकल, ये सिस्टम अभी रीस्टार्ट हुआ है क्रैकल। जैसे ही सिस्टम के शब्द गिरे, उसकी ठंडी भावनाहीन लेकिन कुछ हद तक भावुक यांत्रिक आवाज धीरे धीरे सामान्य हो गई। मेजबान मेजबान, हमारा तो सचमुच पुनर्जन्म हो गया। वांग चेन अचानक अपने दिमाग को हिला देने वाली आवाज से इतना चौंक गया कि उसने अनजाने में अपनी बाईं आंख बंद कर ली। उसका सिर घूमने लगा। रर सच में सच में। वांग चेन एक क्षण के लिए इतना उत्साहित हो गया कि उसके मन में उसका उच्चारण थोड़ा विकृत हो गया। मरने से पहले वह बस चिल्लाया था और उसे वास्तव में पुनर्जन्म मिला। पता लगने के बाद, हालांकि मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन इसकी गारंटी तो है, पुनर्जन्म की गारंटी। हा हा हा। सिस्टम की भावनात्मक यांत्रिक आवाज से कोई यह बता सकता था कि यह इस समय वांग चेन की तुलना में निश्चित रूप से अधिक उत्साहित था। आखिरकार इसने जीवन भर कठिनाइयों के बीच वांग चेन का साथ दिया था और अंत में इसे भी उसके साथी भाग्य के उन बच्चों के साथ नष्ट होना पड़ा। अब जबकि उनका पुनर्जन्म हुआ था, इसका मतलब था कि उन्हें इस जीवन में पूर्व ज्ञान प्राप्त था। यह उत्साहजनक कैसे न होता। जल्दी 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 बताओ, अब मैं किस काल में पुनर्जन्म ले रहा हूँ? ये निश्चित रूप से वह दिन नहीं है जब मैंने 19 वर्ष की उम्र में पहली बार देहांतरण किया था और पहाड़ों में जियांग लिंग क्सियन द्वारा शिष्य के रूप में अपना लिया गया था, है ना? लेकिन अब वांग चेन को सबसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि उसका पुनर्जन्म किस समय अवधि में हुआ है। एक पल के लिए वांग चेन अपने सोते हुए शरीर की गर्म मुलायम और सुगंधित अनुभूति को भी भूल गया। ये यदि इस प्रणाली का अब मानव रूप होता तो वह निश्चित रूप से चुपचाप अपनी उंगलियां घुमा रही होती तथा थोड़ा शर्मिंदा दिख रही होती। तुम किस ये की बात कर रहे हो? जल्दी करो और मुझे बताओ। मुझे पता है ये बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है, है ना? वांग चेन को पहले से ही महसूस हो रहा था कि उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ है, लेकिन फिर भी वह आंसू के कगार पर जवाब के लिए बार बार चिल्ला रहा था। मेजबान, आपको पहले ये देखना चाहिए कि आपके बगल में कौन आपको कसकर गले लगा रहा है। वांग चेन रुक गया, सिस्टम की कमजोर आवाज सुनकर, और अपने शरीर को महसूस किया जो नशे में और कमजोर लग रहा था। लेकिन वांग चेन अभी भी अपनी पूरी साधना के साथ बलपूर्वक भड़क उठा। धिक्कार है, कोई खेती नहीं, वांग चेन ने मन ही मन कोसा, लेकिन वह अभी भी अपनी मजबूत इच्छाशक्ति पर भरोसा करके अपने सिर को थोड़ा सा मोड़ने में कामयाब रहा। आखिरकार अपनी धुंधली नजर में उसने उसे देख लिया। जियांग लिंगक्सियन का सुंदर ठंडा चेहरा, जो तुलना से परे था, धीरे से उसके चेहरे के किनारे से दबा हुआ था, और उसके रूप को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह शरीर की गर्मी के स्थानांतरण का आनंद ले रही थी तथा आराम से अपना सिर थोड़ा सा झुका रही थी। जब उसने अपनी धुंधली आंखों से उस खूबसूरत चेहरे को फिर से देखा तो वांग चेन क्षण भर के लिए अचंभित और स्तब्ध रह गया, क्योंकि इस समय जो उसे कसकर गले लगा रहा था वह उसके पिछले जन्म का सुविधाजनक गुरु था। वह इस हॉट महारानी भी थी जो वांग चेन के पिछले जीवन में प्रसिद्ध थी, या यूं कहें कि 1000 साल बाद। सब उसे बर्फ हृदय महारानी क्यों कहते थे? क्योंकि उसका हृदय बर्फ जैसा था, उसे कोई पिघला नहीं सकता था। यहां तक कि उसका एकमात्र शिष्य वांग चेन भी उसकी ठंडी निगाहों से तब तक घूरता रहता था जब तक कि जब भी वह उसके शरीर को छूता तो उसे गर्भाशय जैसी ठंडक महसूस होने लगती थी। और वर्तमान में लौटते हुए जैसे ही वांग चेन धीरे धीरे अपने होश में आया, उसके दिल में तुरंत एक झटका लगा। वो क्या उसे मर्दों से सबसे ज्यादा नफरत नहीं थी? यदि उसका हाथ भी उसके एकमात्र शिष्य द्वारा छू लिया जाता तो वह ठंडी हो जाती और बर्फीली आंखों से उसे घूरने लगती। लेकिन अब भविष्य की आइस हॉट महारानी जियांग लिंगक्सियन के साथ क्या हो रहा था, जिसने उसे नशीला पदार्थ देकर बेहोश कर दिया था? उसके पतले हाथ उसके शरीर के चारों ओर लिपटे हुए थे, उसका सुंदर चेहरा उसके चेहरे से सटा हुआ था, और उसकी लंबी टांगें उसकी स्कर्ट के नीचे रजाई में उसके ऊपर लिपटी हुई थी। वांग चेन हैरान था और अपनी पिछली जिंदगी को याद किए बिना नहीं रह सका। उसे याद आया कि जियांग लिंगक्सियन बिल्कुल ऐसी नहीं थी, लेकिन अब उसके लिए ये सब मुख्य बात नहीं थी। मुख्य बात थी क्यों, बुहूहू, क्यों मैं उसका शिष्य नहीं बनना चाहता, मैं नहीं बनना चाहता। इस घातक स्त्री के कारण ही उसने अपने पिछले जीवन में भाग्य के बच्चों के बीच इतने सारे दुश्मन बना लिए थे। इसके परिणाम स्वरूप, जो उसी क्षेत्र में अजेय था और जिसे जीवन का आनंद लेना चाहिए था, उसे हजारों भाग्य के बच्चों द्वारा संयुक्त रूप से दबा दिया गया और मार दिया गया। हालांकि इसका एक कारण यह था कि वह स्वयं काफी घमंडी था, लेकिन मूल कारण अभी भी जियांग लिंगक्सियन ही था। वांग चेन चिल्लाना चाहता था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई नशा दे दिया गया हो। उसका शरीर न सिर्फ लंगड़ा था, बल्कि वह चिल्ला भी नहीं पा रहा था। यदि उसका पुनर्जन्म न हुआ होता और उसके पिछले जन्म की इच्छाशक्ति ने उसके शरीर में नशीली दवाओं और ठंडी ऊर्जा के प्रभाव को नष्ट न किया होता, वह शायद अभी एक मरे हुए आदमी की तरह सो रहा होगा। शायद उसे इस बात का भी पता नहीं होगा कि जियांग लिंगक्सियन उसे बार बार पलट रहा है। रुको, एक मिनट रुको, नहीं, क्या ऐसा हो सकता है कि पिछले जन्म में जब भी मैं ताइजू अमर संप्रदाय में इतनी अच्छी नींद सोता था तो इसका कारण ये था कि ऐसा लग रहा था जैसे वांग चेन को एक चौंकाने वाला रहस्य पता चल गया हो और उसने तुरंत अपने मन में चल रहे सिस्टम को ये बात बता दी। लेकिन सिस्टम, तुम हमेशा मेरे साथ रहे हो, क्या तुम्हें नहीं पता, या क्या तुम मुझे बताना नहीं चाहते? मैं ये सिस्टम सचमुच नहीं जानता। जब तुम सोते हो मैं तुम्हारे साथ सोता हूँ। उस समय मैंने आपसे मुझे अपग्रेड करने के लिए कहा था, लेकिन आपने ये कहते हुए मना कर दिया था कि पूरे दिन ऑनलाइन रहना बेकार है। वांग चेन, ठीक है, ऐसा लगता है कि ओरिजिन पॉइंट्स को बचाने के लिए सिस्टम को अपग्रेड न करना उसकी अपनी गलती थी। हालांकि मेजबान, क्या आपको अभी भी याद है कि आपके पास अराजक नौ यांग दिव्य शरीर एक सिस्टम सीमित संस्करण का है? तो क्या हुआ, क्या यही वजह है कि वह मुझे हर रात अपमानित करती है? मेरे जैसा शुद्ध निर्दोष आदमी इस तरह कैसे रह सकता है? अपमान की बात तो दूर, वह हर रात मुझे पकड़ कर रखती थी। फिर भी जब मैंने अपने पिछले जन्म में उसके प्रति अपना स्नेह व्यक्त किया तो उसने हमेशा हमारे गुरु शिष्य संबंध का हवाला देते हुए मुझे ठंडेपन से अस्वीकार कर दिया। प्रणाली, क्या ऐसी संभावना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि जियांग लिंगक्सियन के पास नौ यिनशी दिव्य शरीर है, और उसी समय उसने गलती से आपकी काया अराजक नौ यांग दिव्य शरीर को सर्वोच्च भट्टी काया नौ यांग दिव्य शरीर के रूप में पहचान लिया? अराजक नौ यान दिव्य शरीर में नौ यान दिव्य शरीर के सभी गुण मौजूद हैं, लेकिन इसमें अराजक दाव कविता भी शामिल है जो इसे और भी मजबूत बनाती है और एक सिस्टम सीमित संस्करण काया बनाती है और उसे अपने शरीर के भीतर यिन शीत ऊर्जा को दबाने के लिए नौ यान दिव्य शरीर का उपयोग करने की आवश्यकता है। तो क्या इसीलिए वह जो भविष्य में 1000 वर्ष बाद एक अद्वितीय साम्राज्य बनने के लिए नियत थी अब आपको पहाड़ों में अपना शिष्य बनाने के लिए तैयार थी? धिक्कार है, तुम्हारा विश्लेषण इतना विश्वसनीय क्यों है कि मैं एक क्षण के लिए भी उसका खंडन नहीं कर सकता। सुनने के बाद वांग चेन ने अपने दांत पीस लिए और बिस्तर पर जोर से मारना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने अपना हाथ उठाया उसे याद आया कि उस पर जादू कर दिया गया था और उसे नशा दे दिया गया था। सरसराहट सरसराहट, जैसे ही वांग चेन सिस्टम के साथ संवाद कर रहा था, जियांग लिंग शियान जो उसे कसकर गले लगा रही थी इस हल्की लगभग अगोचर हलचल से परेशान हो गई थी। उसकी धारणा इतनी संवेदनशील है। वांग चेन बहुत घबरा गया और उसने जल्दी से अपनी नींद भरी आंखें बंद कर ली जो थोड़ी सी खुली हुई थी और फिर से शांत हो गया। इस समय उसके बगल में बैठी जियांग लिंगक्सियन ने सबसे पहले दूर की मेज पर रखे छोटे धूपदान को देखा जो उसकी धुंधली सुंदर आंखों से सुगंधित धुंध छोड़ रहा था। अंत में उसने धीरे से अपनी खूबसूरत आंखें पसीने से तर वांग चेन की ओर घुमाई। क्या आपको घुटन के कारण पसीना आ रहा है? वांग चेन ने उसकी धीमी बुदबुदाहट सुनी जो धुंधली और स्पष्ट थी फिर भी ठंडी और सुखद थी और उसके दिल में क्रोध की लहर महसूस हुई। क्या मतलब है तुम्हारा घुटन से पसीना आ रहा है? क्योंकि मैं एक बार मर चुका हूँ, ठीक है? इस समय जियांग लिंगक्सियन को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वांग चेन ने पहले ही अपने दिल में उसे 100 बार बदबूदार औरत कहकर कोसा था। यद्यपि वे पिछले जन्म में गुरु और शिष्य थे फिर भी उनकी बातचीत परिचित अजनबियों जैसी थी, इसलिए वांग चेन ने उसे अपने सस्ते गुरु को बिना किसी मनोवैज्ञानिक बोझ के शाप दे दिया। आखिरकार अपने पिछले जन्म में भी उसने अपने दिल में उसे काफी कोसा था, लेकिन इस समय वांग चेन ने जो नहीं देखा वह ये था कि जियांग लिंगक्सियन अपनी आंखों में कोमल स्नेह के साथ उसे देख रही थी एक अगोचर भावना लिए हुए। उसकी आंखों में दिल का दर्द, खुशी और प्रसन्नता और यहां तक कि थोड़ी राहत की भावना भी थी। अंत में जियांग लिंगक्सियन ने धीरे से अपने स्टोरेज रिंग से एक साफ हल्के सुगंधित सफेद कपड़ा निकाला। उसने अपना पतला गोरा हाथ बढ़ाया, सफेद कपड़ा पकड़ा और धीरे से वांग चेन के माथे से पसीने की बूंदें पोंछी। जियांग लिंगक्सियन की हरकतें बहुत सावधान थीं, मानो उसे डर था कि वांग चेन अचानक उसकी आंखों के सामने गायब हो जाएगा। यहां तक कि वांग चेन ने भी अपनी आंखें बंद करके जियांग लिंगक्सियन के सतर्क व्यवहार को महसूस किया, मानो वह उसे जगाने से डर रही हो। जियांग लिंगक्सियन की कोमल हरकतें उसके माथे से पसीना पोंछने में उसकी मदद कर रही थी। वांग चेन को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अपने पिछले जीवन में लौट आया हो जब वह गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसके सस्ते मास्टर जियांग लिंगक्सियन ने हर कदम पर उसकी देखभाल की थी। मेजबान, अब जल्दी से अपनी आंखें खोलो और देखो कि क्या तुम उसे डरा सकते हो। नहीं सिस्टम, क्या तुम मूर्ख हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपने पिछले जीवन की तुलना में पर्याप्त तेजी से नहीं मर रहा हूं? अगर उसे पता होता कि मैं उसके इतने निजी रहस्य के दौरान जाग रहा था तो क्या वह मुझे कैद नहीं कर लेती? वांग चेन को नहीं पता था कि जियांग लिंगक्सियन ने अपने पिछले जीवन में कितनी बार रात के अंधेरे में अपनी यिन ठंडी ऊर्जा को दबाने के लिए उसका इस्तेमाल किया था, लेकिन वांग चेन जानता था कि वह अपने पिछले जीवन जैसी स्थिति में नहीं था जब उसका जियांग लिंगक्सियन के साथ कुछ संबंध था। यदि उसने सचमुच इस समय अपनी आंखें खोली तो वह संभवतः उसकी आंखें निकाल लेगी और उसकी जीभ बाहर निकाल लेगी ताकि वह लापरवाही से न बोल सके। हालांकि वांग चेन अब लगभग निश्चित था कि शिष्य बनने और ताइजू अमर संप्रदाय में आने के बाद आज उसका पहला दिन था। तो दूसरे शब्दों में आज पहली बार था जब जियांग लिंगक्सियन और वह रात के अंधेरे में चुपके से एक दूसरे से लिपटे हुए थे। वांग चेन ने अपने जीवन में कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि जियांग लिंगक्सियन, जो दिन के दौरान ठंडा और दूर रहता था, रात में उसके साथ गले लगेगा और चिपक जाएगा। यद्यपि ऐसा कहा जाता था कि यह उसके शरीर के भीतर यिन की ठंडी ऊर्जा को दबाने के लिए किया गया था, लेकिन रात में वे दोनों काफी अंतरंग थे। आज मेजबान का भावी महारानी के साथ पहला आलिंगन है। इसे याद रखना एक स्मृति चिन्ह के रूप में। ब्लू स्टार टाइमलाइन के अनुसार वर्तमान समय 2 फरवरी 2222 होना चाहिए। बेवकूफ, लेकिन इस प्रणाली के बारे में बात करते हुए क्या भट्टी शारीरिक साधना ऐसी नहीं होनी चाहिए? वैसी सिस्टम की आवाज सुनकर वांग चेन ने इसे बेवकूफ कहकर कोसा, फिर अपने दिल में सवाल पूछा, लेकिन अब उसके लिए मुझे गले लगाना ही काफी क्यों है? अहम सिस्टम, गलतफहमी मत पालिए, मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूं, मैं तो बस जिज्ञासु हूं। वांग चेन ने आराम से अपने बगल में जियांग लिंगक्सियन की हल्की सुगंध महसूस की और उसके माथे से पसीना पोंछने की उसकी कोमल क्रिया को महसूस किया। तार्किक रूप से कहें तो आपके साथ एक भट्टी काया की साधना करना वास्तव में अधिक प्रभावी होगा। लेकिन शायद वह ऐसी बातें नहीं समझती या समझना नहीं चाहती। शायद यह आपके साथ चिपकने से भी उसकी नफरत की हद है। ये सोचकर कि कैसे मेरे पिछले जन्म में जब मैं जागते हुए चुपके से उसे गले लगाता था तो वह मुझे बहुत देर तक ठंडी निगाहों से देखती रहती थी, मुझे लगता है कि तुम सही हो। सरसराहट सरसराहट। जैसे ही वांग चेन ने सिस्टम के शब्दों से सहमति व्यक्त की, जियांग लिंगक्सियन, जिसने अपना पसीना पोंछना समाप्त कर दिया था, फिर से उसके करीब लेट गया। हे भगवान, ऐसा मत करो, मैं संयम का अभ्यास कर रहा हूँ। वांग चेन ने महसूस किया कि जियांग लिंगक्सियन का शरीर फिर से उसके खिलाफ दबाव डाल रहा था, विशेष रूप से उस नर्म सनसनी जहां उसने उसकी बांह को छुआ था। उसकी सुखद मंद शरीर की खुशबू के साथ वांग चेन ने अपने दिल में इच्छा की लहर महसूस की। अपने पिछले जीवन में जब वह जियांग लिंगक्सियन का शिष्य बन गया तो उसे कभी पता नहीं चला कि हर रात ऐसा लाभ होता है। वांग चेन की सचेत स्मृति में जियांग लिंगक्सियन सभी के लिए पूरी तरह से ठंडा था, एक वास्तविक बर्फ का टुकड़ा जो पूरी तरह से नहीं पिघलता। इतना कि पुनर्जन्म के बाद वांग चेन केवल उसका शिष्य बनने से बचना चाहता था। फिर जब उसके पास पर्याप्त शक्ति हो जाती तो वह भयंकर रूप से बाहर कूदता और उस अपराधी को दंडित करता जो उसके पिछले जन्म में अप्रत्यक्ष रूप से उसकी मृत्यु का कारण बनी थी। लेकिन अब जबकि उसका दिल धड़क रहा था, वांग चेन वास्तव में पहले से ही इस बात पर विचार कर रहा था कि कल कैसे भागा जाए। आह छोड़ो, कल की चिंता कल करूंगी, फिलहाल बस इस खूबसूरत वर्तमान का आनंद लूंगा। कहना न होगा, जियांग लिंगक्सियन का नाजुक शरीर सचमुच सुगंधित था। उस हल्की मायावी सुगंध ने वांग चेन को बहुत सुकून दिया। वांग चेन, जो पहले से ही कामोद्दीपक के कारण उनींदा था, ने आरामदायक गर्म आलिंगन में अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी चेतना अंततः निद्रा में चली गई। हालांकि वांग चेन को यह नहीं पता था कि कामोद्दीपक के कारण जब उसने अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे धीरे फिर से सो गया, उसके कुछ ही मिनटों बाद जियांग लिंगक्सियन का गर्म नाजुक शरीर उसके मजबूत शरीर के और भी करीब आ गया और उसे कसकर गले लगा लिया। उसका अति सुंदर चेहरा धीरे से उसकी छाती पर टिका हुआ था और उसकी आंखों में किसी अज्ञात समय आंसू भर आए थे। शिष्य, इस जीवन में गुरुदेव अवश्य ही उन सभी को मार डालेंगे जिन्होंने तुम्हारा शत्रु बनाया है, उन सभी को पूरी तरह से मार डालेंगे। जैसे ही जियांग लिंगक्सियन ने बात की, उसने फिर से अपनी आंसुओं से भरी लाल हो चुकी खूबसूरत आंखें उठाई और लंबे समय तक वांग चेन के चेहरे को देखती रही। अंत में जियांग लिंगक्सियन ने धीरे से अपना गाल वांग चेन की छाती पर टिका दिया और सोते हुए उसके दिल की धड़कन सुनने लगी। उसकी पतली बाहें वांग चेन की कमर के चारों ओर लिपट गईं और भी अधिक कस गईं। इस समय अंधेरे में जियांग लिंगक्सियन की हृदय विदारक उपस्थिति से ऐसा लग रहा था कि वह वास्तव में वांग चेन को फिर से खोने से डर रही थी। इस बीच कामोद्दीपक के प्रभाव में वांग चेन एक मृत सुअर की तरह सो रहा था, इस दृश्य से पूरी तरह से बेखबर। शिष्य, तुम्हारे मरने के बाद गुरुजी ने सचमुच तुम्हें बहुत याद किया, इस बार मैं तुम्हें दोबारा छोड़कर नहीं जाने दूंगी, बिल्कुल नहीं। जियांग लिंगक्सियन की पतली बाहों ने वांग चेन की कमर को कसकर जकड़ लिया, मानो वह बेहोश वांग चेन को अपने शरीर में पिघलाना चाहती हो। इस समय ऐसा लग रहा था जैसे वांग चेन के शरीर के तापमान और आभा को पूरी तरह से महसूस करके ही जियांग लिंगक्सियन को मन की थोड़ी सी शांति महसूस हो सकती थी। ये दुख की बात है कि अब आप वैसे ही हैं जैसे आप पहली बार मास्टर से मिलने के समय थे। जियांग लिंगक्सियन का सुंदर चेहरा धीरे से वांग चेन की छाती पर टिक गया और उसकी आंखों से आंसू अंततः रोके नहीं जा सके और नीचे गिरने लगे। वांग चेन ने जो सफेद शर्ट पहनी थी, जो इस जीवन में उसके साथ ही स्थानांतरित हुई थी, उस पर एक गीला दाग गहरा था। अगली सुबह वांग चेन अचानक चौंक कर जाग गया, उठकर बैठ गया और बार बार यह पुष्टि करने के बाद ही शांत हुआ कि उसका सचमुच पुनर्जन्म हुआ है। इस समय वांग चेन को पता चला कि कल रात वाला व्यक्ति पहले ही जा चुका था। यहां तक कि उसके शरीर में आई कमजोरी, कोमलता और पिछली रात की बिस्तर की हल्की ठंडी खुशबू भी गायब हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कल रात की हर घटना वांग चेन का सपना थी, लेकिन उसे यकीन था कि वह सपना नहीं देख रहा था। अपने पिछले जीवन की यादों के आधार पर वांग चेन ने वर्तमान ताइजू अमर संप्रदाय के नक्शे की स्पष्ट योजना बनाई। अपने भागने के रास्ते की कल्पना करने के बाद वांग चेन अपने जूते पहनने के लिए बिस्तर से बाहर निकलने वाला था और चुपके से ताइजू अमर संप्रदाय से भागने वाला था। लेकिन जैसे ही उसने करवट बदली, उसके दिमाग में सिस्टम की ठंडी आवाज अचानक गूंज उठी। डिंग, पता चला कि पिछले जन्म में मेजबान की मृत्यु का एक प्रमुख कारण भावी महारानी जियांग लिंगक्सियन था। डिंग, मिशन, समस्या को जड़ से खत्म करो। मेजबान, कृपया तुरंत जाकर जियांग लिंगक्सियन को खत्म करो। इनाम, एक सम्राट की गोली। वांग चेन, जो बिस्तर के किनारे पर बैठा था और नीचे उतरने ही वाला था, चौंक गया। मेरे पिछले जीवन की यादों के अनुसार वर्तमान जियांग लिंगक्सियन एक संत आत्मा क्षेत्र साधक है जिसे एक महान अमर विशेषज्ञ माना जाता है ना? और अब मेरी कोई साधना नहीं है उसकी दया पर, मैं ये काम कैसे पूरा कर पाऊंगा? डिंग, मेजबान में अपर्याप्त शक्ति का पता चला, मिशन बदलने लगा है। डिंग, नवीनतम मिशन, जियांग लिंग जियान को जीतना और दाओ साथी बनना, ताकि पिछले जन्म की तरह अकेले घिरकर मौत के मुंह में न जाना पड़े। इनाम, दिव्य आदरणीय क्षेत्र में पहुंचकर तुरंत 10 और परतों को पार करना। हे भगवान, ये कुत्ता सिस्टम बहुत समझदार है। इस समय वांग चेन बिस्तर के किनारे पर बैठे और अपने जूते को देख रहे थे। सिस्टम के अद्यतन मिशन को देखकर हिचकिचाए। अपने पिछले जीवन में उसने वास्तव में अपने इस घटिया मालिक के लिए भावनाएं विकसित कर ली थीं और वह उसकी ओर आकर्षित हुए बिना नहीं रह सका। लेकिन उसका चेहरा ठंडा लेकिन बेहद खूबसूरत, यद्यपि कभी कभी उसके असभ्य शब्द और चिढ़ाने से वह थोड़ी शर्मिंदगी के साथ शर्मा जाती थी, लेकिन यह अविश्वसनीय रूप से मनमोहक था। लेकिन अंतिम परिणाम यह था, वांग चेन को वह पकड़ लेती और उसे कैद कर लेती, फिर उसे उल्टा लटका देती और उसके कपड़ों के माध्यम से विलो की शाखा से उसे पीटा जाता। उसे मारते समय वह वांग चेन को भी गैसलाइट करती थी और कहती थी कि उनके लिए कभी भी गुरु और शिष्य से अधिक कुछ होना असंभव है। इस तरह जियांग लिंगक्सियन ने धीरे धीरे वांग चेन के दिल को, जो उसका पति बनना चाहता था, अपनी पिटाई से मार डाला। लेकिन उन परिस्थितियों में भी वांग चेन ने अनगिनत बार उसका पीछा किया और अंततः हार मानने से पहले अनगिनत बार उसे पीटा गया। आखिरकार जियांग लिंगक्सियन ने शायद ही कभी उसे पीठ पर 7 बार से अधिक मारा हो और उसके वार भारी नहीं थे। उसे मारते समय जानबूझकर अपने महान सम्राट क्षेत्र की साधना को रोकने की भावना, ऐसा नहीं था कि वह उसे मार रही थी, ये कुछ इस तरह था, अहम। तो हर बार जब वह जियांग लिंगजियन को छेड़ता तो उसे बदले में विलो की एक टहनी से हल्की पिटाई मिलती। वांग चेन को लगा कि यह बहुत ही सार्थक था। अब उसके मन में गूंजती मिशन की आवाज सुनाई दे रही थी, उस विद्रोही शिष्य की महत्वाकांक्षा के बारे में जो उसके पिछले जीवन से उसके दिल में गहराई से दबी हुई थी। वांग चेन की भौहें धीरे धीरे सिकुड़ गईं और वह लगातार अपने दिल में फायदे और नुकसान को तौलता रहा, अनिर्णायक महसूस कर रहा था। हालांकि वांग चेन जानता था कि दिव्य आदरणीय क्षेत्र तक पहुंचने के बाद एक क्षेत्र को आगे बढ़ाना कितना कठिन था, ये स्वर तक चढ़ने जितना कठिन था। यदि मिशन सच था तो जब तक वह जियांग लिंगक्सियन पर विजय प्राप्त कर लेता, वह दिव्य आदरणीय क्षेत्र से सीधे महान सम्राट क्षेत्र में चढ़ सकता था। उन्होंने स्मरण किया कि अपने पिछले जन्म में उन्होंने 300 वर्षों में संत आत्मा क्षेत्र तक साधना की थी। लेकिन उसे दिव्य आदरणीय क्षेत्र के शिखर 9वीं परत तक साधना करने और महान सम्राट क्षेत्र तक पहुंचने के लिए कष्ट सहने में पूरे 700 वर्ष या उससे अधिक समय लगा। क्षेत्र शमन शरीर क्षेत्र, भवन आत्मा क्षेत्र, गुई युआन क्षेत्र, दान हाई क्षेत्र, लिंग वांग क्षेत्र, लिंग हुआंग क्षेत्र, संत आत्मा क्षेत्र, स्वर्गीय आदरणीय क्षेत्र, महान सम्राट क्षेत्र। सिस्टम विशेषता पैनल खोलें। वांग चेन काया अराजक नौ यांग दिव्य शरीर। क्षेत्र नश्वर क्षेत्र। साधना विधि अराजक नौ यांग दिव्य कला। भंडारण स्थान कोई नहीं। मूल बिंदु शून्य। समग्र मूल्यांकन नौसिखिया। सिस्टम क्या आप सुझाव देते हैं कि मैं रुक जाऊं? वांग चेन ने अपने गुण पैनल को देखा, जो उसके पिछले जीवन की तुलना में गंदगी की तुलना शेर से करने जैसा था, और वह पूछे बिना नहीं रह सका। उन्होंने मूलतः वहां से जाने की योजना बनाई थी, लेकिन अब सिस्टम के मिशन ने उन्हें रोक दिया था। सुझाव हाँ, क्योंकि आपके व्यक्तित्व के कारण आप संभवतः उन भाग्य के बच्चों को मारने जाएंगे जिन्होंने आपके पिछले जीवन में आपको घेर रखा था, यहाँ तक कि आपके जाने के बाद भी। तो क्यों ना सीधे तौर पर जियांग लिंगक्सियन को जीत लिया जाए, जो सबसे बड़ी, सबसे मजबूत, सबसे शानदार और अच्छी तरह से जुड़ी हुई भावी महारानी है। हिस, वांग चेन ने हल्की सी तेज सांस ली और उसके संकोची बचाव में दरारें धीरे धीरे फैलती गईं, घनी होती गईं। फुफकारना बंद करो, क्या तुम कह सकते हो कि जिस क्षण तुम अपने गुरु को देखोगे तुम उनकी सुंदरता से प्रभावित नहीं हो जाओगे? अहम, तुम पहली नजर में प्यार में नहीं पड़ जाओगे। और जरा सोचो, पिछले जन्म में तुमने इतने लंबे समय तक उसका पीछा किया था, मानो 99% प्रगति हो चुकी थी, लेकिन अचानक रुक गए। क्या तुम हार मानने को तैयार हो? चूंकि अब तुम्हारा पुनर्जन्म हो गया है, यह एक बेहतरीन मौका है। बस उसे जीत लो और उसे अपने नीचे पूरी ताकत से दबा दो। उस समय जब आप दोनों दिव्य आदरणीय क्षेत्र में होंगे और सेना में सम्मिलित होकर अन्य सभी से बहुत आगे होंगे, तो 8 वीरान महाद्वीप में आप किससे डरेंगे? इसके अलावा जियांग लिंगक्सियन के साथ मेजबान की पिछली बातचीत के मेरे अवलोकन के आधार पर, जहां वह अक्सर कठोर थी और भावनात्मक स्थितियों में शब्दों के साथ अच्छा नहीं थी, आप एकमात्र ऐसे पुरुष हैं जिनके साथ उसका शारीरिक संपर्क हुआ है, और आप ही ऐसे व्यक्ति हैं जो हर रात उसे गले लगाते हैं। जैसे जैसे सिस्टम की अथक गैसलाइटिंग जारी रही, वांग चेन की आंतरिक सुरक्षा धीरे धीरे बिखरती गई, अंततः एक दरार के साथ। अच्छा, तो फिर चलो करते हैं। वांग चेन कम बोलने वाले लेकिन निर्णायक कार्रवाई करने वाले व्यक्ति थे। अच्छे बुरे पहलुओं पर विचार करने के बाद उन्होंने ताली बजाई और अपना मन बना लिया। एक शिष्य के रूप में जिसने जियांग लिंगक्सियन इस बर्फ ब्लॉक के साथ हजारों साल बिताए थे, वांग चेन उसे बहुत अच्छी तरह से समझता था। एक वाक्य में संक्षेप में कहें तो साधना और बुनियादी सामान्य ज्ञान के अलावा भावनाओं के मामले में वह एक खाली स्लेट थी। और कठोर शब्दों में कहें तो जियांग लिंगक्सियन को बचपन से ही प्यार से वंचित रखा गया था। उसे न तो पिता का प्यार मिला और न ही माँ का। जहां तक कारण का सवाल है, वांग चेन को नहीं पता। वह केवल इतना जानता था कि यदि उसने गलती से यह विषय उठा दिया तो उसका चेहरा ठंडा पड़ जाएगा, मानो वह किसी भी क्षण फट पड़ेगी। ऐसा कहा जाता है कि जिन लोगों को बचपन से प्यार नहीं मिला, वे प्यार में पड़ने के बाद विशेष रूप से असुरक्षित महसूस करते हैं। उनमें कुछ विशेष गुण भी हो सकते हैं, हालांकि वह नहीं जानता था कि यह सच है या नहीं। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है कि यह असली है या नकली। अपने पिछले जीवन में वह जियांग लिंगक्सियन को जीतने में असफल रहा, और क्योंकि वह उसका शिष्य था, वह हजारों भाग्य के बच्चों का दुश्मन बन गया। अंत में हजारों भाग्य के बच्चों ने गुप्त रूप से उस पर हमला किया और उसे मार डाला। यदि इस जीवन में भी वह जियांग लिंगक्सियन को नहीं जीत सका, और क्योंकि वह उसका शिष्य था, तो वह फिर से हजारों भाग्य के बच्चों का दुश्मन बन गया। तो क्या इस जीवन में उसका पुनर्जन्म व्यर्थ नहीं होगा? ये सोचते हुए वांग चेन अचानक बिस्तर से उछल पड़ा, अपनी मुठियां भींच ली, उन्हें अपने सिर के ऊपर उठा लिया और गुस्से से चिल्लाया, तो इस बार मुझे जियांग को जीतना ही होगा। चरमराहट। वांग चेन उस समय वहीं जम गया जब दरवाजा अचानक खुला। उसने अपनी बात कहते हुए मुट्ठी उठाई और सिर पीछे झुका लिया। जियांग को जीतना क्या? जियांग लिंगक्सियन की आकृति दरवाजे पर खड़ी थी, ताइजू अमर संप्रदाय दाओवादी वस्त्र और जूते पकड़े हुए, वह भ्रम में भौहें चढ़ाते हुए वांग चेन को देख रही थी। ओह जियांग, ये तो बस अदरक है। हाँ, मैं अदरक वाली चाय बनाने के लिए थोड़ा अदरक लेना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि मुझे हाल ही में थोड़ी सर्दी लग गई है। वांग चेन ने अजीब तरह से अपनी उठी हुई मुट्ठी नीचे कर ली, अपनी बाहों को अपने चारों ओर लपेट लिया और उन्हें रगड़ने लगा, मानो उसे सचमुच सर्दी लग गई हो। ये सुनकर जियांग लिंगक्सियन की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, वांग चेन पर उसकी निगाहें थोड़ी अजीब हो गईं, लेकिन उसे कुछ भी संदेह नहीं हुआ। क्या ऐसा हो सकता है कि कल रात, क्योंकि मैंने उसे बहुत कसकर पकड़ रखा था, नौ इन शीत दिव्य शरीर की ठंडी की हुई गलती से उसके शरीर में प्रवेश कर गई। क्या आज उसकी शारीरिक संरचना कमजोर हो गई है जिससे उसे सर्दी लग गई है? लेकिन पिछले जीवन की मेरी यादों के अनुसार उनके नौ यांग दिव्य शरीर एक शीर्ष स्तरीय भट्टी शरीर के साथ यह ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे भी अधिक, मैंने पिछले जीवन के विपरीत कल रात अपनी यिन शीत की हुई को दबाने के लिए उसकी नौ यांग शक्ति को अवशोषित नहीं किया। जियांग लिंगक्सियन असमंजस में था, लेकिन सौभाग्य से वांग चेन ने इस समय फिर से बात की। परी बहन, क्या ये कपड़े मेरे लिए हैं? वांग चेन ने शर्म से अपनी बाहें रगड़ी और उसके पास चला गया और पूछते समय उसके हाव भाव को ध्यान से देखा। वांग चेन को अस्पष्ट रूप से याद आया कि जब उसने पहली बार देहांतरण किया था, तो पहली बार जब उसने जियांग लिंगक्सियन को देखा था तो उसने उसे परी बहन कहा था। आखिरकार जियांग लिंगक्सियन वास्तव में एक परी की तरह सुंदर था। जब वह अपने पिछले जीवन में पहली बार स्थानांतरित हुआ था तो वास्तव में उसे एक पूर्ण दृश्य झटका लगा था। अब भी जब वांग चेन जियांग लिंगक्सियन के निर्दोष सुंदर चेहरे को देखता है तो उसका दिल मदद नहीं कर सकता है, लेकिन हलचल हो सकती है। हाँ, और अब से तुम मुझे मास्टर कहोगे। जियांग लिंगक्सियन ने भौहें चढ़ाई और कमरे में चले गए, धीरे से ताओवादी वस्त्र और जूते मेज पर रख दिए और जवाब दिया। वह अपने पिछले जीवन में भी और अब भी वांग चेन द्वारा उसे मास्टर कहे जाने की आदी थी। ओह ओह, तो परी बहन, मुझे ये कपड़े और जूते पहनने में सक्षम होना चाहिए, है ना? वांग चेन ने ऐसा जानबूझकर किया ताकि बाद में जब उनकी भावनाएं गहरी हो जाएं, तो उसे अपने पिछले जीवन के विपरीत मास्टर की उपाधि से लगातार अस्वीकार ना किया जाए। मास्टर शब्द अब नहीं आ सकता, कम से कम अब ये बार बार नहीं आ सकता। लेकिन अगर बाद में जियांग लिंगक्सियन को उससे प्यार हो जाता है तो वह स्थिति को समझने के लिए धीरे धीरे उसे फिर से उसी नाम से पुकारने की कोशिश कर सकता है। हाँ, कपड़े और जूते हैं। हम मैंने तो पहले ही कहा था कि अब से मुझे मास्टर कहोगे। जियांग लिंगक्सियन ने पहले तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन जब उसे होश आया तो उसने कसकर भौहें सिकुड़ी और ठंडे स्वर में उसे फिर से याद दिलाया। ठीक है, वांग चेन ने बार बार अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश नहीं की। वह फिलहाल सहमत हो गया और बाद में जब वह उसे फोन करेगा तो अपनी बात से पलट सकता है। फिर वांग चेन जियांग लिंगक्सियन के पास गया और उसके ठीक बगल में ब्लू स्टार से पहने हुए कपड़े उतारने लगा। सरसराहट की आवाज सुनकर जियांग लिंगक्सियन ने अनायास ही अपना सिर घुमा लिया और नीचे देखते हुए उसकी नजर सीधे उसके फूलों वाले बॉक्सर पर पड़ी। तू तू, जियांग लिंगक्सियन दो बार हकलाई, जल्दी से घूमी, अपनी आंखें बंद कर ली और उसके कान लगभग तुरंत लाल हो गए। न तो अपने पिछले जीवन में और न ही अब उसने कभी वांग चेन को अपने सामने इतना अहंकारपूर्ण व्यवहार करते देखा था। लेकिन अब जैसे ही वांग चेन आया, उसने उसे एक बड़ा दृश्य प्रभाव दिया, यहां तक कि अपने पुश बॉक्सर के माध्यम से भी। अपने हजारों वर्षों के जीवन में, अपने पिछले और वर्तमान जीवन में, ये पहली बार था जब जियांग लिंगशियान ने वांग चेन को अपने सामने इतनी सहजता से कपड़े उतारते हुए देखा था। क्या हुआ, परी बहन? दूसरी ओर, वांग चेन ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और बस मेज से उठाया गया ताओवादी वस्त्र पहन लिया। इसमें उसका एक जानबूझकर किया गया इरादा भी था, जिसका उद्देश्य जियांग लिंगक्सियन के खिलाफ एक छोटा सा बदला लेना था। यद्यपि वह उससे अपने पिछले जीवन का बदला लेना चाहता था, परंतु वर्तमान जीवन भी लगभग वैसा ही था। आखिरकार वह वही व्यक्ति था। जियांग लिंगक्सियन की शर्मिंदा, क्रोधित और लाल कान वाली पीठ को देखकर वांग चेन थोड़ा चकित हो गया। यदि वह पिछले जन्म वाली लड़की होती तो वह शायद एक क्षण के लिए उसे ठंडेपन से देखती, उसकी अभिव्यक्ति पूरी तरह से उदासीन होती, है न? वास्तव में लोगों के बीच सबसे सच्ची भावनाएं तब होती हैं जब वे पहली बार एक दूसरे को जानते हैं। तुम मेरे सामने इतनी सहजता से अपने कपड़े कैसे बदल सकती हो? जियांग लिंगक्सियन अपनी शर्म को दबाते हुए वांग चेन की ओर पीट करके खड़ी थी, लेकिन उसकी ठंडी आवाज में अभी भी शर्मिंदगी और गुस्से की झलक थी। कोई बात नहीं, तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तुमने देखा तो कोई बात नहीं, हे हे। वांग चेन जियांग लिंगक्सियन के सामने चला गया और जब उसकी नजर जियांग लिंगक्सियन से मिली तो उसका मुस्कुराता हुआ सुंदर चेहरा सामने आया, जिसने पूरी स्थिति को बदल दिया। तुम सचमुच समझ से परे हो, बिल्कुल बेशर्म हो। अगर तुम्हारी योग्यता इतनी अच्छी न होती तो मैं तुम्हें पहाड़ से नीचे धकेल देता। वांग चेन की अपमानजनक बातें सुनकर जियांग लिंगशियान सख्त हो गई। उसकी सफेद पोशाक की आस्तीन के नीचे छिपी गुलाबी मुठियां कस गईं। लेकिन वह स्पष्ट रूप से केवल मौखिक रूप से ही अपनी भड़ास निकाल सकती थी। यदि वांग चेन सचमुच गायब हो गया तो वह पागल हो जाएगी। मुझे माफ करना, अगली बार जब मैं आपके सामने कपड़े बदलूंगी तो ज्यादा सावधानी बरतूंगी। ये देखकर वांग चेन ने अपना सिर नीचे कर लिया और जल्दी से बार बार माफी मांगी। वास्तव में उसे बहुत दूर चले जाने और पहाड़ से नीचे धकेल दिए जाने का थोड़ा डर था। जियांग लिंगक्सियन इस दृश्य को देखकर एक पल के लिए स्तब्ध रह गई और अपने दिल में पछता रही थी कि क्या उसने बहुत कठोर बात कही थी। नहीं, वह अभी भी अगली बार चाहता है। जियांग लिंगक्सियन का दिमाग अचानक घूम गया और उसने भौहें चढ़ा दी। उसकी निगाहें 3 भाग शर्म और 7 भाग गुस्से के साथ वांग चेन पर टिक गईं। वह ठंडी निगाहों से उसे घूर रही थी। ठीक है, अगली बार ऐसा नहीं होगा। वांग चेन ने उसकी निगाहों के नीचे दोषी महसूस किया और जल्दी से बोला, लेकिन साथ ही उसने चुपचाप अपने दिल में कहा, तो यह अगले के बाद का समय होगा। कोई बात नहीं, चूंकि तुम तैयार हो चुके हो तो मेरे साथ आओ। ये देखकर जियांग लिंगक्सियन ने अंततः अपनी स्पष्ट सूक्ष्म रूप से सुस्त आंखें हटा ली और फिर ठंडे स्वर में बोली, कहाँ जाना है? यद्यपि वांग चेन को अच्छी तरह पता था कि वे कहाँ जा रहे हैं, फिर भी उसने उलझन का नाटक करते हुए पूछा। इस समय जियांग लिंगक्सियन उसे उस स्थान पर ले जा रहा होगा जहां वह अपनी काया को जागृत करेगा। ये वही स्थान था जहां उनकी मुलाकात भाग्य के प्रथम बालक किन येफान से हुई थी। अपने शरीर को जागृत करने के लिए जियांग लिंगशियान ने और अधिक शब्द बर्बाद नहीं किए, बस ठंडेपन से जवाब दिया और फिर बाहर जाने लगा। रास्ते में ऐसा लग रहा था कि वांग चेन जानबूझकर ऐसा कर रहा था। सड़क पर ताइजू अमर संप्रदाय के शिष्यों की जांच करने वाली निगाहों का सामना करते समय उन्होंने धीरे से हाथ बढ़ाया और जियांग लिंगक्सियन की सफेद पोशाक की आस्तीन खींची। जियांग लिंगक्सियन ने अपनी आस्तीन को खींचते हुए देखा और धीरे से उसे वापस खींच लिया। वह वांग चेन के साथ उचित दूरी बनाए रखना चाहती थी। जियांग लिंगक्सियन अपने पिछले जीवन में और अब भी अपने शिष्यों से हमेशा एक सूक्ष्म दूरी बनाए रखने की आदी थी, इसलिए वांग चेन की नजर में उसकी वर्तमान गतिविधियां सामान्य लग रही थी। आखिरकार वह अपने पिछले जीवन में 1000 साल तक ऐसी ही रही थी। लेकिन वांग चेन ने हार नहीं मानी और फिर से सावधानी से उसकी सफेद पोशाक की आस्तीन को खींचने के लिए आगे बढ़ा। जियांग लिंगक्सियन ने इसे महसूस किया और धीरे से भौहें सिकुड़ी, फिर चुपचाप अपना हाथ वापस खींच लिया। कई बार आगे पीछे होने के बाद जियांग लिंगक्सियन अंततः नाराज हो गई और उसने अपना सुंदर चेहरा वांग चेन को घूरने के लिए मोड़ लिया। आप परी बहन, मुझे थोड़ी सामाजिक चिंता है। इससे पहले कि जियांग लिंगक्सियन बोलना समाप्त कर पाती, वांग चेन ने दयनीय रूप से अपनी आंखें उठाई और अपने सुंदर चेहरे से उसकी ओर देखा। जियांग लिंगक्सियन वांग चेन की दयनीय उपस्थिति को सहन नहीं कर सका और उसके ठंडे डांट वाले शब्द अचानक वापस घुट गए। आपका क्या मतलब है? जियांग लिंगक्सियन ने वांग चेन की दयनीय अभिव्यक्ति को देखकर भौहें चढ़ाई और उसकी ठंडी आवाज थोड़ी नरम पड़ गई। बस वे हमेशा मुझे ही क्यों देखते रहते हैं? मैं थोड़ा डरा हुआ हूँ। वांग चेन के बोलने के बाद उसने जियांग लिंगक्सियन की प्रतिक्रिया को ध्यान से देखा। वह देखना चाहता था कि अब वह क्या करेगी। ये कहना कि वह डरा हुआ था निश्चित रूप से झूठ था। अपने पिछले जीवन में जब वह हजारों दिव्य आदरणीय क्षेत्र साधकों, दर्जनों अर्धचरण महान सम्राटों और 2 महान सम्राटों से घिरा हुआ था, तब वह भयभीत नहीं हुआ था, तो वह इससे क्यों डरेगा? उन पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। ओह, ये सुनकर वांग चेन की अभिव्यक्ति थोड़ी मंद पड़ गई और उसने उदासी के संकेत के साथ एक नर्म ओह कहा, अपना सिर नीचे किया और साथ चलने लगा। बेशक ये ठंडी बुरी औरत अब भी वैसी ही थी। वांग चेन को साफ याद था कि उसके पिछले जन्म में भी इस समय भी लगभग वैसी ही थी। हालांकि अपने पिछले जीवन में वांग चेन के पास इस वर्तमान जीवन के पिछले जीवन का हजार साल का अनुभव नहीं था और वह वास्तव में आसपास की निगाहों से थोड़ा डरा हुआ था। आखिरकार इस रास्ते से हथियार कब्रिस्तान तक चलते हुए कम से कम 500 ताइजू अमर संप्रदाय के शिष्य और साधक उस मात्र नश्वर की जांच कर रहे होंगे। उस वर्ष की घटनाओं को याद करते हुए वांग चेन अभी भी दुख की पीड़ा और हंसने की एक अकथनीय इच्छा महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह कितना मूर्ख हुआ करता था। हाय, तभी वांग चेन ने अचानक जियांग लिंगशियन की हल्किया सुनी। जैसे ही उसने असमंजस में ऊपर देखा, तभी उसने अचानक जियांग लिंगक्सियन को देखा, जो एक परी की तरह ठंडी और अलौकिक थी। उसने अपनी सफेद स्कर्ट की आस्तीन का थोड़ा सा हिस्सा उसकी ओर बढ़ाया। फिर वह बस उसे ठंडेपन से देखती रही। उसकी लंबी सुंदर पलकें बिना बोले थोड़ी कांप रही थी। वांग चेन धीरे धीरे इस दृश्य को देखकर खुशी से मुस्कुराया, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि मछली ने हुक काट लिया है, लेकिन उसका दिल अनजाने में बहुत गर्म हो गया। वांग चेन ने हाथ बढ़ाकर जियांग लिंगशियन की साफ हल्की खुशबूदार आस्तीन को मजबूती से पकड़ लिया। तभी उसने अपना सिर उठाया और छाती फुलाकर चलना शुरू किया। उनके व्यवहार में पहले वाली सामाजिक चिंता का पुनर्तः अभाव था। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें अचानक कोई समर्थक मिल गया हो तथा उनके कदमों में किसी की भी कोई चिंता नहीं रह गई हो। क्या तुम्हें इस तरह डर नहीं लगता? जियांग लिंगक्सियन ने वांग चेन की ओर देखा, जो उसकी आस्तीन को कसकर पकड़े हुए था और ऐसा लग रहा था कि वह बदल गया है, उसके बगल में चल रहा था और धीरे से पूछा। परी बहन की सुरक्षा से मैं निश्चित रूप से भयभीत नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। जैसे ही वांग चेन ने बात की, उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया और गायन के स्वर में जियांग लिंगक्सियन को जवाब दिया। जियांग लिंगशियन ये दृश्य देखकर एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसकी ठंडी खूबसूरत आंखें वांग चेन को एकटक घूर रही थी, मानो कुछ याद आ रहा हो। क्या क्या गड़बड़ है? वांग चेन भी जियांग लिंगशियन की नजरों से थोड़ा उलझन में था। उसने अपनी भौहें सिकुड़ी, अपना सिर थोड़ा झुकाया और सवालिया नजरों से उससे पूछा। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे गुरु कहो। अगर अगली बार तुम मुझे ऐसे ही पुकारोगे तो मैं गुरु शिष्य के नियम के अनुसार ही निपटूंगा। जियांग लिंगक्सियन ने अपना संयम पुनः प्राप्त किया, अपने पिछले जीवन की यादों और अपने दिल में विभिन्न भावनाओं को बलपूर्वक दबाया और चलते समय उसने वांग चेन के संबोधन के तरीके को फिर से सही किया। उसी समय जियांग लिंगक्सियन के दिल में एक अकथनीय आशंका और एक अस्पष्टीकृत घबराहट महसूस हुई। वह समझ नहीं पा रही थी कि इस जीवन में वांग चेन उसे गुरु क्यों नहीं कहना चाहता था। क्या ऐसा हो सकता है कि इस जीवन में वापस आने के बाद उसके पुनर्जन्म ने वांग चेन में कुछ विचलन पैदा कर दिया हो? ओह ठीक है, वांग चेन ने हमेशा की तरह जियांग लिंगक्सियन की बात पर सहमति जताई और इरादा किया कि अगली बार जब वह उसे संबोधित करेगा तो उसे परी बहन ही कहेगा। वह अनजाने में सूक्ष्मता से उसके शिष्य के रूप में अपनी छवि को विकृत करना चाहता था, जो हमेशा से जियांग लिंगक्सियन के दिल में बसी थी। हम लगभग वहां पहुंच चुके हैं, ये बस आगे है। जियांग लिंगक्सियन ने कसकर पकड़ी हुई आस्तीन को दो बार धीरे से खींचा, अपनी खूबसूरत आंखें उठाई और सामने की ओर देखते हुए वांग चेन को इशारा किया। बस बस बस, स्वर्गीय निषिद्ध दाव दिव्य शरीर। जागृति स्तंभ से एक सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। आगे जागृति काया मंच पर जागृति स्तंभ से एक गहरी आवाज निकली और जागृति स्तंभ के नीचे एक उन्मत्त युवा आकृति सुखद आश्चर्य से भरे चेहरे के साथ उसके हाथों और शरीर को देख रही थी। मैंने कर दिखाया, हा हा हा, इस दाववादी ने कर दिखाया। जब ये ताओवादी अमर हो जाएगा, मैं निश्चित रूप से नौवें स्वर्ग में लौटूंगा और दुनिया को उलट पुलट कर दूंगा। हा 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 हा। वह युवा व्यक्ति मंच पर खड़ा था, आकाश की ओर देख रहा था। उसकी आंखें हत्या के इरादे से लगभग बह रही थी। वह पागलों की तरह चिल्ला रहा था। नौस्वर्गीय दाव बंधनों से अभिशप्त एक टूटे हुए दाव शरीर को जागृत करना और साधना करना कठिन, फिर भी बहुत प्रसन्न होना। दफा हो जाओ, जल्दी करो और नीचे उतरो, अपने पीछे खड़े लोगों को प्रभावित मत करो। यहाँ खड़े होकर कह रहे हो, इस ताओवादी ने कर दिखाया, कर दिखाया, कर दिखाया, तुम पागल हो। हालांकि इससे पहले कि वह व्यक्ति जिसने अपनी काया को जगाया था कुछ वाक्यों से अधिक आनंदित हो पाता, उसे मंच पर मौजूद बूढ़े व्यक्ति ने मंच से नीचे धकेल दिया। जियांग लिंगशियान ने यह देखा और बिना कोई भाव बदले वांग चेन को आगे प्लेटफॉर्म पर खड़े बूढ़े व्यक्ति की ओर ले गई। उसकी सफेद पोशाक हवा में धीरे धीरे लहरा रही थी। इतना सुंदर दृश्य निस्संदेह मनमोहक था। एक क्षण के लिए पीछे खड़े लोग, जो मंच पर जाना चाहते थे, रुक गए। उन्होंने ताइजू अमर संप्रदाय की साध्वी जियांग लिंगशियान को वांग चेन को मंच पर उनके सामने ले जाने की अनुमति दी, क्योंकि साध्वी को हमेशा प्राथमिकता दी जाती थी। लेकिन कुछ ही क्षण बाद सभी की निगाहें वांग चेन पर चली गईं, जो सुंदर थे और जियांग लिंगक्सियन के पीछे खड़े थे। यह आदमी कौन है? ये तो संत की आस्तीन पकड़ सकता है। अखाड़े में अनगिनत निगाहें वांग चेन पर पड़ रही थीं, जो ईर्ष्या, जलन और भारी शत्रुता से भरी हुई थीं। आखिरकार मार्शल प्रतियोगिताओं या विभिन्न विशेष त्योहारों जैसे कुछ सांप्रदायिक आयोजनों के दौरान वे सभी जियांग लिंगक्सियन के प्रेमी थे। यद्यपि वे उपहार जियांग लिंगक्सियन तक पहुंचे बिना ही वापस कर दिए गए, फिर भी इसे उन्हें वांग चेन के प्रति शत्रुता महसूस करने से नहीं रोका जा सका। हालांकि इस समय उनकी उपस्थिति से वांग चेन और जियांग लिंगक्सियन काफी अच्छी तरह से मेल खाते हुए लग रहे थे, लेकिन अन्य सभी पहलुओं से ताइजू अमर संप्रदाय के शिष्यों ने वांग चेन को नहीं पहचाना, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से असंबद्ध और शत्रुतापूर्ण थे, जिनमें पुरुष शिष्यों की संख्या सबसे अधिक थी। वांग चेन ने इस जीवन में फिर से उन शिष्यों की निगाहें महसूस की और वह आश्चर्यचकित नहीं हुआ। उसके होंठ एक बेहोश, लगभग अगोचर मुस्कुराहट में बदल गए। किन येफान, जब तक मेरे पास तुम्हें मारने का एक मौका है, तुम इस जीवन में निश्चित रूप से मर जाओगे। वांग चेन ने अपनी जानलेवा निगाहें धीरे धीरे बदली और मंच के नीचे खड़े एक आदमी की ईर्ष्या भरी निगाहों से उनकी मुलाकात हुई। अपने पिछले जीवन में किन येफान, जो वर्तमान में जागृति स्तंभ पर था, ने अभी तक उसके साथ शत्रुता नहीं बनाई थी। ये दुश्मनी उनके शारीरिक जागरण के अगले दिन ही शुरू हो गई थी, जब ताइजू अमर संप्रदाय के शिष्य अपने अपने हथियार चुनने के लिए हथियार कब्रिस्तान में गए थे। उस समय किन येफान ईर्ष्या करते हुए कि वांग चेन संत जियांग लिंगक्सियन का शिष्य था, हथियार कब्रिस्तान में हथियार चुनते समय उसे मौखिक रूप से उकसाना शुरू कर दिया। वांग चेन ने यह सुना और बिजली की तरह तेजी से उड़कर कूद पड़ा और एक जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे किन येफान का कुत्ते जैसा चेहरा टेढ़ा हो गया। फिर वे दोनों हथियार कब्रिस्तान में भयंकर लड़ाई करने लगे। उस समय वांग चेन का अभी अभी देहांत हुआ था और उसे साधना करते हुए दो दिन भी नहीं हुए थे, लेकिन सौभाग्य से जागृति स्टेल और सिस्टम से प्राप्त ऊर्जा प्रतिक्रिया के साथ दोनों बड़ी मुश्किल से बराबरी पर लड़ पाए। दोनों को गंभीर चोटें आईं और अब मंच के नीचे किन येफान ने भी वांग चेन को देखा, अपनी भौहें सिकुड़ते हुए और उससे टकराती हुई नजरों से देखा, बिना किसी डर के। वांग चेन की शांत निगाह, जिसमें एक धुंधली, लगभग अगोचर हत्या की मंशा थी, ने अधिकांश शिष्यों को अनैच्छिक रूप से अपना सिर नीचे करने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार उसने अपने पिछले जीवन में इतने सारे लोगों को यूं ही नहीं मारा था। साधारण लोग उसकी आंखों में जानबूझकर की गई हत्या की मंशा से आसानी से भयभीत हो जाते थे। किन येफान को देखते हुए, जो उसे घूर रहा था, वांग चेन ने उसे एक उपहासपूर्ण मुस्कान दी, जिससे किन येफान का चेहरा गुस्से से हरा हो गया। हालांकि जब जियांग लिंगजियन ने वांग चेन को बूढ़े आदमी के पास ले जाया, तो उसने चुपचाप उसे अपनी आस्तीन से अपने पीछे खींच लिया। वांग चेन उसकी हरकत से हैरान था और केवल आज्ञाकारी रूप से अपनी निगाहें हटा सकता था, जिससे किन येफान को और अधिक उत्तेजित नहीं किया जा सके। हालांकि उन्हें हमेशा लगता था कि इस जीवन में जियांग लिंगजियन, यद्यपि वह अभी भी ठंडी थी, फिर भी उसमें एक अवर्णनीय, अस्पष्ट, फिर भी हार्दिक कोमलता थी। क्या यह मेरा भ्रम है या क्या ये कल रात की अंतरंगता के कारण है कि वह ऐसी है? साधु जी, आप किस उद्देश्य से आए हैं? जैसा कि वांग चेन सोच ही रहा था, सामने बैठे बूढ़े व्यक्ति ने पहले ही जियांग लिंगक्सियन का सम्मानपूर्वक अभिवादन कर दिया था। एक शरीर को जगाने के लिए कृपया एल्द झांग किसी को हमें जागृति के लिए एकांत स्तंभ पर ले जाने के लिए भेजें। जियांग लिंगक्सियन की आवाज ठंडी और अलग थी, फिर भी उसमें हमेशा एक ऐसी गुणवत्ता थी जो उसे और अधिक सुनने के लिए प्रेरित करती थी। कोई जरूरत नहीं, मैं यहीं जाग जाऊंगा। वांग चेन ने ये देखा और जल्दी से जियांग लिंगक्सियन और एल्द झांग को आवाज लगाई। उन्हें याद आया कि उनके पिछले जीवन में जागृति स्तंभ ने उन्हें नौ यांग दिव्य शरीर के रूप में दिखाया था, लेकिन महत्वपूर्ण शब्द अराजकता प्रदर्शित नहीं किया गया था, और जियांग लिंगक्सियन को अपने शरीर में यिन ठंडी ऊर्जा को दबाने के लिए उसके नौ यांग दिव्य शरीर की आवश्यकता थी, इसलिए वह निश्चित रूप से उसे किसी और को देने के लिए अनिच्छुक होगी। तो अब वांग चेन जियांग लिंगक्सियन के लिए संकट की भावना पैदा करना चाहता था कि उसे किसी भी समय किसी अन्य महिला द्वारा छीन लिया जा सकता है। एक रणनीतिकार को खुद खेल में उतरना चाहिए। लिंगक्सियन पर दांव लगाओ। अगर वह जीत जाता है तो भविष्य में बड़ा बिस्तर क्लेश का अखाड़ा बन जाएगा, अमर पद की ओर बढ़ेगा, ऊपर चेन और नीचे लिंगक्सियन, परमानंद। जहां तक हारने की बात है तो चेन पीछे हट सकता है और यह पीछे हटना जीवन भर के लिए होगा। नहीं, इस समय वांग चेन के शब्दों को सुनने के बाद जियांग लिंगक्सियन ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाई और उसकी ठंडी मधुर आवाज तेजी से बोली, उसे रोकना चाहती थी। यदि वांग चेन यहां जागते तो कई महिला एल्द निश्चित रूप से उनके लिए लड़तीं। इसके अलावा एक बार जब नौ यांग दिव्य शरीर की खबर लीक हो गई तो ताइजू अमर संप्रदाय के बाहर कुछ संप्रदाय भी उसे शिकार करने के लिए आ गए, लेकिन वांग चेन ने नहीं सुना। लिंगक्सियन शास्त्रों का जाप कर रहा था। फिर उसने जियांग लिंगक्सियन की सफेद पोशाक की आस्तीन छोड़ दी और जल्दी से जागृति स्तंभ की ओर दौड़ा और उस पर अपना हाथ रख दिया। क्योंकि जियांग लिंगजियन ने उसका हाथ नहीं पकड़ा था, इसलिए उसने उसे वापस खींचने के लिए समय पर प्रतिक्रिया नहीं की। एक क्षण में मंच के नीचे असंख्य शिष्यों की आंखों में जागृति स्तंभ एक चकाचौंध भरी रोशनी से चमक उठा। अगले ही क्षण जागृति स्तंभ के भीतर से एक राजसी आवाज गूंजी और एक अत्यंत मजबूत चमकदार लाल प्रकाश सीधे आकाश में चला गया। नौयांग दिव्य शरीर। जैसे ही जागृति स्तंभ से आवाज आई, वांगचेन ने जागृति स्तंभ से ऊर्जा की कई धाराओं को अपने शरीर में प्रवेश करते हुए महसूस किया। उन्होंने इसका विरोध नहीं किया, क्योंकि यह सामान्य बात थी। ये ऊर्जाएं उनके शरीर के जागृत होने के बाद जागृति स्तंभ से प्राप्त प्रतिक्रिया थी। ये भी मुख्य कारण था कि वह किन येफान से बड़ी मुश्किल से लड़ पाया था, जो बिल्डिंग स्पिरिट दायरे के तीसरे स्तर पर था और उसके पिछले जीवन में उसे आपसी गंभीर चोट लगी थी। ताली ताली ताली। जिस क्षण ये ऊर्जाएं उसके शरीर में प्रवाहित हुई, वांगचेन ने महसूस किया कि उसका राज्य आसमान छूने लगा है। शमन शरीर क्षेत्र प्रथम स्तर, शमन शरीर क्षेत्र पांचवां स्तर, शमन शरीर दायरे नौवें स्तर शिखर। उसका क्षेत्र शून्य से उठकर शमन शरीर क्षेत्र के नौवें स्तर के शिखर तक पहुंच गया और उसके बाद ही वह रुका। वांगचेन को अब अपने शरीर में शक्ति का एक अंतहीन उछाल महसूस हुआ। दायरे को तोड़ने की भावना इतनी रोमांचक थी कि वह लगभग उड़ गया। यह अनुभूति एक फिटनेस उत्साही व्यक्ति की तरह थी, जिसने अभी अभी वर्कआउट समाप्त किया हो, उसकी नसें फूली हुई हों तथा वह अपनी स्वयं की ताकत का स्पष्ट एहसास कर रहा हो। अपना लक्ष्य प्राप्त करने के बाद वांगचेन ने धीरे से अपना हाथ वापस खींच लिया, एक दोषी नजर का नाटक किया और जियांग लिंगक्सियन को देखने के लिए अपना सिर पीछे घुमाया। लेकिन इस समय दृश्य पहले से ही शोर से भरा हुआ था और अनगिनत महिला एल्डर और अन्य लोग लगातार दूर से उनकी ओर दौड़ रहे थे। बिना किसी अपवाद के सभी की निगाहें वांगचेन पर टिकी थी। वे चाहते थे कि वह उनका शिष्य बन जाए। मेरे साथ आइए। जियांग लिंगजियान के चेहरे पर ठंडक और उदासी थी। वांगचेन की ओर उड़ती महिला बुजुर्गों को देखकर उसके दिल में संकट की गहरी भावना भर गई। हे। अगले ही पल वांगचेन ने महसूस किया कि उसका शरीर अचानक ऊपर उठ गया, फिर उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और उसके चारों ओर सब कुछ पूरी तरह से शांत हो गया। दोनों जल्दी से उस कमरे में लौट आए जहां वे पहली बार अंतरंग हुए थे। इस समय वांगचेन अपना सिर एक तरफ झुकाए खड़ा था, जबकि जियांग लिंगक्सियन उसके सामने खड़ा था, उसे ठंडी निगाहों से देख रहा था। हिस, मेरी पिछली जिंदगी का वो जाना पहचाना एहसास वापस आ गया है। अगर मैं मर्द न होता तो शायद मुझे गर्भाशय में सर्दी जुकाम हो जाता। लेकिन मुझे बहुत समय हो गया है जब मुझे ऐसा महसूस हुआ था कि कोई मुझे घूर रहा है, यहां तक कि मेरा गर्भाशय भी ठंडा पड़ गया था। अब मुझे अजीब तरह से सुकून क्यों महसूस हो रहा है? वांगचेन एक तरफ खड़ा था, बाहर से तो बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर खुद से बड़बड़ा रहा था। तुमने अपनी मर्जी से ऐसा क्यों किया? जियांग लिंगक्सियन के शरीर से एक कड़क ठंडक निकल रही थी और उसकी अत्यंत ठंडी आवाज में दबा हुआ गुस्सा झलक रहा था। मुझे नहीं पता था कि मेरा ऐसा शरीर होगा। वांगचेन ने अपराध बोध से अपना सिर नीचे कर लिया। उसकी आवाज मच्छर की तरह कमजोर थी, मानो वह जियांग लिंगक्सियन के क्रोधित रूप से बहुत डर गया हो। तुम्हारे स्वामी ने पहले ही मना कर दिया था, फिर तुम उस जागृति स्तंभ को छूने पर क्यों अड़े रहे? जब एक बार नौयांग दिव्य शरीर जैसी शीर्ष स्तरीय भट्टी काया प्रकट हो जाती है, तो क्या आप जानते हैं कि यह कितनी परेशानी लाएगी? जियांग लिंगक्सियन की ठंडी अभिव्यक्ति वांगचेन की ओर निर्देशित थी। उसकी बर्फीली थोड़ी गुस्से वाली आवाज प्रत्येक शब्द को स्पष्ट रूप से बोल रही थी। वांगचेन ने थोड़ा ऊपर देखते हुए डर का नाटक किया और एक छोटा कदम पीछे हट गया। ऐसा लग रहा था कि वह उससे बहुत डर रहा है। जब जियांग लिंगक्सियन ने वांगचेन को उससे दूरी बनाने की कोशिश करते देखा, तो उसके मन में झुंझलाहट की लहर दौड़ गई और गुस्से में वह एक और कदम और करीब आ गई। वांगचेन फिर से डरने का नाटक करने लगा और लगातार पीछे हटता रहा। ये देखकर जियांग लिंगक्सियन और भी ज्यादा चिढ़ गया और उसके और करीब आ गया। अंततः उसने वांगचेन को कमरे के अंदर दीवार के सहारे खड़ा कर दिया, जिससे उसे पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं मिला। वांगचेन अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने दांत पीसते हुए मन बना लिया और उसकी चाय कला सामने आने लगी। अगर परी बहन को इसमें परेशानी हो रही है तो मुझे किसी और का शिष्य बनने के लिए सौंप दो। खुद को क्यों परेशान करो? वांगचेन ने उसके लिए चिंता का दिखावा किया, लेकिन वास्तव में वह आगे बढ़ने के लिए पीछे हट रहा था, जिससे जियांग लिंगक्सियन पूरी तरह से अचंभित हो गया। जियांग लिंगक्सियन उसके शब्दों से स्तब्ध रह गई। उसकी गुस्से भरी भावनाएं और भावहीन अभिव्यक्तियां थोड़ी ठंडी पड़ गईं और उसका सारा गुस्सा हवा में उड़ गया। वांगचेन को देखते हुए, जिसे उसने दीवार के सहारे खड़ा कर दिया था, जियांग लिंगक्सियन की आंखें अनजाने में लाल हो गईं और उसका दिल दर्द से भर गया। जैसे कि उसकी नाक में दर्द महसूस हो रहा हो, जियांग लिंगक्सियन जल्दी से घूम गई और अब वांगचेन की ओर नहीं देख रही थी। जैसे ही उसने सुना कि वांगचेन किसी और का शिष्य बनना चाहता है, जियांग लिंगक्सियन के आंसू लगभग फूट पड़े। वह इसकी अनुमति नहीं देगी, बिल्कुल नहीं। जियांग लिंगक्सियन ने वांगचेन की ओर पीठ कर ली। उसका शरीर धीरे से कांप रहा था। बिना कुछ कहे वह मुड़ी और चली गई। जैसे ही जियांग लिंगशियान चला गया, दरवाजा बंद हो गया और कमरे के अंदर केवल हैरान वांग चेन ही रह गया। क्या वह बस रोई? वांग चेन दीवार के कोने से टिककर स्तब्ध सी हो गई। क्या ऐसा हो सकता है कि एक रात की अंतरंगता के बाद उसके दिल में उसके लिए भावनाएं पैदा हो गई हों? लेकिन वांग चेन की वर्तमान सोच के अनुसार ऐसा नहीं होना चाहिए। वर्तमान जियांग लिंगक्सियन को ठंडा और कठोर होना चाहिए, उसे कठोर शब्दों में फटकार लगाते हुए दो मुहा होना चाहिए, लेकिन अंततः उसे अपने साथ रखना चाहिए। हालांकि अगर यह उसके पिछले जीवन की जियांग लिंगक्सियन होती तो ये सुनकर कि वह किसी और का शिष्य बनना चाहता है, संभावना थी कि वह अपना संयम खो दे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि उसका भी पुनर्जन्म हुआ हो, है न? ऐसा नहीं होना चाहिए। जब मैं दानव गुफा अस्थि भूमि में घिरा हुआ था तब भी वह एकांत में थी, उसे मरना नहीं चाहिए था। वांग चेन पूरी तरह से हैरान होकर अपनी जगह पर खड़ा था। उसके सिर में खुजली बढ़ रही थी, मानो उसका दिमाग बढ़ने की कोशिश कर रहा हो। छोटे मेजबान, आपकी प्यारी परी बहन अभी अभी सचमुच रो पड़ी थी, है ना? क्या हो सकता है कि कुत्ते की मेजबान का आकर्षण इतना ज्यादा हो? एक रात के आलिंगन ने उसके दिल में एक अमित स्नेह जगा दिया। वांग चेन के मन में सिस्टम भी विचार करने लगा, मानो वह अपने दाहिने हाथ से हीरे की आकृति को अपनी थोड़ी पर पकड़े हुए गहन विचार में डूबा हुआ हो। वांग चेन को भी ये बहुत अजीब लगा। जियांग लिंगक्सियन को इस समय ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं, उसे इस बात पर विचार करने दीजिए कि उसका शिष्य किसी और का शिष्य क्यों बनना चाहता है। वांग चेन ने इस पर ज्यादा सोचने की योजना नहीं बनाई। वह बिस्तर पर गया, बैठ गया और उसके हाथों से आग के दो गोले फूट पड़े। हालांकि ये दोनों लपटें सामान्य लपटें नहीं थीं। इसके बजाय वे रंग में अव्यवस्थित थे, काले और सफेद, और उनमें अव्यवस्थित दाव कविता की शक्ति समाहित थी जो शून्य को प्रभावित करती प्रतीत होती थी। वाह! वांग चेन ने उसके हाथ पकड़ लिए और अराजक लपटों को वापस खींच लिया जो शून्य को जलाने में सक्षम लग रही थी, और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। पुनर्जन्म! वांग चेन को विश्वास नहीं था कि उसका भाग्य उसके पिछले जीवन के समान होगा, जहां सम्राट क्लेश पर काबू पाने के बाद उसे संयुक्त रूप से दबा दिया गया था। इस समय कई खजाने जैसे कि गहन प्रकाश पैगोडा, रक्त ड्रैगन ट्री, स्वर्ग दाव मनका आदि अभी तक प्रकट नहीं हुए थे और वह नहीं जानता था कि वे कहां छिपे थे। वांग चेन ने अपने पिछले जीवन में प्राप्त खजाने या भाग्य के बच्चे द्वारा प्राप्त विभिन्न अवसरों पर विचार किया। होस्ट, चिंता मत करो, इस सिस्टम ने 10 सबसे मजबूत खजानों को रिकॉर्ड कर लिया है। आपको बस उनके स्थान का पता लगाने के लिए एसेंस पॉइंट्स का इस्तेमाल करना होगा। सिस्टम ने चिंतित वांग चेन की ओर देखा, जैसे कि उसने उसके विचारों को जान लिया हो, और उसे याद दिलाने के लिए बोला। ओह अच्छा, इस बार हम टीम बनाकर उन सभी अवसरों को छीनने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो शिष्य कल अपनी काया जागृत करेंगे उन्हें अभी भी शस्त्र कब्रिस्तान जाना होगा। मैं किन येफान को छीन लूंगा, शस्त्र कब्रिस्तान में का अवसर छीन लूंगा। वांग चेन ने अपनी मानसिक गणना पूरी की, फिर अपने हाथ की एक लहर के साथ उन्होंने सिस्टम के विशेषता पैनल को ऊपर खींच लिया। वांग चेन, काया अराजक 9, यांग दिव्य शरीर क्षेत्र शमन शरीर क्षेत्र 9वां स्तर शिखर, साधना विधि अराजक 9 यांग दिव्य कला, भंडारण स्थान कोई नहीं, सार अंक शून्य, समग्र मूल्यांकन शमन शरीर क्षेत्र 9वीं स्तर AI। सिस्टम, क्या तुम्हारे पास मुझे नशा करने से रोकने के लिए कुछ है? वरना शायद आज रात मैं फिर से जियांग लिंगजियांग की दया पर निर्भर हो जाऊंगा। वांग चेन ने सिस्टम खोलते हुए कहा और तुरंत ही उसके सामने 9 सुनहरे कार तैरने लगे। प्रणाली शॉप की कार्य प्रणाली बहुत ही अनोखी थी। यह मेजबान के लिए प्रतिदिन 9 सुनहरे कार्डों को ताजा करती थी, जिससे विभिन्न वस्तुएं बेतरतीब ढंग से सामने आती थी। हाँ, मैं चुपके से महान पथ का सार चुरा सकता हूँ और इसे सुनहरे कार्डों में बदल सकता हूँ, जिन्हें आप दुकान में रख सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत सारे सार अंक खर्च होंगे। क्या मैं क्रेडिट पर भुगतान कर सकता हूँ? क्या आप जियांग लिंगक्सियन के पाद का सपना देख रहे हैं? क्या तुम महारानी जियांग लिंगक्सियन के बारे में सोच रहे हो? तुम विकृत हो। ओह, क्या ये जोर से कहा जा सकता है? सिस्टम, बस थोड़ी देर रुको, कुछ सोर्स पॉइंट्स निकाल लो, मैं बाद में दोगुना करके वापस आऊंगा। कैसा रहेगा? वांग चेन के शब्दों को सुनकर सिस्टम चुप हो गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि वह इस बात पर झिझक रहा था कि कुछ स्रोत बिंदुओं को कैसे निचोड़ा जाए। ये देखकर कि वहां काफी देर से सन्नाटा पसरा हुआ था, वांग चेन ने सिस्टम मॉल में 9 सुनहरे कार्डों पर क्लिक किया और देखना शुरू कर दिया। पहला आइटम, कौवा विमान पर बैठता है, कौशल मूल्य 100 स्रोत अंक। दूसरा आइटम, पंगु एसेंस ब्लड, कीमत 99,99,99,999। तीसरा आइटम, लकड़ी की मूर्ति मिट्टी का घोड़ा, कीमत धिक्कार है, ये फिर से वही बेवकूफ पंगु एसेंस ब्लड है, दादी का ये 2 जन्मों से मेरे साथ है। जब वांग चेन ने पंगुसार रक्त वस्तु की छवि देखी तो वह उसकी ओर इशारा करने और जोर से कोसने से खुद को रोक नहीं सका। जब तक केवल अंतिम दो कार्ड ही शेष रह गए, तब तक रिफ्रेश करने के बाद वांग चेन को अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। उसने हाथ उठाया और आठवें सुनहरे पत्ते पर क्लिक किया। वह खेल खेल में हिला, फिर अचानक पलट गया। आठवीं वस्तु, कामोत्तेजक दवाओं का धूम्रपान, कैंडी की तरह जहर की गोलियां खाना, कीमत 1000 स्रोत अंक। हम्फ, वांग चेन इस वस्तु का सीधा साधा नाम सुनकर दंग रह गया। उसने भौहें सिकुड़ी और नीचे दिए गए विवरण पर क्लिक किया। आइटम, कामोत्तेजक दवाओं का सेवन, कैंडी की तरह जहर की गोलियां खाना। विवरण, डिस्पोजेबल वस्तु, सक्रिय अवस्था में सभी कामोत्तेजक और जहरों से प्रतिरक्षित, लेकिन जहर का असर खत्म होते ही तुरंत असर दिखाने लगेगा। अवधि 12 घंटे। ये डिस्पोजेबल है और जहर का असर खत्म होते ही तुरंत असर दिखने लगेगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ये इतना सस्ता है। वांग चेन ने डिस्पोजेबल आइटम शब्द देखा और 12 घंटे के प्रभाव को देखा। एक पल के लिए विचार किया। सिस्टम सिस्टम, जल्दी बाहर आओ। क्या तुम मुझे कुछ सोर्स पॉइंट्स उधार दे सकते हो, प्लीज प्लीज। वांग चेन ने इसके बारे में सोचा और सिस्टम के प्रति मधुर व्यवहार करने का निर्णय लिया तथा उसे खरीदने के लिए दांत भींचे। पिछली रात के अनुभव के आधार पर जियांग लिंगक्सियन द्वारा दिया गया कामोद्दीपक सेट निश्चित रूप से जहरीला नहीं था, इसलिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हालांकि इसे खरीदने के बाद उसके पास उस अस्पष्ट निकटता का सचेतन रूप से आनंद लेने के लिए केवल एक रात ही होगी, फिर भी वह वास्तव में इसे खरीदना चाहता था। सबसे बुरी स्थिति में वह कल हथियार कब्रिस्तान से अधिक हथियार चुरा सकता है और सिस्टम को चुकाने के लिए उन्हें स्रोत अंक में परिवर्तित कर सकता है। यह ठीक है, ठीक है, लेकिन आपको मुझे 3000 सोर्स पॉइंट्स चुकाने होंगे। वांग चेन के लगातार अनुनय विनय के बाद सिस्टम अंततः सहमत हो गया। जैसे ही सिस्टम सहमत हुआ, वांग चेन को 1000 स्रोत अंक प्राप्त हुए और सिस्टम चुपचाप वापस चला गया। सिर्फ 3000 सोर्स पॉइंट्स, कोई बात नहीं, मैं कल हथियार कब्रिस्तान से और हथियार चुरा लूंगा। वांग चेन ने आठवीं वस्तु खरीदने के लिए 1000 स्रोत अंक का उपयोग किया और मन ही मन ये वादा किया कि वह सिस्टम को 3 गुना अधिक राशि लौटा देगा। सब कुछ निपटने के बाद वांग चेन ने अपने आसपास का जायजा लिया। ये बहुत सादा और साफ सुथरा था। एक मेज, 3 कुर्सियां, एक बड़ा बिस्तर और कमरा पूरी तरह से लकड़ी का बना था। कितना जाना पहचाना माहौल था। गिनकर कहें तो उसे इस कमरे में लौटे 900 साल से ज्यादा हो गए थे। बिस्तर पर पालथी मारकर बैठे वांग चेन ने परिचित वातावरण को देखा और पुरानी यादें ताजा हो गईं। फिर वह पालथी मारकर बैठ गया और साधना की अवस्था में प्रवेश कर गया और अराजक नौयांग दिव्य कला प्रसारित होने लगी। शमन शरीर क्षेत्र केवल आध्यात्मिक ऊर्जा को शरीर से जोड़ सकता था, इसे प्रक्षेपित नहीं किया जा सकता था, जिसका अर्थ था कि कोई लंबी दूरी का हमला नहीं था। वांग चेन अब बिल्डिंग स्पिरिट दायरे में प्रवेश करना चाहता था, जहां अराजक नौयांग दिव्य कला पर भरोसा करते हुए रात होने से पहले आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रक्षेपण किया जा सकता था। सिस्टम, आज रात मुझे जगाना, याद रखना, मैं सोने का नाटक करना चाहता हूँ। हे, ये घटिया मेजबान बहुत ही उल्टा खेल खेल रहा है। वह न सिर्फ मासूम भावी महारानी जियांग लिंगजियांग को धोखा दे रहा है, बल्कि वह एक विद्रोही शिष्य भी बनना चाहता है जो अपने गुरु का फायदा उठाने की कोशिश करता है। सिस्टम ने वांग चेन का आशय समझ लिया और अपनी ठंडी यांत्रिक आवाज से उसे चिढ़ाने से खुद को नहीं रोक सका। वांग चेन को पिछली रात की बात याद आई, वह मुस्कुराया और उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और जल्दी ही साधना की अवस्था में चला गया। उन्होंने शाम 5 बजे तक खेती की। दरार, वांग चेन के शरीर के भीतर से एक तीखी ध्वनि फूट पड़ी और आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा उन्मत्त रूप से एकत्रित होने लगी। आत्मा क्षेत्र का निर्माण, तोड़ो, राज्य की बाधा टूट गई थी। वांग चेन का माथा थोड़ा पसीने से तर था, लेकिन उसकी दिव्य आत्मा को केवल ताजगी महसूस हुई। उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली, बल्कि पूरी तरह से साधना में डूबे रहे और अपनी शक्ति बढ़ाने की पूरी कोशिश करते रहे। इस तरह वह वर्तमान में बिल्डिंग स्पिरिट दायरे की तीसरी परत पर भाग्य के बच्चे किन्येफान से निपट सकता है और कल अपने हथियार कब्रिस्तान अफसर को जबत कर सकता है। वह हाई आवर तक, जो रात के 10 बजे का समय है, साधना करता रहा। वांग चेन का आभामंडल पहले ही आत्मा क्षेत्र निर्माण के शिखर पर पहुंच चुका था। यह अराजक नौयांग दिव्य शरीर का अद्भुत हिस्सा था। इसने आधे दिन में एक दायरे की 1.9 परतों को तोड़ दिया। इसके अलावा साथ में साधना तकनीक, अराजक नौयांग दिव्य कला के साथ लिंगवान क्षेत्र के नीचे साधना सरल थी। ट्रैश होस्ट, डिंगे लिंग, सिस्टम अलार्म घड़ी आपकी सेवा में है, डिंगे लिंग। तुम पागल हो, तुमने मुझे डरा दिया। वांग चेन अपने दिमाग में सिस्टम की अचानक आवाज सुनकर चौंक गया और उसने जल्दी से अपनी आंखें खोल दी। तुमने मुझे फोन करने को कहा था, ठीक है, और तुम अभी भी मुझे डांट रहे हो, तुम बदबूदार मेजबान। ठीक है, ठीक है, मेरी गलती। वांग चेन ने अनिच्छा से अपनी गलती स्वीकार की। अंधेरे वातावरण को देखते हुए वह चुपचाप बिस्तर पर लेट गया। उसने अपनी दिव्य आत्मा को सिस्टम के भंडारण स्थान में बढ़ाया। 10 अक्षरों वाले सुनहरे कार्ड को देखते हुए ऐसे मुस्कुराया जैसे वह कैंडी खा रहा हो। उपयोग: डिंग, कामोत्तेजक धूम्रपान, कैंडी की तरह जहर की गोलियां खाना। कार्ड का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया। प्रभाव सक्रिय हो गया। मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। वांग चेन बिस्तर पर लेटा हुआ था, उबा हुआ, छत को घूर रहा था, चुपचाप अपने दिल में बसे व्यक्ति के आने का इंतजार कर रहा था। उसे यह नहीं पता था कि मेज पर रखी छोटी सी धूपबत्ती पहले से ही रंगहीन और गंधहीन कामोत्तेजक पदार्थ उत्सर्जित करने लगी थी। ओह ठीक है सिस्टम, मेरी साधना को शमन शरीर क्षेत्र की 9वीं परत तक सुरक्षित रखें, जैसे कि यह जागृति स्तंभ के बाद ऊर्जा प्रतिक्रिया से हो। अन्यथा ये बहुत अजीब होगा यदि मैं जियांग लिंगक्सियन द्वारा मुझे साधना तकनीक दिए जाने से एक दिन पहले ही बिल्डिंग स्पिरिट दायरे की 1ली परत के शिखर तक पहुंच जाऊं। ठीक है, दायरे की सुरक्षा आभा फंक्शन सक्रिय हो गया है। वर्तमान ऋण 4000 स्रोत अंक। जैसे ही सिस्टम के शब्द गिरे, वांगचेन की साधना आभा शमन शरीर क्षेत्र की 9वीं परत तक गिर गई, हालांकि वह वास्तव में अभी भी बिल्डिंग स्पिरिट क्षेत्र में था। इस प्रकार वांगचेन और सिस्टम लगभग आधे घंटे तक हंसी मजाक करते रहे। उसके बाद बाहर से आवाज आई, टैप टैप। दरवाजे से धीमी आवाज में कदमों की आहट सुनाई दी। वांगचेन की सुनने की शक्ति की वजह से वह उन्हें साफ सुन सकता था। उसने जल्दी से अपना शरीर दरवाजे से दूर कर लिया, अपनी आंखें बंद कर ली और घबराहट से बाहर आने वाले व्यक्ति का इंतजार करने लगा। कुत्ते मेजबान, वह यहाँ है, वह यहाँ है, तुम्हारा प्यारा छोटा मालिक यहाँ है। हे। सिस्टम इस अस्पष्ट रात्रिकालीन युगल को अपने दिमाग में इस तरह से खींच रहा था मानो उसका मुंह हंसी से फटा जा रहा हो। चिल्लाओ मत, मैं बहरा नहीं हूँ। कचरा होस्ट केवल सोने का नाटक करने की हिम्मत करता है। मैं चिल्लाऊंगा। नहीं, तुम बकवास। वांगचेन अपने मन में सिस्टम को कोसने से खुद को नहीं रोक सका, जब तक कि उसके पीछे से आ रहे कदमों की आहट अचानक बिस्तर के पास नहीं रुक गई। थोड़ी देर बाद वांगचेन ने महसूस किया कि एक गर्म नाजुक शरीर धीरे से बिस्तर पर लेट गया और उसे पीछे से गले लगा लिया। उसके पीछे वाला व्यक्ति अभी भी बेचैन लग रहा था। आध्यात्मिक ऊर्जा की एक हल्की ठंडक उसके शरीर में प्रवाहित हो रही थी, जिससे वह निढाल हो गया। धिक्कार है, खुले भाले से बचना आसान है, लेकिन छिपे हुए तीर से बचना मुश्किल। जियांग लिंगशियन फिर से यही चाल चल रहा है, मैं इससे कैसे बच सकता हूँ। वांगचेन केवल यह महसूस कर सकता था कि उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, अंततः नर्म और लचीला हो रहा है, जिससे जियांग लिंगशियन को अपनी इच्छानुसार कार्य करने की अनुमति मिल रही है। इन चरणों को पूरा करने के बाद उसके पीछे खड़े व्यक्ति ने अत्यंत सावधानी बरतते हुए धीरे से वांगचेन को पलट दिया। वांगचेन ने अपनी आंखें खोलने की हिम्मत नहीं की। वह चुपके से जियांग लिंगक्सियन की कोमल हरकतों को महसूस कर रहा था, क्योंकि वह धीरे धीरे उसे अपने गर्म आलिंगन में खींच रही थी। जियांग लिंगक्सियन ने अपनी बाहें उसकी कमर के चारों ओर डाल दी और उसके नाजुक शरीर को धीरे से गले लगा लिया। इस समय जियांग लिंगक्सियन की बाहें अचानक कड़ी हो गईं, जैसे कि उसे डर था कि वांगचेन उसे छोड़ देगा। अरे अरे अरे, ऐसा मत करो, मुझे इतना कसकर पकड़ना थोड़ा कष्टदायक है। ओह, मैं दब गया हूँ, बस करो, मुझे सांस लेने में तकलीफ होने लगी है। सौभाग्य से जियांग लिंगक्सियन ने उसके धीरे धीरे कसते हाथों को रोक दिया, जिससे अंततः वांगचेन को, जो अपनी आंखें बंद करके बेहोश होने का नाटक कर रहा था, सांस लेने का मौका मिल गया। शिष्य: जियांग लिंगक्सियन की लंबी पलकें थोड़ी कांप उठी, उसकी क्रिस्टल क्लियर आंखें सो रहे वांगचेन पर टिक गईं, और वह अचानक धीरे से सिसकने लगी। उसका निचला होंठ कसकर दबा हुआ था। शिष्य: गुरु का दिन में यह मतलब नहीं था, मुझे तो बस डर था कि कोई तुम्हें छीन न ले। मुझे माफ करना, सच में माफ करना। कृपया किसी और को अपना गुरु बनाने के बारे में मत सोचिए, ठीक है? जियांग लिंगक्सियन के स्वर में अत्यधिक नाजुकता और विनती का भाव था, जो दिन के दौरान उसकी ठंडक के बिल्कुल विपरीत था। शिष्य: गुरु ने आखिरकार तुम्हें फिर से देख लिया, कृपया गुरु को फिर से मत छोड़ना। जैसे ही जियांग लिंगक्सियन ने बात की, उसने अपना चेहरा वांगचेन की छाती में दबा लिया और पहले से वांगचेन के शब्दों के बारे में सोचते हुए अंततः आंसू गिर गए। वांगचेन ने महसूस किया कि उसकी छाती धीरे धीरे आंसुओं से भीग गई, लेकिन इस समय उसका दिल बहुत सदमे में था। अपने पिछले जीवन में जियांग लिंगक्सियन इस समय बिल्कुल इस तरह उसकी बाहों में नहीं रो रहा होता। आखिर क्या हो रहा था? इसके अलावा उसकी परिचित शिष्य पुकार सुनकर वांगचेन के मन में एक अनुमान बना। क्या ये हो सकता है कि जियांग लिंगक्सियन का भी उसी की तरह पुनर्जन्म हुआ हो? और ऐसा लगता था कि उसका पुनर्जन्म उसके पुनर्जन्म से बहुत पहले हुआ था। नहीं, मुझे फिर से सुनने दो, आखिरकार हम दोनों के पुनर्जन्म की संभावना बहुत कम है। वांगचेन ने जियांग लिंगक्सियन को अपने शरीर को गर्मजोशी और कसकर गले लगा लिया, चुपचाप अपनी आंखें बंद कर ली और सोने का नाटक करते हुए उसके अगले शब्दों को सुनने की प्रतीक्षा करने लगा। शिष्य, गुरु सच में डरे हुए हैं, सच में डरे हुए हैं कि तुम किसी और को अपना गुरु बनाना चाहते हो। वाह! जियांग लिंगक्सियन की आवाज तेजी से घुटती और दबी हुई होती गई, उसकी स्पष्ट आवाज भी सुस्त और धुंधली होती गई, जिससे वह बेहद दयनीय दिखाई देने लगी। ये सुनकर वांग चेन का दिल पिघल गया। 1000 साल में ये पहली बार था जब उसने जियांग लिंगक्सियन को ऐसी हालत में देखा था। मुझे खेद है, सचमुच खेद है। इस समय जियांग लिंगक्सियन ने अचानक माफी मांगना शुरू कर दिया, जिससे सोने का नाटक कर रहे वांग चेन पूरी तरह से हतप्रभ रह गए। हालांकि जैसे जैसे जियांग लिंगक्सियन बोलता रहा, वांग चेन धीरे धीरे समझ गया, लेकिन वह और भी अधिक हैरान था। हमारे पिछले जीवन में आप दानव गुफा अस्थि भूमि में घेर लिए गए थे और मारे गए थे, लेकिन मास्टर अभी भी एकांत में थे। वो वो गुरुजी सच में नहीं जानते थे, नहीं जानते थे कि उस समय आपको सम्राट की यातना झेलनी पड़ेगी। मुझे माफ करना शिष्य, मुझे माफ करना। वाह! ऐसा लग रहा था कि दिन के समय वांग चेन ने जियांग लिंगक्सियन के साथ गलत व्यवहार किया था। वह, जो आमतौर पर बोलने में अच्छी नहीं थी, धीरे धीरे रात में अधिक बोलने लगी। वांग चेन के जागते समय उसने ये शब्द कहने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह वर्तमान वांग चेन को डराने से डरती थी, जो इस जीवन में उससे मिला था। लेकिन जियांग लिंगक्सियन भूल गई थी कि उसके पिछले जीवन में भी वांग चेन द्वारा हर बार उसके सामने स्वीकार किए जाने के बाद वह केवल आधी रात को ही वांग चेन को पकड़ने की हिम्मत कर पाई, विशेष रूप से असुरक्षित महसूस कर रही थी और ऐसे शब्द बोल सकी जो वे दोनों जागते समय कहने की हिम्मत नहीं कर पाते। जियांग लिंगक्सियन एक आत्मसंयमित व्यक्ति की तरह थी, जिसमें अत्यधिक असुरक्षा थी, जिससे दूसरों के लिए उसकी उदास भावनात्मक दुनिया में प्रवेश करना मुश्किल हो जाता था। नहीं, उसने भी वास्तव में पुनर्जन्म लिया है। लेकिन इस समय जियांग लिंगक्सियन को उसे पकड़कर रोते और बात करते हुए सुनकर वांग चेन पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। जहां तक वांग चेन के उसके शब्दों पर विचार करने की बात है, वह मदद नहीं कर सका, लेकिन याद आया कि अपने पिछले जीवन में जियांग लिंगक्सियन वास्तव में सम्राट स्तर के बिजली के क्लेश से गुजरने के बारे में नहीं जानता था। क्योंकि वांग चेन को पूरा विश्वास था कि वह बिजली के क्लेश को पार कर सकता है, उसने उसे नहीं बताया। वह केवल क्लेश से गुजरने के लिए निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर गया और उसने वास्तव में सम्राट क्लेश को सफलतापूर्वक पार कर लिया। उस समय वह जाने वाला था। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसके पास अभी भी 1000 क्लेशों का भाग्य बालक है, जो सम्राट क्लेशों से भी अधिक शक्तिशाली है, जिस पर उसने विजय प्राप्त नहीं की थी। वांग चेन ने स्वयं कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि इतने सारे भाग्य के बच्चे, जिनके साथ उसने द्वेष बना रखा था, अचानक प्रकट होंगे, उस पर घात लगाएंगे और उसे मारने के लिए सेना के साथ उसे घेर लेंगे। यदि इसे भाग्य के बच्चों के नजरिए से देखा जाए, तो इसमें एक बड़े खलनायक भूत से लड़ने के लिए एक साथ आने जैसा अजीब एहसास था। हालांकि उन सभी बदमाशों को मास्टर ने मार डाला है, फिर भी। लेकिन शिष्य, पिछले जन्म में गुरु तुम्हें ढूंढ नहीं पाए, चाहे मैंने कितनी भी कोशिश की। जियांग लिंगक्सियन की सामान्य रूप से मधुर आवाज अब धीमी और घुटी हुई थी, एक अत्यंत असहाय नाजुकता से भरी हुई, जिससे उसकी आवाज दयनीय हो गई थी। इन शब्दों के बाद जियांग लिंगक्सियन ने वांग चेन को लंबे समय तक पकड़ रखा, धीरे धीरे थोड़ा दबी हुई और अव्यवस्थित सांसों के साथ हौंफते हुए। लेकिन भले ही जियांग लिंगक्सियन ने वांग चेन को कसकर पकड़ रखा था, लेकिन हर बार जब वह वांग चेन के पहले के शब्दों को याद करती थी, तो उसके दिल में एक चुभने वाला दर्द महसूस होता था। वह बहुत डरी हुई थी, वांग चेन को फिर से खोने से बहुत डरी हुई थी कि उसे कोई और छीन लेगा। वह सचमुच वांग चेन को अपने साथ बांधे रखना चाहती थी, उसे किसी के द्वारा ले जाने नहीं देना चाहती थी। लेकिन जियांग लिंगक्सियन ने लगातार खुद को चेतावनी दी कि उसे ऐसा कोई विकृत काम नहीं करना चाहिए। ऐसा व्यवहार न केवल स्वार्थपूर्ण था, बल्कि इससे उसकी शिष्या भयभीत भी हो सकती थी और इसका उल्टा असर भी हो सकता था। हालांकि चाहे वह अपने पिछले जीवन में हो या अब, वांग चेन का सामना करते समय वह अपनी छिपी भावनाओं को केवल तभी व्यक्त कर सकती थी जब वह सो रहा हो, क्योंकि जियांग लिंगक्सियन वास्तव में गुरु और शिष्य के बीच संबंध के वर्जित कार्य के बारे में असाधारण रूप से चिंतित था। दरअसल सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जियांग लिंगक्सियन को बचपन से ही प्यार की कमी थी। जब वह छोटी थी तो उसके करीबी माता पिता उसे निगल जाना चाहते थे, जिससे उसके मन में अपने सबसे करीबी लोगों के प्रति और भी अधिक भय पैदा हो गया। जियांग लिंगक्सियन को डर था कि एक बार गुरु शिष्य का रिश्ता टूट गया और वांग चेन उसका पति बन गया, तो उसे सुरक्षा की अत्यधिक कमी महसूस होगी। और गुरु शिष्य का रिश्ता बिल्कुल सही था, कम से कम उसे वांग चेन द्वारा त्याग दिए जाने का डर नहीं था, जिससे उसे थोड़ी सुरक्षा का एहसास होता था। इसलिए अपने पिछले जीवन में वांग चेन की सचेत धारणा में वह हमेशा ठंडी और उदासीन रही थी, उसकी गतिविधियों को अनदेखा करती रही थी। ये गुरु शिष्य संबंध, जो जियांग लिंगक्सियन को थोड़ी सुरक्षा की भावना प्रदान कर सकता था, अनजाने में 1000 वर्षों से अधिक समय तक चला। वांग चेन की मृत्यु तक ऐसा नहीं था कि उसने क्रोध में आकर अपनी तलवार चलाए और 8 उजाड़ क्षेत्रों में कत्लेआम किया और अंत में प्रेम के बलिदान के रूप में आत्महत्या करके इसे समाप्त कर दिया। अल्पविराम। कुत्ते मेजबान, आपको क्या लगता है क्या होगा यदि आप अचानक अपनी आंखें खोलें और स्वीकार करें कि आपका भी पुनर्जन्म हुआ है? जिस तरह जियांग लिंगक्सियन के कारण वांग चेन का मन उथल पुथल में था, उसी तरह सिस्टम की आवाज भी उतनी ही हैरान करने वाली गूंजी। शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों रूप से उसके बारे में मेरी समझ के आधार पर वह बहुत खुश हो सकती है। वह इस बात से बहुत राहत महसूस कर सकती है कि मेरा भी पुनर्जन्म हुआ है, या वह इतनी घबरा सकती है कि उसे लगेगा कि यह एक भ्रम है। लेकिन अंत में हमारा वर्तमान संबंध निश्चित रूप से धीरे धीरे सामान्य गुरु शिष्य वाला हो जाएगा, ठीक पिछले जन्म की तरह। यदि आप पिछले जीवन को दोहराते हैं जहां वह गुरु होने और सीमाओं को पार न करने की आड़ में मना करती रहती है, तो आपका मिशन कभी पूरा नहीं होगा। उसे बचपन में अपने माता पिता के साथ कुछ अनुभव हुआ होगा, उसे डर इस बात का नहीं है कि मेरे साथ उसका गुरु शिष्य का रिश्ता टूट जाएगा। इसके बजाय वह हमेशा डरती रही है कि एक बार मैं उसका दाव साथी बन गया और उसका सब कुछ हासिल कर लिया तो मैं एक दिन उसे धोखा दे दूंगा। वांग चेन जियांग लिंगशियान को बहुत अच्छी तरह से समझता था, उसका दिल उदासी से भर गया था और उसने लगभग बिना किसी हिचकिचाहट के सिस्टम को जवाब दे दिया। उसने ये कहने का साहस किया कि जियांग लिंगक्सियन के अलावा इस दुनिया में कोई भी उसे उससे बेहतर नहीं जानता था जो 1000 से अधिक वर्षों से उसके साथ रहा था। अपने पिछले जीवन में वह जियांग लिंगक्सियन के साथ गुरु शिष्य संबंध बनाए रखना नहीं चाहता था और निश्चित रूप से वह इस जीवन में अपने पिछले जीवन के मार्ग को दोहराना नहीं चाहता था। अपने पिछले जीवन में जियांग लिंगक्सियन का शिष्य बनने के लगभग 100वें वर्ष बाद उसके मन में उसके प्रति गहरा स्नेह विकसित हो गया। उन्होंने जियांग लिंगशियान का 900 से अधिक वर्षों तक पीछा किया था तथा वे जीवन भर अविवाहित रहे थे तथा अन्य महिलाओं में उनकी कोई रुचि नहीं थी। फिर भी वह उसे प्रभावित करने में असफल रहा, उसे हमेशा मास्टर के नाम पर ठंडे और पूरी तरह से खारिज कर दिया गया, एक दूरी बनाए रखी गई। वांग चेन को एक अकथनीय उदासी महसूस हुई, उसे अपनी बाहों में मौजूद व्यक्ति की नाजुक खुशबू और दबी हुई बड़बड़ाहट का एहसास हुआ, उसके विचार अस्त व्यस्त हो गए। शिष्य, गुरु को मत छोड़ो, मत छोड़ो, मत। जियांग लिंगक्सियन धीरे धीरे थक कर रोने लगी, अवचेतन रूप से उसने अपना चेहरा वांग चेन की गर्म गर्दन में दबा लिया और सो गई। जब वांग चेन को अपने बगल वाले व्यक्ति की ओर से कोई हलचल महसूस नहीं हुई, तब उसने अपनी आंखें थोड़ी सी खोली और सावधानी से उस ओर देखा। ये पुष्टि करने के बाद कि वह सो रही है, वांग चेन ने जल्दी से अपनी गहरी उत्साही आंखें खोली और जियांग लिंगक्सियन को घूरा। फिर वांग चेन ने अत्यंत कोमल किंतु कोमल शीतल आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस किया जिसने उसके पूरे शरीर को शिथिल कर दिया तथा उसके शरीर के भीतर अराजक ज्वालाएं भड़क उठी। ये सचमुच पिघल सकता है। ऐसा लगता है कि जियांग लिंगक्सियन उसे चोट पहुंचाने से डरता था और बहुत अधिक ठंडी आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने शरीर पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं करता था। वांग चेन ने महसूस किया कि उसके शरीर में धीरे धीरे संवेदना और नियंत्रण वापस आ गया है। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी खुशी भरी थी क्योंकि वह अपने शरीर के भीतर ठंडी आध्यात्मिक ऊर्जा को तेजी से पिघला रहा था। अंततः उसके शरीर ने पूरी तरह से नियंत्रण हासिल कर लिया। तभी वांग चेन ने अपनी निगाहें जियांग लिंगक्सियन के अति सुंदर चेहरे पर घुमाई, उनका मूड स्पष्ट रूप से उत्तेजित और उत्साहित था। अपने दो जीवन में ये पहली बार था कि उसने जियांग लिंगशियान को इतने करीब से हाथ की पहुंच के भीतर चुपचाप देखा था। वांग चेन ने जियांग लिंगक्सियन को महसूस किया जिसने अपना सिर उसकी गर्दन में दबा लिया था, उनकी मुद्रा एक स्पष्ट पक्षालिंगन थी। अंततः वांग चेन अपने हाथ को बढ़ाने से खुद को रोक नहीं सका और धीरे धीरे उसके चिकने सुंदर गाल पर चुटकी काट ली। जियांग लिंगशियान रोते रोते सचमुच थक गई थी, या शायद दिन में वांग चेन ने उसके दिल को ठेस पहुंचाई थी। अब वांग चेन के गर्म आलिंगन में गहरी नींद में सोते हुए उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। उसकी कोई प्रतिक्रिया न देखकर वांग चेन ने धीरे से अपना हाथ जो उसके नाजुक हिस्से पर दबा हुआ था उसके चारों ओर लपेट लिया और धीरे धीरे उसे अपने करीब खींच लिया। फिर उसका सुंदर चेहरा थोड़ा नीचे झुका, उसके होंठ उसके गोरे माथे के पास पहुंचे और उसने उसे बहुत हल्के से चूमा। गुरुजी, इस जीवन में मैं अब आपका शिष्य नहीं रहना चाहता। आखिरकार अपने पिछले जन्म में मृत्यु से पहले मैंने कसम खाई थी कि अगर अगला जन्म हुआ तो मैं तुम्हें कठोर अनुशासन दूंगा। वांग चेन की हल्की चुंबकीय और कोमल आवाज ने जियांग लिंगक्सियन के कान में धीरे से ये दो वाक्य कहे। अंत में वांग चेन वापस लेट गया और उनकी स्थिति पहले जैसी हो गई। इस रात जियांग लिंगक्सियन, जो शायद ही कभी गहरी नींद सो पाता था, ने एक और सपना देखा। उसने सपना देखा कि एक घने अंधेरे शून्य में वांग चेन पिछला जीवन अचानक उसके सामने प्रकट हुआ और उसे कसकर गले लगा लिया। उसने सपने में उसके माथे को चूमा भी, लेकिन वह हिल नहीं सकी, केवल बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूरती रही। अंततः जब वांग चेन का शरीर लगभग नष्ट होने वाला था, उसने उसे दो वाक्य सुनाए। गुरुजी, मैं अब आपका शिष्य नहीं रहना चाहता। आखिरकार अपनी मृत्यु से पहले मैंने कसम खाई थी कि अगर अगला जीवन हुआ तो मैं तुम्हें कठोर अनुशासन दूंगा। अपने सपने में जिस क्षण जियांग लिंगक्सियन ने वांग चेन का पहला वाक्य सुना, उसकी पहली प्रतिक्रिया उनके गुरु शिष्य संबंध और उसके हृदय में गहरे बैठे उत्साह के बारे में सोचना था, जो अवचेतन रूप से अपना मुंह खोलकर उसे मना करना चाहता था, ठीक अपने पिछले जन्म की तरह। लेकिन वांग चेन का दूसरा वाक्य सुनने के बाद जियांग लिंगक्सियन का दिल दुख गया और उसे अचानक एहसास हुआ कि यह एक सपना था। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि यह एक सपना था, वांग चेन की आकृति तेजी से गायब हो गई, उसकी चेतना वापस आ गई और सपना तेजी से टूटने लगा। नहीं, मत करो, नहीं। भोर के करीब जियांग लिंगक्सियन अचानक वांग चेन की बाहों में जाग गई। उसकी आंखों के कोनों में अभी भी आंसू थे। उसका दिल घबरा गया था। क्या इस आदमी को कोई बुरा सपना आया? वांग चेन अपनी आंखें बंद किए हुए अचानक जागे हुए जियांग लिंगक्सियन को देखकर चौंक गया। सौभाग्य से उसने अचानक कांपने की इच्छा को नियंत्रित कर लिया। मालिक, मत छोड़ो, मत, मत। जिस क्षण जियांग लिंगक्सियन की नींद खुली और उसने वांग चेन को देखा, उसकी घबराई हुई भावनाएं अंततः थोड़ी कम हो गई। लेकिन उसने अभी भी वांग चेन को कसकर पकड़ रखा था, लगातार बुदबुदा रही थी, मानो वह एक पल के लिए भी उससे अलग नहीं होना चाहती थी। हालांकि बाहर सुबह का प्रकाश देखकर जियांग लिंगक्सियन ने असुरक्षित महसूस करते हुए वांग चेन को आधे घंटे तक पकड़ रखा, लेकिन अंत में वह अनिच्छा से और धीरे से अपने हाथ वापस खींच सकी। वांग चेन में उसके बगल में खड़ा व्यक्ति धीरे से सरसराहट करता हुआ उठा, फिर सभी बचे हुए निशानों को साफ करना शुरू कर दिया। चरमराहट। अंत में जियांग लिंगक्सियन चला गया, दरवाजा खुला और बंद हुआ और विरोध की अंतिम ध्वनि निकली। थोड़ी देर बाद वांग चेन अंततः बिस्तर पर बैठ गया और लंबे समय तक अपनी स्थिति में नहीं आ सका। उसने अभी भी जियांग लिंगक्सियन को यह बताने की योजना नहीं बनाई थी कि उसका भी पुनर्जन्म हुआ है। वह ये निर्णय तब लेगा कि उसे यह बताना है या नहीं, जब वे दोनों बाद में दाव साथी बन जाएंगे। उसे यकीन नहीं हुआ। दो जिंदगियां जी लेने के बाद वह जियांग लिंगक्सियन के बारे में सब कुछ जानता था। उसने गलती से उसके शरीर को भी देख लिया, जो चार सबसे क्रूर दिव्य जानवरों में से एक था। वांग चेन को याद आया कि पिछले जन्म में उसे पूरी तरह से समझने के लिए उसे ड्रैगन ट्री पर उल्टा लटका दिया गया था और उसे 4900 बार कोड़े मारे गए थे। ये जियांग लिंगक्सियन द्वारा दी गई सबसे गंभीर पिटाई थी। विलो कोड़े से चिंगारी भी निकली, जिससे वांग चेन लगभग नरक के राजा से मिलने जा रहा था। लेकिन वांग चेन को बाद में कोई पछतावा नहीं हुआ, क्योंकि उस एक नज़र से उसे लगा कि उसका पूरा पिछला जीवन सार्थक था। इस प्रकार यदि उसे इस जीवन में भी उसके द्वारा लगातार अस्वीकार किया जाता रहा, तो वांग चेन का वास्तव में इरादा टोफू का एक टुकड़ा खोजने और उस पर अपना सिर पटक कर मरने का था। चूंकि जियांग लिंगक्सियन का भी पुनर्जन्म हुआ है, इसका मतलब है उसे जीतना आसान होगा। हम्फ हम्फ हम्फ, डिंग डिंग डिंग। मेजबान, अपने पिछले जन्म के स्मृति रिकॉर्ड देखते हुए मुझे अचानक कुछ याद आ गया। ऐसा लगता है कि आज एक पेड़ के नीचे एक भाग्यशाली मुठभेड़ भाग्य के एक और बच्चे द्वारा प्राप्त की गई थी। जल्दी करो, आइए जल्दी करें और इस जीवन में आगे बढ़ने के लिए भाग्य के उस बच्चे के साथ हुई सौभाग्यपूर्ण मुलाकात का लाभ उठाएं। धिक्कार है, तुमने पहले क्यों नहीं कहा? समय निकला जा रहा है, चलो चलो चलो। वांग चेन ने जल्दी से चादरें हटा दी, बिस्तर से बाहर निकला, जियांग लिंगक्सियन द्वारा कल दिए गए जूते पहने और दौड़ना शुरू कर दिया। साधना जगत में भाग्य के बहुत से बच्चे थे और अंगिनत संयोग थे। वांग चेन को शायद उन सभी का स्थान याद नहीं था, इसलिए सिस्टम की पुनर्प्राप्ति योग्य यादें खजाने की खोज का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा थी। बाद में खजाने की खोज करने वाले पालतू जानवर और सिस्टम की स्थिति के साथ उन आकस्मिक मुठभेड़ों को पकड़ना निश्चित रूप से आसान होगा। अब इससे पहले कि जियांग लिंगक्सियन उसे हथियार कब्रिस्तान में ले जाने के लिए पहुंचे, वांग चेन के पास अभी भी खुदाई करने के लिए सीमित समय था। चूंकि स्थिति निर्धारण के लिए कोई मूल बिंदु नहीं है, इसलिए मैं आपको केवल एक मोटा स्थान दे सकता हूं। ऐसा लगता है कि यह एक आड़ू फूल का जंगल है। आड़ू के फूलों का जंगल। वांग चेन के बाहर जाने के बाद उसने अचानक सिस्टम की आवाज सुनी और एक जगह धीरे धीरे उसके दिमाग में उभरी। ताइजू अमर संप्रदाय के ताइजू आड़ू फूल वन। ये वह स्थान था जहां वांग चेन अपने पिछले जन्म में अक्सर आया करता था। वह उस स्थान से बहुत परिचित था, क्योंकि अपने पिछले जीवन में वांग चेन ने गलती से जियांग लिंगक्सियन को एक खिलता हुआ आड़ू का फूल दे दिया था। जब उसे पता चला कि उसे ये गुलाबी आड़ू के फूल बहुत पसंद हैं, तो वांग चेन अक्सर उन्हें तोड़कर उसे देने जाता था, ताकि वह उसे खुश कर सके। वांग चेन का दिमाग स्वचालित रूप से मार्ग खोजने लगा और उसकी बिल्डिंग स्पिरिट दायरे की पहली परत की पीक ताकत ने उसकी गति इतनी तेज कर दी कि वह धुंधली हो गई। आसपास के शिष्यों की छानबीन करने वाली निगाहों को नजरअंदाज करते हुए वांग चेन केवल अपने दिल में आड़ू के फूलों से भरे आड़ू के फूल के जंगल की ओर भाग गया। लेकिन वांग चेन जानता था कि अब तक उसका महान नाम पूरे ताइजू अमर संप्रदाय में फैल गया होगा। उनके पिछले जीवन में नौयांग दिव्य शरीर लीक नहीं हुआ था, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वह जियांग लिंगक्सियन के शिष्य थे, अफवाहें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल गईं। अब यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि वह न केवल नौयांग दिव्य निकाय थे बल्कि जियांग लिंगक्सियन के स्पष्ट शिष्य भी थे। स्प्रिंट के तुरंत बाद वांग चेन ने अपनी एड़ियों को जमीन पर पटक दिया, अचानक ब्रेक लगा दिया और आड़ू के फूलों से ढकी मिट्टी में एक खाई बना दी। यहाँ जहां भी वांग चेन की निगाह पड़ी वहां खिले हुए आड़ू के पेड़ों का विशाल विस्तार दिखाई दिया जो अत्यंत सुंदर दृश्य था। इस समय आड़ू के फूलों के जंगल में जो महान संप्रदाय की सावधानी पूर्वक खेती के कारण साल भर खिलता रहता है। इसके अलावा कुछ महिला शिष्याएं आड़ू के फूलों से शराब बनाने के लिए आड़ू के फूल चुन रही थी। वहां कुछ पुरुष शिष्य भी टहल रहे थे और एक व्यक्ति कुछ खोज रहा था। ये किंग वांग चेन ने उसे एक नजर में पहचान लिया। उसकी आंखें जानलेवा इरादे से भरी हुई थी मानो किसी भी क्षण फट पड़ने वाली हों। आड़ू के फूलों के जंगल में शिष्य आभा के प्रति संवेदनशील चौंक गए और वांग चेन की ओर देखने लगे। ये किंग ने भी वैसा ही किया लेकिन उनकी आंखों में वांग चेन ने पहले ही अपनी नजरें फेर ली थी और ध्यान से एक सुंदर आड़ू का फूल चुन रहा था। एक बार जब उन शिष्यों ने वांग चेन नौयांग दिव्य शरीर जो बाहर आ गए थे से अपनी अजीब जांच करने वाली निगाहें हटा ली तो वांग चेन की निगाहें फिर से चली गईं। ये किंग को देखते हुए जो लगातार आगे एक आड़ू के पेड़ की स्थिति की पुष्टि कर रहा था वांग चेन उसे सूक्ष्मता से देख रहा था। अंततः ये किंग ने उसे पहचान लिया। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह जल्दी से नीचे बैठ गया खुदाई शुरू करने के लिए तैयार। कितना दुस्साहस, तुमने दिन के उजाले में पूरा आड़ू का पेड़ तोड़ने की हिम्मत की। ये देखकर वांग चेन जल्दी से बाहर कूद गया। ये किंग की ओर इशारा करते हुए जोर से चिल्लाया जैसे कि किसी चोर को पकड़ रहा हो। ये किंग चौंक गया और आसपास के शिष्यों की निगाहों को महसूस करते हुए उसने जल्दी से अपना हाथ वापस खींच लिया और वांग चेन को ठंडी निगाहों से देखा। वांग चेन भूल गया था कि उसने अपने पिछले जीवन में ये किंग के साथ कब दुश्मनी की थी, लेकिन दुश्मनी के दो कारण प्रतीत होते थे। सबसे पहले ऐसा लग रहा था कि वह ईर्ष्या के कारण ऐसा कर रहा था क्योंकि वह जियांग लिंगक्सियन का शिष्य था। उसने महसूस किया कि वांग चेन ताइजू संत के शिष्य होने के योग्य नहीं था। दूसरा, वांग चेन ने कुछ साधना प्राप्त करने के बाद उन सभी को दबाना चुना जो उसके अविश्वसनीय रूप से सुंदर गुरु की लालसा रखते थे। ये किंग उनमें से एक था। अपने पिछले जीवन में उसे वांग चेन जो एक प्रमुख खलनायक जैसा चरित्र था ने इतनी बुरी तरह पीटा था कि वह अपना सिर भी नहीं उठा सकता था। और उस महान युद्ध में जहां वह अपने पिछले जीवन में घात लगाकर बैठा था ये किंग ही वह व्यक्ति था जिसने वांग चेन पर अपनी तलवार तान दी थी और पाखंडपूर्ण ढंग से चिल्लाया था। वांग चेन को हजारों भाग्यवान बच्चों के चेहरे पूरी स्पष्टता से याद थे क्योंकि इस जीवन में उन सभी को मरना ही होगा, मैंने नहीं किया। ये किंग ने भौहें चढ़ाई और जल्दी से आसपास के शिष्यों को समझाया। वह ये साबित करना चाहता था कि वांग चेन उसकी निंदा कर रहा था। नहीं देखा, तुम्हारे हाथ में वो चीज क्या है? वांग चेन ने अपने हाथ में पकड़े छोटे फावड़े की ओर इशारा किया और एक मूर्ख के प्रति चिंता के भाव से उसकी ओर देखा। तुम एक काल ड्रॉन बॉडी, एक महिला के खिलौने के अलावा कुछ नहीं हो। मैं जो करता हूँ उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। ये किंग अब इसे सहन करने में असमर्थ लग रहा था। वह गुस्से से वांग चेन को घूर रहा था और उसकी शारीरिक बनावट का मजाक उड़ा रहा था। ये दृश्य उसके पिछले जीवन के समान था लेकिन पिछले जीवन में ये किंग ने उसका मजाक उड़ाते हुए उसके सिर पर धक्का दिया था और अंततः दोनों में लड़ाई हुई। हे कॉल्ड्रॉन बॉडी भी एक उच्च स्तरीय फिजिक है जो आप जैसे निकम्मे व्यक्ति से भी ज्यादा मजबूत है जिसने 3 सालों में 1 इंच भी प्रगति नहीं की है। वांग चेन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान बिखेरी, अपनी दोनों बाहें पार की और अपनी उंगली में पहनी अंगूठी पर धीरे से नजर डाली। धिक्कार है, देर सवेर मैं उसके बूढ़े को छीन लूंगा और टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तुम मौत मांग रहे हो। ये किंग को सबसे ज्यादा ये बात बर्दाश्त नहीं थी कि दूसरे लोग उसके बारे में ऐसा कहते थे मानो वे साफ साफ कह रहे हों कि वह बेकार है। दरार शमन शरीर क्षेत्र की 9वीं परत के शिखर पर उनकी साधना भड़क उठी और ये किंग के पैरों के नीचे की जमीन धंस गई। वांग चेन ने ये किंग को अपनी ओर दौड़ते हुए देखा, एक तिरस्कार भरी मुस्कान प्रकट की और अपने दाहिने अंगूठे से अपनी मध्यमा उंगली को हिलाया। वाह, एक छोटी सी कंकड़ की तरह एक काली और सफेद लौ उड़ी और ये किंग की छाती पर जोर से लगी। टकराना एक विस्फोट के साथ उसकी छाती पर छोटी सी अराजक ज्वाला फूट पड़ी। इसकी शक्ति इतनी अधिक थी कि वह सीधे दर्जनों मीटर दूर उड़ गया। जो बेकार है वह बेकार है। वांग चेन धीरे धीरे आगे बढ़े और ये किंग को देखा जो जमीन पर दर्द से तड़प रहे थे और अपना पैर उठाकर उनके चेहरे पर पैर रखा। इस तरह के प्रारंभिक चरण के कमजोर देर से चरण में तेजी से बढ़ते भाग्य के बच्चे के लिए वांग चेन अब तिरस्कार से भरा था। ये याद करते हुए कि उसके पिछले जीवन में घात में 2 महान सम्राटों में से एक यही ये किंग था, वांग चेन की आंखों में हत्या का इरादा उमड़ पड़ा। यही कारण था कि वांग चेन उससे सबसे अधिक नफरत करता था। तुम मरोगे, तुम निश्चित रूप से मरोगे। ये किंग पैर पड़ने के बाद उठने में असमर्थ वांग चेन पर दहाड़ा, उसके होठों के कोनों से खून टपक रहा था। क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं अभी तुम्हारा सिर कुचल दूंगा। वांग चेन की आवाज धीरे धीरे लंबी होती गई, जिससे ये किंग में काफी डर पैदा हो गया। अब उसके पास निश्चित रूप से ये किंग को मारने की क्षमता थी, लेकिन उसका बूढ़ा आदमी उसे रोकने के लिए संभवतः उस पर कब्जा कर लेगा और उसे जवाबी हमले में मार भी दिया जा सकता था। ये किंग ये सुनकर अंततः शांत हो गया। एक कमजोर किस्म के भाग्य के बच्चे की सहन शक्ति का स्तर ऐसा ही था। सबने देखा है ना, उसी ने मुझ पर सबसे पहले हमला किया था। यदि आप में से किसी ने बकवास करने की हिम्मत की तो मैं बाद में अपने संत गुरु को बता दूंगी और आपके लिए चीजें मुश्किल बना दूंगी। वांग चेन ने अपनी बाहें पार कर ली, उसके सुंदर चेहरे पर मुस्कान थी और उसकी ठंडी निगाहें शिष्य के वर्तमान पर घूम रही थीं। उसने ये धमकी भरे शब्द खुलेआम कहे बिना किसी शर्म के। आसपास के शिष्यों को तुरंत अपनी निगाहें हटाते देख वांग चेन ने अंततः एक संतुष्ट अभिव्यक्ति दिखाई। फिर उसने अचानक अपना पैर उठाया और ये किंग के हाथ पर जोर से ठोकर मारी जो फावड़ा पकड़े हुए था। दरार, आह, हड्डी टूटने की आवाज और चीख सुनाई दी, यहां तक कि उसकी उंगली की अंगूठी भी गंदी हो गई। वांग चेन फिर नीचे बैठ गया और अपनी अंगूठी उतारने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन पाया कि वह नहीं उतर रही थी। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि मेरे पास तुमसे निपटने का कोई रास्ता नहीं है? वांग चेन गुस्से में हंसा, पास में रखे फावड़े को उठाया और येकिंग की उंगली पर जोर से काट दिया। नहीं, येकिंग डर के मारे चिल्लाया और रिंग में मौजूद बूढ़े व्यक्ति ने उसकी प्रतिक्रिया सुन ली और उसकी हथेली से पारदर्शी आध्यात्मिक ऊर्जा की एक परत फूट पड़ी। झनकार, फावड़ा पारदर्शी आध्यात्मिक ऊर्जा से टकराया, एक तीखी चिंगारी चमकी और फिर ये किंग की आकृति उस स्थान से गायब हो गई। धिक्कार है, जैसी की उम्मीद थी उसे मारना इतना आसान नहीं है, वांग चेन ने गाली दी, फिर फावड़ा उठाया और आड़ू के पेड़ की ओर चल पड़ा जहां ये किंग मिट्टी खोदने वाला था। कश कश, कीचड़ उड़ गया, लेकिन पीच ब्लॉसम वन में मौजूद किसी भी शिष्य ने वांग चेन के कार्यों को फटकारने की हिम्मत नहीं की। धीरे धीरे पीच ब्लॉसम वन में केवल वांग चेन ही बचा था, बाकी सभी लोग भाग गए थे इस डर से कि वे मुसीबत में पड़ जाएंगे। धम्म, जैसे ही फावड़ा किसी कठोर चीज पर लगा वांग चेन का दिल खुशी से भर गया और उसने और भी अधिक जोर से खुदाई शुरू कर दी। जैसे ही एक छोटा हथेली के आकार का चौकोर बॉक्स दिखाई दिया, वांग चेन ने खुशी खुशी इसे अपने भंडारण स्थान में रख दिया, फिर आड़ू के पेड़ के नीचे मिट्टी को वापस खोदा और उसे जमा दिया। उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा था, जियांग लिंगशियान को अब तक उसे ढूंढने के लिए उस कमरे में जाना चाहिए था, इसलिए उसे जल्दी से वापस लौटना पड़ा और बाद में जांचने की योजना बनानी पड़ी कि बक्से के अंदर क्या है। अन्यथा यदि वह ठंडा व्यक्ति उसे अपरिचित स्थानों पर दौड़ते हुए देखेगा तो वह क्रोधित हो जाएगा। जैसे ही वांग चेन आड़ू के फूलों के जंगल से बाहर निकलने वाला था, अचानक उसकी चिंता के बीच प्रेरणा की एक चमक ने उसे झकझोर दिया। ये सही है, उसके पिछले जीवन से उसके पसंदीदा आड़ू के कुछ फूल लाओ। वह ये नहीं जानता था कि क्या उसे अभी भी आड़ू के फूल उतने ही पसंद हैं जितने पिछले जन्म में थे। खैर, कोई बात नहीं, उन्हें न लाने से तो बेहतर है कि उन्हें लाया जाए। वांग चेन जल्दी से आड़ू के फूलों के जंगल में लौट आया और ध्यान से सबसे सुंदर खिलते आड़ू के फूलों की तलाश करने लगा। आप एक ही हो, इस क्षण वांग चेन को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अपने पिछले जीवन में लौट आया हो, ऊंची शाखाओं पर खिले आड़ू के फूलों को खोज रहा हो और अपनी प्रेमिका के लिए उन्हें एक बार फिर से धीरे से तोड़ रहा हो। तुम कुत्ते मेजबान, तुम बहुत विचारशील हो। चूंकि उसने भी पुनर्जन्म लिया है, इसलिए जब वह हिनखिलते हुए आड़ू के फूलों को देखेगी तो वह निश्चित रूप से दंग रह जाएगी। हे हे, माइन माइन। आड़ू के फूलों को सावधानी पूर्वक तोड़ने के बाद वांग चेन तुरंत वापस भाग गया। उसने अपने सिर पर गिरी पंखुड़ियों की भी परवाह नहीं की। हालांकि इससे पहले कि वह घर वापस लौट पाता, उसने अंदर जियांग लिंगजियन को देखा। उसका अद्वितीय सुंदर चेहरा ठंडा था, वह तेजी से बाहर जा रही थी। इस समय जियांग लिंगक्सियन के सुंदर चेहरे पर पिछली रात की कोमल दयनीय अभिव्यक्ति नहीं थी। इसके बजाय वह वांग चेन के पिछले जीवन की बर्फ हृदय महारानी के रूप में वापस आ गई थी, जो आकर्षक होते हुए भी ठंडी थी। दिन के समय जियांग लिंगक्सियन और रात के अंधेरे में जियांग लिंगक्सियन एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। जब वांग चेन ने दूरी पर उस सुंदर आकृति को देखा तो उसने फिर से गति बढ़ा दी और अपने हाथों को पीठ के पीछे करके तेजी से जियांग लिंगक्सियन के सामने दौड़ा। परी बहन, मैं तो बस तुम्हें ढूंढने ही वाला था। हे हे, वांग चेन अपने सिर पर कुछ आड़ू की पंखुड़ियां लिए जियांग लिंगक्सियन के पास दौड़ा, एक सुंदर मुस्कान दिखाते हुए उसकी आंखें चमक उठी जब उसने उसकी नजरों से मुलाकात की। जियांग लिंगक्सियन के थोड़े चिंतित कदम अंततः रुक गए जब उसने वांग चेन को देखा। उसके सीने में लटका हुआ दिल आखिरकार शांत हो गया और उसने चुपके से राहत की सांस ली। वह संप्रदाय की प्रत्येक महिला एल्डर के पास जाकर उसके बारे में पूछने वाली थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वांग चेन स्वयं प्रकट हो गया। हालांकि वांग चेन को देखते हुए उसकी अभिव्यक्ति अब और भी ठंडी हो गई थी, जिससे वांग चेन को उसकी सीधी निगाह के नीचे ठंड का एहसास हो रहा था। अभी तुम कहाँ गए थे? जियांग लिंगक्सियन की आवाज बहुत ठंडी थी और उसमें असहनीय गुस्सा भरा हुआ था। वह सचमुच गुस्से में थी और यह उसकी कल्पना से भी अधिक गंभीर लग रहा था। वांग चेन का दिल धड़क उठा जब उसने जियांग लिंगक्सियन के ठंडे, अगम्य, अद्वितीय चेहरे को देखा और मन ही मन सोचा, मैं। डांट खाने के बाद वांग चेन ने जल्दी से भयभीत भाव प्रकट किया। उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे आड़ू के फूलों को कसकर पकड़े हुए थे और वह हकला रहा था। तुम अपने पीछे क्या छिपा रहे हो? जियांग लिंगक्सियन ने भी ध्यान दिया अपनी नाजुक भौहों को सिकोड़ते हुए। उसकी आवाज अत्यंत ठंडी थी क्योंकि उसने उससे फिर से सवाल किया। मैं वांग चेन ने चुपचाप आड़ू के फूलों को अपनी हथेलियों में दो तीन बार मसला, अपना सिर नीचे किया और हकलाते हुए बोला, बोलने की हिम्मत नहीं हुई। इस समय वांग चेन ने सचमुच ग्रीन टी व्यक्तित्व को चरम सीमा तक साकार किया। सुगंध फैलती हुई, एक घूंट में ही नशा छा जाता था। मैं ये सिर्फ एक बार कहूंगा, इसे बाहर निकालो। जियांग लिंगक्सियन के दिल में बेचैनी की भावना पैदा हो गई। वह विशेष रूप से डर गई थी कि वांग चेन के हाथ में जो कुछ था वह संप्रदाय की एक महिला बुजुर्ग द्वारा उसे लुभाने की कोशिश में दी गई रिश्वत थी। उसने वांग चेन के सिर पर बिखरी आड़ू की पंखुड़ियां भी देखी थी, लेकिन इस समय वांग चेन आड़ू के फूलों वाले जंगल में कैसे पहुंच गया होगा? जरूर कोई उसे वहां ले गया होगा। डांट से वांग चेन का शरीर थोड़ा कांप उठा। इस बार ये बनावटी नहीं था बल्कि उसके पिछले जीवन से विकसित एक अचेतन प्रतिक्रिया थी। वांग चेन ने एक मासूमियत भरा भाव दिखाया और अंततः अपने कसकर बंद हाथों को आगे बढ़ाया, लेकिन उन्हें खोले बिना उन्हें मजबूती से पकड़े रखा। उन्हें खोलने, जियांग लिंगक्सियन की निगाहें वांग चेन पर टिकी थी और उसके संत आत्मा क्षेत्र की आभा अनजाने में ही प्रस्फुटित होने लगी। यहां तक कि आसपास की जमीन पर भी बर्फ की एक पतली परत जमने लगी जिससे वांग चेन कांपने लगा। जिस समय जियांग लिंगक्सियन की आभा को लगा कि वह नियंत्रण खोने वाली है, वांग चेन ने अंततः अनिच्छा से अपनी हथेलियां खोल दी। जियांग लिंगक्सियन दंग रह गई जब उसने उसके हथेलियों में आड़ू के फूल देखे और उसकी पूरी आभा भी रुक गई। विशेष रूप से वे कुछ आड़ू के फूल जो मूल रूप से बहुत सुंदर थे, लेकिन अब जैसे कि उसके प्रिय द्वारा कठोर फटकार के बाद वे घबराहट से उसकी हथेली में मुड़े हुए और गंदे थे, लगातार जियांग लिंगक्सियन के दिल पर प्रभाव डाल रहे थे। जियांग लिंगक्सियन के मन में पिछले जीवन में वांग चेन के साथ बिताए समय की यादें तेजी से उभरने लगी। मास्टर, क्या आपको लगता है कि यह आड़ू का फूल सुंदर है? यह आपके लिए है, हे हे। पहले दृश्य में जियांग लिंगक्सियन एक शुद्ध सफेद ठंडे शयन कक्ष में बैठकर प्राचीन ग्रंथ पढ़ रहा था। अचानक दरवाजे पर एक अजीब सी आवाज हुई। वांग चेन ने अपने हाथों को पीठ के पीछे करके अपने कंधे और शरीर से दरवाजा खोला। फिर वह रहस्यमय तरीके से उसके पास गया, अपनी पीठ के पीछे से आड़ू के फूल निकाले, उन्हें जियांग लिंगक्सियन के सामने रख दिया और चंचलता से मुस्कुराया। गुरुजी, क्या आपको आड़ू के फूल ज्यादा पसंद नहीं है? प्लीज नाराज मत होइए, ठीक है। दूसरे दृश्य में एक आंगन में एक विशाल ड्रैगन के आकार के पेड़ के नीचे जियांग लिंगक्सियन ड्रैगन पेड़ के नीचे बैठी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह वांग चेन से नाराज थी। उसका अद्वितीय सुंदर चेहरा ठंडा और चुप था। दूसरी ओर वांग चेन ने जियांग लिंगक्सियन की अभिव्यक्ति को ध्यान से देखते हुए किसी तरह कुछ आड़ू के फूल उगा लिए थे। अंत में उसने सुंदर खिलते हुए आड़ू के फूलों को जियांग लिंगक्सियन की हथेली में रख दिया। उसे फिर से गुस्सा आने का डर था। गुरुजी, मैं आपको सचमुच बहुत पसंद करता हूँ। कैसा रहेगा अगर हम अपना गुरु शिष्य का रिश्ता तोड़कर दाव साथी बन जाएं? हम। अंतिम दृश्य में वांग चेन ने पूरे कमरे को गुलाबी खिले हुए आड़ू के फूलों से सजाया था जिससे यह अत्यंत सुंदर बन गया था। और वांग चेन आड़ू के फूलों का एक बड़ा गुलदस्ता पकड़े हुए था, आधे मजाक में आंख मारते हुए जियांग लिंगक्सियन से कबूल कर रहा था। इनके अलावा कई अन्य यादें भी सामने आईं। जब तक वांग चेन की कमजोर आवाज वास्तविकता में फिर से नहीं आई, तब तक जियांग लिंगक्सियन को होश नहीं आया। जब मैं अभी अभी संप्रदाय के इलाके से परिचित होने के लिए बाहर गया था तो चलते समय अनजाने में मुझे आड़ू के फूलों का जंगल दिखाई दिया, तो मैंने सोचा कि कुछ सबसे खूबसूरत फूल चुनकर तुम्हें दे दूं, परी बहन। बस मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने गुस्से में होगे, मुझे माफ करना। हकलाने के बाद वांग चेन ने चुपचाप अपना सिर नीचे कर लिया और अब जियांग लिंगक्सियन की खूबसूरत आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर सका। ये खामोशी का माहौल लगभग 10 सेकंड तक रहा। उसके बाद जियांग लिंगक्सियन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। जियांग लिंगक्सियन ने वांग चेन की हथेली में कुछ आड़ू के फूल नहीं लिए जो उसके अपने दिल की तरह थोड़े कुचले हुए थे, बल्कि उसने बलपूर्वक अपने हाथों को रोका जो अनजाने में उसकी सफेद पोशाक की आस्तीन के नीचे कांप रहे थे, और अंत में फिर से ठंडी आवाज में बोली, मैं अब तुम्हें हथियार कब्रिस्तान ले चलूंगा। जियांग लिंगक्सियन की स्पष्ट ठंडी आवाज में भी एक बमुश्किल बोधगम्य कंपन था, और बोलने के बाद वह जल्दी से चलने लगी। आप कुत्ते मेजबान, आप बहुत ग्रीन टी हैं, हर चाल सावधानीपूर्वक डिजाइन की गई है, मुझे वास्तव में ये पसंद है, वाह। भाड़ में जाओ। अपने मन में सिस्टम की आवाज सुनकर वान चेन ने शाप दिया और फिर चुपचाप जियांग लिंगक्सियन के कदमों का अनुसरण किया। दोनों चुपचाप चल रहे थे, मानो सब कुछ सामान्य हो, फिर भी यह अत्यंत अजीब और असामान्य लग रहा था। वान चेन ने अभी भी अपनी हथेली में हल्के कुचले हुए आड़ू के फूलों को कसकर पकड़ रखा था और लापरवाही से उन्हें जमीन पर नहीं फेंका था। आखिरकार यही उसका असली इरादा था, भले ही जियांग लिंगजियन उन्हें नहीं चाहता था, वह उन्हें जमीन पर नहीं फेंक सकता था। ताइजू अमर संप्रदाय अत्यंत विशाल था, जिसकी अनगिनत शाखाएं सड़कों के किनारे हर जगह फैली हुई थीं। वांग चेन का घर जियांग लिंगक्सियन से संबंधित एक निजी क्षेत्र था, जो ताइजू अमर संप्रदाय के भीतर उसके निजी निवास के बराबर था। अब जियांग लिंगक्सियन वांग चेन को बाहर ले जा रहा था और कई गुजरते शिष्यों के बीच से संप्रदाय के हथियार कब्रिस्तान की ओर चल रहा था। रास्ते में वांग चेन को हमेशा विभिन्न प्रकार की निगाहें महसूस होती थीं, लेकिन वह लंबे समय से उनसे अभ्यस्त हो चुका था। आखिरकार उसके पिछले जीवन में भी ऐसा ही था, जब तक वह राक्षसी संत जियांग लिंगक्सियन के बगल में खड़ा रहता, वह अनगिनत लोगों की निगाहों को अपनी ओर आकर्षित करता। जल्द ही दोनों ताइजू अमर संप्रदाय के हथियार कब्रिस्तान के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, जो एक हलचल भरा स्थान था। हथियार कब्रिस्तान ताइजू अमर संप्रदाय के पीछे एक बड़ा पहाड़ था, जिसमें एक गुफा का प्रवेश द्वार था। बाहर से अंदर की ओर देखने पर हथियार कब्रिस्तान की ओर जाने वाला रास्ता पूरी तरह से अंधेरा था। जिस क्षण जियांग लिंगक्सियन और वांग चेन पहुंचे, सैकड़ों ताइजू अमर संप्रदाय के शिष्यों, आंतरिक और बाहरी दोनों, ने अपनी निगाहें उन पर केंद्रित कर दी। क्या ये संत का शिष्य है जिसने कल नौ यांग दिव्य शरीर को जागृत किया था? इसके जैसा लगता है। अरे तुम लोग कहते हो, कई मिश्रित आवाजें आईं, जो एक साथ मिलकर एक अस्पष्ट कोलाहल में बदल गईं। जियांग लिंगक्सियन ने ताइजू अमर संप्रदाय के शिष्यों की चर्चाओं को नजरअंदाज कर दिया और जानबूझकर अपने कदमों को थोड़ा धीमा कर दिया, ताकि वांग चेन को पकड़ सके। वांग चेन ने जियांग लिंगक्सियन को देखा, जो धीरे धीरे उसके बगल में चल रहा था, और उसके दिल में एक अकथनीय गर्मी महसूस हुई। उसे यकीन नहीं था कि यह उसकी कल्पना थी, लेकिन उसने हमेशा महसूस किया कि जियांग लिंगक्सियन की आस्तीन जानबूझकर या अनजाने में उसके खिलाफ छू जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे वह कह रही हो, यदि आप कल जैसी सामाजिक परिस्थितियों से डरते हैं तो रुकिए। चाहे उसकी मंशा यही रही हो या नहीं, वांग चेन ने वास्तव में हाथ बढ़ाया और धीरे से उसकी सफेद पोशाक की आस्तीन खींची। जियांग लिंगक्सियन चलते समय एक छोटे से क्षण के लिए रुकी, उसकी ठंडी आंखें उसके बगल में खड़े वांग चेन पर हल्की सी नजर डाल रही थीं। वांग चेन ने सावधानी से उसकी नजरों से नजरें मिलाईं, फिर आसपास की भीड़ की ओर देखा जो उसे देख रही थी। जियांग लिंगक्सियन की गहरी आंखें थोड़ी सी हिल गईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, जिससे वांग चेन को उसकी सफेद पोशाक की आस्तीन पकड़ने की अनुमति मिल गई। तस्क तस्क तस्क, जियांग लिंगक्सियन अपने पुनर्जन्म के बाद उससे कहीं अधिक सौम्य है, जब मैं उससे अपने पिछले जीवन में पहली बार मिला था। वांग चेन को अंदर से खुशी महसूस हुई, जियांग लिंगक्सियन की एक हल्की सुगंध उसकी नाक के चारों ओर फैल रही थी, ये बहुत सुखद और शांत थी। साधु, क्या आप उसे मेरा शिष्य बनाने पर विचार करेंगी? मुझे उसके जैसे शिष्य की बहुत आवश्यकता है। लेकिन निश्चिंत रहें, मैं आपको 1,000,000 उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन और एक ब्रेकिंग वेनरेबल की गोली देने को तैयार हूं, और मैं वादा करता हूं कि मैं उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार करूंगा जैसा मैं अपने जीवन साथी के साथ करता हूं। जैसे ही जियांग लिंगक्सियन वांग चेन को हथियार कब्रिस्तान के प्रवेश द्वार की ओर ले जाने वाला था, बैंगनी वस्त्र में एक आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्ग की आकृति अचानक प्रकट हुई। सुनकर आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्ग जियांग लिंगक्सियन का दिल थोड़ा कांप उठा और उसकी अभिव्यक्ति धीरे धीरे ठंडी हो गई। भागो, जियांग लिंगक्सियन बहुत ही बलवान था, उसने आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्ग को घूरते हुए उनका रास्ता रोक दिया और ठंडे स्वर में एक शब्द भी बोला। वांग चेन की स्मृति में जियांग लिंगक्सियन का वर्तमान साधना क्षेत्र संत आत्मा क्षेत्र की पहली से छठी परत के बीच होना चाहिए। जहां तक आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्गों का प्रश्न है, सबसे निचला स्तर संत आत्मा क्षेत्र है, पहली परत है, और सबसे ऊंची परत दिव्य आदरणीय क्षेत्र की छठी परत है। दिव्य आदरणीय क्षेत्र की छठी परत के ऊपर दिव्य आदरणीय क्षेत्र का संप्रदाय नेता है, और आगे नौवीं परत पर दो पुराने पूर्वज हैं। फिर भी इस समय जियांग लिंगक्सियन ने कोई डर नहीं दिखाया, उसकी बेहद ठंडी आंखें शांति से सीधे दूसरे पक्ष को घूर रही थीं। ये सुनकर आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्ग का चेहरा काला पड़ गया, लेकिन वह एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, केवल मुड़कर चली गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि जियांग लिंगक्सियन के गुरु हान जून थे, जो ताइजू अमर संप्रदाय के दो पुराने पूर्वजों में से एक थे, जो दिव्य आदरणीय क्षेत्र की नौवीं परत थी, शिखर बूढ़ी महिला। जियांग लिंगक्सियन द्वारा वांग चेन का सशक्त संरक्षण स्वाभाविक रूप से आसपास के आंतरिक और बाहरी संप्रदाय के बुजुर्गों ने देखा, जो कार्रवाई करने के लिए उत्सुक थे। एक पल के लिए एल्डर्स केवल अपने आवेगों को दबा सकते थे, सामूहिक रूप से ताइजू संप्रदाय के नेता से संपर्क करने की योजना बना रहे थे, बाद में वांग चेन से अनुरोध करने के लिए संपर्क करने की योजना बना रहे थे। आखिर नौयांग दिव्य शरीर जैसी शारीरिक बनावट वाला शिष्य कौन नहीं चाहेगा। यहां तक कि पुरुष बुजुर्ग भी उन्हें अपना शिष्य बनाना चाहेंगे। आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्ग को बलपूर्वक खदेड़ने के बाद जियांग लिंगक्सियन की ठंडी निगाहें जानबूझकर या अनजाने में वांग चेन पर पड़ी। इससे वांग चेन थोड़ा दोषी महसूस हुआ, क्योंकि उसने जियांग लिंगक्सियन के लिए संकट की भावना पैदा करने के लिए ये सब किया था। हालांकि वर्तमान प्रभाव जियांग लिंगजियांग के लिए बेहद सफल प्रतीत हुआ, पुनर्जन्म के बाद बेहद सफल प्रतीत हुआ। जैसे ही दोनों प्रवेश द्वार पर पहुंचे, हथियार कब्रिस्तान के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, वे दोनों चुपचाप रुक गए और एक दूसरे को देखने लगे। जैसा कि वांग चेन ने सोचा था, जियांग लिंगशियान उसे पिछले जीवन की तरह अकेले प्रवेश करने देगा, कुछ अप्रत्याशित हुआ। मैं तुम्हारे साथ अंदर जाऊंगा, मुझे वहां से कुछ चीजें लेनी हैं। हथियार कब्रिस्तान से कुछ चीजें लाने की जरूरत है। तुम मेरी गांड वापस ला रहे हो। इस आदमी को याद होगा कि कैसे उसने अपने पिछले जीवन में हथियार कब्रिस्तान में किन येफान से लड़ाई की थी, जिससे उसे गंभीर चोटें आई थी। वांग चेन ने जियांग लिंगजियान की ओर देखा, जिससे उसे थोड़ा दोषी महसूस हुआ और सहज रूप से उसने उसकी आंखों से बचना चाहा, क्योंकि वह वास्तव में वही सोच रही थी जिसका वांग चेन को संदेह था। उसे डर था कि इस शिष्य को हथियार कब्रिस्तान से बाहर ले जाया जाएगा अपने पिछले जीवन की तरह ही। सच में? तो फिर मुझे आज पूरा दिन परी बहन के साथ रहना पड़ेगा। वाह! वांग चेन थोड़ा भोला और बचकाना भाव दिखाया और बहुत खुशी से अपना दाहिना हाथ उठाया, जिसमें आड़ू के फूल की पंखुड़ी थी। तुम्हें मुझे इस तरह से संबोधित नहीं करना है। मैंने तुम्हें मुझे मास्टर कहने को कहा था। जियांग लिंगशियांग को सिरदर्द महसूस हुआ और साथ ही उसके दिल में एक अकथनीय पीड़ा भी हुई। वह वास्तव में वांग चेन को उसे गुरु कहकर पुकारते हुए सुनना चाहती थी। फिर से, चूंकि हम अंदर जा रहे हैं, इसलिए तुम्हें इन आड़ू के फूलों की जरूरत नहीं होगी। इन्हें मुझे दे दो, तुम्हारे मालिक दे दो, और मैं बाद में इनका निपटारा कर दूंगा। इस समय जियांग लिंगक्सियन ने अचानक देखा कि आड़ू के फूल अभी भी वांग चेन में जकड़े हुए हैं के हाथ में थे। उसकी आवाज साफ और ठंडी थी और उसने सहजता से अपनी हथेली आगे बढ़ा दी। क्या तुम सचमुच उन्हें फेंक दोगे? ठीक है, चूंकि आड़ू की पंखुड़ियां थोड़ी टूटी हुई हैं, इसलिए उन्हें फेंक देना सामान्य बात है। वांग चेन ने अपना दाहिना हाथ खोला, जिससे आड़ू के फूल दिखाई दिए, और उनकी कुछ हद तक निराश अभिव्यक्ति जियांग लिंगक्सियन के चेहरे पर दिखाई दी, कि आंखों में परिलक्षित हुई। ये देखकर जियांग लिंगक्सियन के होंठ थोड़े हिल गए, लेकिन अंत में उसने कुछ नहीं कहा, जवाब न देने का विकल्प चुना। वांग चेन ने सभी आड़ू के फूल उसके सुंदर हाथों में रख दिए। जियांग लिंगक्सियन ने चुपचाप और धीरे से अपनी हथेली वापस ले ली। किसी को नहीं पता था कि वह क्षण जियांग लिंगशियान ने आड़ू के फूलों को मुट्ठी में जकड़ा और अपनी हथेली वापस खींची, आड़ू के फूल गायब हो गए। अंदर जाओ, एक बार अंदर जाओ, हथियार कब्रिस्तान के अंदर वह हथियार चुने जो आपको सबसे अच्छा लगे। अपना हाथ वापस लेने के बाद जियांग लिंगक्सियन ने एक निर्देश दिया और फिर वांग चेन के साथ हथियार कब्रिस्तान में चलना शुरू कर दिया। आसपास के शिष्य, जो अभी भी शस्त्र कब्रिस्तान में प्रवेश कर रहे थे, उन्होंने चुपचाप रास्ता बना लिया और संत को सम्मानपूर्वक संबोधित किया। जियांग लिंगक्सियन ने कोई ध्यान नहीं दिया, केवल वांग चेन को, जो अपनी आस्तीन को कसकर पकड़े हुए थी, थोड़े अंधेरे हथियार कब्रिस्तान में ले गई। जैसे ही वे ताइजू अमर संप्रदाय के पीछे पहाड़ में प्रवेश किया, आसपास का वातावरण धीरे धीरे अंधेरा हो गया और लोग विरल हो गए। आगे एक अंधेरी सीधी पहाड़ी गुफाओं वाला रास्ता था। भीड़ काफी कम होने लगी थी और दृश्यता बिल्कुल अंधेरी हो गई थी। आमतौर पर वांग चेन अपने बिल्डिंग स्पिरिट दायरे के साथ साधना द्वारा साधारण अंधकार में वातावरण में भी स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम होता है। हालांकि गुफा के रास्ते में वांग चेन गलती से अपने बाएं पैर पर ठोकर खा गया, जिससे उसका शरीर लड़खड़ाते हुए जियांग लिंगक्सियन की ओर आगे बढ़ गया हे। जैसे ही वांग चेन जियांग लिंगक्सियन की ओर झुका, उसने जल्दी से उसकी सफेद पोशाक की आस्तीन छोड़ दी और अपने बाएं हाथ से उसका गोरा कोमल दाहिना हाथ पकड़ लिया। जियांग लिंगजियान को भी वांग चेन से उम्मीद नहीं थी अचानक ऐसा करेगा। अंधेरे में उसने जल्दी से उसे संभालने के लिए हाथ बढ़ाया। ये पूरी तरह से संरेखित था। वांग चेन के बाएं हाथ ने जियांग लिंगजियान के दाहिने हाथ को मजबूती से जकड़ लिया। एक कोमल ठंडी अनुभूति हुई और स्पर्श अद्भुत था। जियांग लिंगजियान एक नौ यिन शीत दिव्य शरीर है होने के नाते अक्सर ठंडा और तापमान स्पर्श के प्रति संवेदनशील था। अब वांग चेन द्वारा, जिसके पास अराजक नौ यांग दिव्य शरीर था, अपनी बड़ी गर्म हथेली से पकड़े हुए जियांग लिंगक्सियन स्पष्ट रूप से असहज महसूस कर रही थी और वांग चेन को स्थिर करने के बाद जल्दी से अपना हाथ वापस लेना चाहती थी लेकिन वांग चेन कैसे कर सकता था? उसे अपनी मनमानी, वर्तमान वह उस समय जैसा नहीं था जब उसने अपने पिछले जीवन में पहली बार देहांतरण किया था, मूर्खतापूर्वक अपने गुरु जियांग लिंगक्सियन की आज्ञा का पालन किया था हर बात में। इस समय जियांग लिंगक्सियन अंधेरे में अपने हाथ पर वांग चेन की घबराई हुई असहाय पकड़ को महसूस कर सकती थी। छोड़ो, जियांग लिंगक्सियन का दिल उसे कसकर पकड़े हुए गर्म हाथ से थोड़ा घबरा गया था, लेकिन वह अभी भी अंधेरी सुरंग के भीतर ठंडे स्वर में बोल रही थी। यहां तक कि अपने पिछले जीवन में भी वांग चेन ने उसे शायद ही कभी इतनी मजबूती से पकड़ा था, जिससे वह इसकी आदी नहीं थी। तो इस समय वांग चेन को भी एहसास हुआ कि उसे और अधिक अभ्यस्त बनाने की आवश्यकता है। परी बहन, मुझे अंधेरे से डर लगता है। वांग चेन को याद आया कि अपने पिछले जीवन में बिल्डिंग स्पिरिट दायरे तक पहुंचने से पहले वह केवल धुंधला अस्पष्ट अंधेरा ही देख सकता था। अपने अभिनय को विश्वसनीय बनाने के लिए अंधेरे में वांग चेन के चेहरे पर घबराहट का भाव था, क्योंकि उसने जियांग लिंगक्सियन को कसकर पकड़ रखा था। सौभाग्य से उसने सिस्टम से अपने आभा को क्वेंचिंग बॉडी दायरे की 9वीं परत तक वापस लाने के लिए कहा था, इसलिए जियांग लिंगक्सियन को शायद कुछ भी संदेह नहीं होगा। मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, तुम ऐसे नहीं हो सकते। पहले मुझे जाने दो और मैं तुम्हें एक क्षण में अपने साथ ले जाऊंगा। जियांग लिंगक्सियन उसके शब्दों से क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई, लेकिन अपने होठों को एक साथ दबाने और एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद उसने फिर भी असहजता से अपना हाथ वापस खींचने की कोशिश की। अपनी साधना के साथ वह स्वाभाविक रूप से अंधेरे में स्पष्ट रूप से देख सकती थी, लेकिन वह अभी भी वांग चेन के साथ हाथ पकड़ने के लिए थोड़ी अपरिचित थी। सिस्टम, आप देखिए, मैंने अपने पुनर्जन्म को स्वीकार न करके सही किया, अब भी वह मास्टर के रूप में कार्य कर रही है। मेजबान के शब्द सुनकर मैं लहसुन की तरह सिर हिलाता हूँ, चिल्लाता हूँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वांग चेन के चेहरे पर घबराहट थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे थोड़ी कड़वाहट भी महसूस हो रही थी। लेकिन अगर वे गुरु और शिष्य थे तो क्या हुआ? इस जन्म में तो वह एक विद्रोही शिष्य बनने वाला था जो अपने गुरु की अवज्ञा करता था। परी बहन, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। अपनी वर्तमान साधना के कारण मैं अंधेरे में केवल धुंधला ही देख पाती हूँ। वांग चेन को याद आया कि पिछले जन्म में उसे सचमुच इस समय अंधेरे से डर लगता था और जियांग लिंगक्सियन ये बात जानता था। वह बोलता रहा, मानो हार मानने को तैयार ही न हो। मैं जानता हूं कि तुम डरे हुए हो, लेकिन पहले मुझे जाने दो और मैं आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। ठीक है, ठीक है। ये सुनकर वांग चेन को पता चल गया कि जियांग लिंगक्सियन ने हिलने डुलने पर अड़ा हुआ है, इसलिए वह अंधेरे में धीरे धीरे उसका हाथ छोड़ सका, थोड़ा निराश दिख रहा था। छोटे भाई, अगर वह नहीं मानेगी तो मेरा हाथ तुम्हें थामना होगा। हमें उसकी परवाह नहीं है। अप्रत्याशित रूप से इस समय अंधेरी सुरंग में सबसे मजबूत सहायक एक आंतरिक संप्रदाय का बुजुर्ग अपना हाथ बढ़ाते हुए उभरा। तुरंत वांग चेन, जो अभी अपना हाथ वापस खींचने ही वाला था, ने अचानक महसूस किया कि उसे फिर से 5 उंगलियों से कसकर पकड़ लिया गया है। जियांग लिंगक्सियन की अचानक पकड़ से वांग चेन चौंक गया। उसका हाथ इतनी जोर से दबाया गया कि वह लगभग चीख पड़ा। भागो, वह मेरा शिष्य है। जियांग लिंगक्सियन ने अंधेरे में अपने सामने मुस्कुराते हुए आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्ग को घूरा, जैसे कोई भयंकर बिल्ली अपने भोजन की रक्षा कर रही हो। ओह, लेकिन आपके कार्यों से लगता है कि आप उसकी छोटी सी शर्त भी मानने को तैयार नहीं हैं। इसके अलावा, क्या वह हमेशा तुम्हें परी बहन नहीं कहता था? वह तुम्हारा शिष्य कब बना? यह आंतरिक संप्रदाय की बुजुर्ग महिला मूल रूप से अपने प्रत्यक्ष शिष्य के साथ हथियार चुनने के लिए आई थी, लेकिन उसने ये दृश्य देखने की उम्मीद नहीं की थी। पता होना चाहिए, ये किसी को लुभाने का एक शानदार मौका था। नौयान दिव्य शरीर के साथ वह निश्चित रूप से दिव्य आदरणीय क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम होगी। जियांग लिंगक्सियन ने अंधेरे में आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्ग की बैंगनी आंखों से मुलाकात की और उन शब्दों को सुनकर उसे घुटन महसूस हुई, क्योंकि अब तक इस जीवन में ऐसा लगता था कि यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा दूसरे पक्ष ने कहा था। आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्ग द्वारा बोले गए प्रत्येक शब्द ने उसके दिल को छेद दिया, लेकिन जियांग लिंगक्सियन केवल संयम का दिखावा कर सकती थी। उसकी बर्फीली निगाहें आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्ग पर टिकी हुई थी, अंधेरी सुरंग में ठंडक भर रही थी। आसपास के शिष्यों ने ऐसा तनावपूर्ण दृश्य देखा। जो लोग अभी अभी अंदर आए थे वे तुरंत बाहर भाग गए, जबकि जो लोग पहले से ही आगे थे वे हथियार कब्रिस्तान की ओर भाग गए, मानो उनका जीवन उस पर निर्भर हो। बस एक क्षण में केवल वांग चेन, जियांग लिंगक्सियन और आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्ग अंधेरी सुरंग के बीच में रह गए। छोटे भाई, मेरे साथ चलो तो कैसा रहेगा? अगर तुम मेरे संप्रदाय में शामिल हो जाओ तो मैं तुम्हें न केवल सर्वोत्तम साधना संसाधन दूंगा, और मैं आपकी विभिन्न अत्यधिक शर्तों से सहमत होने का भी प्रयास कर सकता हूँ। ओह! आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्ग की बैंगनी आंखें वांग चेन की ओर देख रही थी, उनकी आवाज में हल्का सा आकर्षण और प्रलोभन था। इस समय जियांग लिंगक्सियन का दिल ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उसे ऊपर उठा लिया गया हो और वांग चेन को पकड़ने वाला उसका हाथ थोड़ा कांप रहा था। उनकी आपस में गुथी हुई उंगलियों की ताकत और भी बढ़ गई, मानो उसे डर हो कि अगर वह सावधान नहीं रही तो वांग चेन का अपहरण कर लिया जाएगा। आओ आओ आओ! उस पकड़ के कारण वांग चेन अंततः अपने हाथ का दर्द सहन नहीं कर सका और पीड़ा से चिल्ला उठा। वह व्यक्ति बहुत जोर से दबा रहा था, आखिरकार जियांग लिंगक्सियन संतात्मा क्षेत्र में था। वांग चेन को ऐसा लगा जैसे उसका हाथ कुचल दिया जाएगा। जियांग लिंगशियान ने देखा कि वह अपना संयम खो बैठी है, एक पल के लिए घबरा गई और तुरंत अपनी पकड़ ढीली कर दी। लेकिन इस बार उसने अपना हाथ वापस नहीं लिया, इसके बजाय उसने वांग चेन का हाथ कसकर पकड़ लिया। उंगलियां आपस में जुड़ गईं और सुरंग के अंत में हथियार कब्रिस्तान की ओर चल पड़ी। हालांकि वांग चेन स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि जियांग लिंगक्सियन का कांपता हुआ हाथ स्पष्ट रूप से डरा हुआ था। डर था कि वह इस आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्ग से सहमत होगा। छोटे भाई, मैं अगली बार तुमसे मिलने के लिए उत्सुक हूँ। याद रखना कि तुम मेरी बात से सहमत होना चाहते हो या नहीं। आंतरिक संप्रदाय की वृद्धा ने उसका लगातार पीछा नहीं किया, बल्कि ये देखकर कि उसका उद्देश्य पूरा हो गया है, उसने पीछे से एक आकर्षक मुस्कान के साथ पुकारा। वांग चेन को जियांग लिंगक्सियन ने खींच लिया और वह पीछे मुड़कर आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्ग के शब्दों का जवाब नहीं दे सका, न ही ऐसा करने का साहस कर सका, क्योंकि उन्होंने पाया कि जियांग लिंगशियान के हर कदम के साथ उसके पैरों के नीचे बर्फ की एक पतली परत बन रही थी, जो स्पष्ट रूप से संकेत दे रही थी कि वह नियंत्रण खोने के कगार पर थी। जियांग लिंगक्सियन आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्ग को वांग चेन का जवाब सुनना भी नहीं चाहता था। वह किसी भी चीज की परवाह किए बिना उसे जबरदस्ती अपने साथ खींच रहा था। वांग चेन ने कुछ नहीं कहा, बस जियांग लिंगक्सियन का हाथ कसकर पकड़ लिया, उंगलियां आपस में फंसा ली और हथियार कब्रिस्तान में उसके पीछे पीछे चला गया। जियांग लिंगक्सियन ने अपनी हथेली में आरामदायक गर्माहट महसूस की और उसकी लगभग बेकाबू भावनाएं धीरे धीरे शांत हो गईं। अंधेरी सुरंग से बाहर निकलते ही उनके चारों ओर प्रकाश प्रकट हुआ और अनगिनत चमकदार हथियार दिखाई देने लगे। 18 विभिन्न प्रकार के विचित्र आकार के हथियार विभिन्न रूपों में दीवारों में जड़े हुए थे, जो अपने स्वामियों द्वारा उन्हें प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रहे थे। हथियार कब्रिस्तान पर्वत के अंदर का स्थान बहुत विशाल था, एक मानक फुटबॉल मैदान से कम कई गुना बड़ा, तथा वहां इतने सारे हथियार थे कि चक्कर आने जैसा था। परी बहन, क्या तुम नाराज हो? वांग चेन ने मासूम चेहरे से धीरे से और सावधानी से पूछा, जिससे पता चलता था कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। नहीं, जियांग लिंगक्सियन की भावनाएं कभी भी उसके चेहरे पर आसानी से प्रदर्शित नहीं होती थी, लेकिन साथ में समय बिताने के बाद वांग चेन तुरंत उन्हें महसूस कर सकता था। वांग चेन यह अच्छी तरह से जानता था, इसलिए अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि जियांग लिंगक्सियन वास्तव में गुस्से में था। वास्तव में हम, लेकिन जियांग लिंगक्सियन का जवाब बिल्कुल उल्टा था। वह अभी भी घबराहट में वांग चेन का हाथ पकड़े हुए थी, फिर भी उसने जिद करके यह बात मानने से इनकार कर दिया। ओह, तो क्या आपको लगता है कि मुझे उसकी बात मान लेनी चाहिए? वांग चेन ने अपना सिर थोड़ा नीचे किया और ओह कहा, फिर आपदा को आमंत्रित करने के कगार पर धीरे धीरे और हिचकिचाहट से बोला। ये सुनते ही जियांग लिंगशियन के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया। उसने अपनी खूबसूरत आंखें घुमाई और वांग चेन को ठंडी नजरों से घूरने लगी। इस समय वांग चेन ने जियांग लिंगजियन के शरीर को थोड़ा कांपते हुए देखा। आखिरकार वह इसे और सहन नहीं कर पा रही थी। तुम यहीं मेरा इंतजार करो, मैं कुछ सामान लेकर तुम्हारे लिए वापस आता हूँ, भागना मत। लेकिन जियांग लिंगजियन ने वांग चेन की ओर कोई अनुचित हरकत नहीं की। इसके बजाय उसने बड़ी मुश्किल से खुद को नियंत्रित किया और ठंडे स्वर में बोली। वांग चेन की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना जियांग लिंगशियान ने उसका कसकर पकड़ा हुआ हाथ छोड़ दिया और अंधेरी सुरंग की ओर चल पड़ा। अरे परी बहन, क्या वे चीजें हथियार कब्रिस्तान में नहीं हैं जो आप प्राप्त करना चाहते हैं? उसे अचानक अंधेरी सुरंग में वापस आते देख वांग चेन ने भौहें चढ़ाई और उलझन में चिल्लाया। हालांकि सफेद पोशाक में जियांग लिंगक्सियन की खूबसूरत पीठ ने उसका जवाब नहीं दिया और वह धीरे धीरे अंधेरी सुरंग में गायब हो गई। तस्क तस्क तस्क, वह शायद उस आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्ग के लिए परेशानी खड़ी करने वाली है। वैसे कुत्ते मेजबान जियांग लिंगक्सियन अभी संत आत्मा क्षेत्र में नहीं है, वह दिव्य आदरणीय क्षेत्र में है, लेकिन ऐसा लगता है कि वह अपनी साधना को छुपा रही थी। हर बार जब वह साधना में उतार चढ़ाव लाती थी तो वह केवल संत आत्मा क्षेत्र में ही होता था। अगर वह अभी इतनी क्रोधित न हुई होती और दिव्य आदरणीय क्षेत्र की आभा का रिसाव न किया होता तो मुझे इसका आभास न होता। वांग चेन, सिस्टम के शब्दों को सुनकर वांग चेन वहीं जड़वत खड़ा रहा और जियांग लिंगक्सियन की ओर देखता रहा स्तब्ध। जैसा कि अपेक्षित था, जियांग लिंगक्सियन का पुनर्जन्म अनजाने में उसके अपने पुनर्जन्म से कई वर्ष पहले हो गया। अन्यथा इस समय वह इतनी जल्दी दिव्य आदरणीय क्षेत्र में साधना करने में सक्षम नहीं होती। जियांग लिंगशियन का इस समय इतनी शीघ्रता से दिव्य आदरणीय क्षेत्र में साधना कर पाना निश्चित रूप से उसके पिछले जीवन के साधना अनुभव के कारण था। मतलब जियांग लिंगशियान उस पहाड़ पर अज्ञात वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा होगा जहां से आप आए थे। कोई बात नहीं, मैं सबसे पहले किन्येफान की किस्मत छीन लूंगा, ज्यादा सोचना बेकार है। वांग चेन ने अपने अस्तव्यस्त विचारों को झटक दिया, लेकिन जब वह किन्येफान के स्थान की ओर बढ़ रहा था तब भी वह कुछ हद तक विचलित था। जहां तक जियांग लिंगशियान द्वारा उसे इधर उधर न भागने की बात थी, वांग चेन बहुत पहले ही इसे पूरी तरह से भूल चुका था। आखिरकार अगर वह यहीं रहा और नहीं गया तो वह उस मूर्ख किन येफान से कैसे निपट सकता था और उसका सौभाग्यशाली सामना कैसे छीन सकता था। उनकी कुछ अस्पष्ट यादों और सिस्टम के निर्देशों के आधार पर वांग चेन जल्दी से बड़े पहाड़ हथियार कब्रिस्तान के भीतर एक स्वतंत्र गुप्त कक्ष हथियार कब्रिस्तान के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। ताइजू सैन्य कब्रिस्तान बाहर एक बड़े सार्वजनिक हथियार कब्रिस्तान और अंदर अनगिनत छोटे गुप्त कक्ष हथियार कब्रिस्तान में विभाजित है। सार्वजनिक हथियार कब्रिस्तान में हथियार अधिकतर अव्यवस्थित और अपरिष्कृत हैं, जबकि छोटे गुप्त कक्ष हथियार कब्रिस्तान में हथियार हालांकि विविधता में कम है, गुणवत्ता और ताकत में बेहतर हैं। वांग चेन ने विभिन्न गुप्त कक्ष हथियार कब्रिस्तान के प्रवेश द्वारों को देखा जहां शिष्य आ रहे थे और जा रहे थे। उसके होठों पर एक मुस्कुराहट खेल रही थी। अंततः वह सीधे सामने स्थित छोटे गुप्त कक्ष हथियार कब्रिस्तान की ओर बढ़ा, जैसा कि उसके दिमाग में सिस्टम ने संकेत दिया था। जैसे ही वांग चेन अपने सामने 3 मीटर लंबी अंधेरी सुरंग से गुजरा, जो केवल एक व्यक्ति के गुजरने के लिए उपयुक्त थी, जल्द ही वांग चेन की दृष्टि चौड़ी हो गई और एक नज़र में गुप्त कक्ष हथियार कब्रिस्तान में 6 लोग हथियार चुन रहे थे। गुप्त कक्ष हथियार कब्रिस्तान में मौजूद हथियारों में पहले से ही कुछ चेतना थी, जिससे आम लोगों के लिए उन्हें दीवार से बाहर निकालना और उन पर दावा करना मुश्किल हो गया था। यही कारण था कि अधिकांश ताइजू शिष्यों ने बाहर सार्वजनिक हथियार कब्रिस्तान में विविध हथियारों को चुना। गुप्त कक्ष हथियार कब्रिस्तान में प्रवेश करने के बाद वांग चेन ने संयोग से किन येफान को कुछ ही दूरी पर देखा, जो तलवार की मूठ पकड़े हुए था और धीरे धीरे दीवार से तलवार निकाल रहा था। ये दृश्य देखकर वांग चेन को पता चल गया कि वह इस बार थोड़ा जल्दी आ गया है। वांग चेन को याद आया कि अपने पिछले जीवन में जब उसने पहली बार इस गुप्त कक्ष हथियार कब्रिस्तान में प्रवेश किया था, किन येफान और अन्य लोग बस निकलने ही वाले थे और पिछले जीवन से मिली सौभाग्यपूर्ण मुलाकात स्पष्ट रूप से छीन ली गई थी। इस जीवन में किन येफान को बस इसे प्राप्त करने की प्रक्रिया में होना चाहिए था। वांग चेन के अचानक आगमन ने स्वाभाविक रूप से गुप्त कक्ष हथियार कब्रिस्तान में 6 लोगों का ध्यान आकर्षित किया, जिसमें किन येफान भी शामिल था। इस समय ऐसा लग रहा था कि किन येफान ने किसी प्रकार की शीर्ष स्तरीय काया को जागृत कर लिया है और खुद को एक निश्चित आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्ग के पास प्रशिक्षु बना लिया है। वांग चेन ने दीवार पर हथियार चुनने का नाटक किया और सोचा कि किन येफान का भाग्य का बच्चा इस बिंदु पर कितना विकसित हो गया था। तभी वांग चेन ने अनजाने में दीवार में धन से एक लंबे भाले की मूठ पकड़ ली, जिससे वह थोड़ा हिलने लगा। ओह, अप्रत्याशित लाभ, हा हा। वांग चेन लंबे भाले को महसूस किया, जो पहले से ही दीवार के भीतर ढीला हो गया था, और एक भयंकर झटके के साथ उसने तुरंत इसे दीवार से बाहर खींच लिया। सिस्टम, इस लंबे भाले का ग्रेड क्या है? डिंग, पीला स्तरीय शीर्ष ग्रेड, सिल्वर लॉन्ग स्पियर। ये सुनकर वांग चेन का ध्यान क्षण भर के लिए अपने हाथ में सफेद चांदी के भाले की ओर चला गया और वह क्षण भर के लिए किन येफान के बारे में भी भूल गया की बात भी भूल गया। साथी फनेस बॉडी साधक, ये लंबा भाला मेरे भाग्य में है, क्या आप इसे मुझे दे सकते हैं? वांग चेन का ध्यान पास आ रहे व्यक्ति की आवाज से भंग हुआ। उसने सिर उठाया और भौहें चढ़ाकर देखा। ये देखकर कि जो व्यक्ति आया था वह किन येफान नहीं बल्कि एक मूर्ख युवक था, वांग चेन निराशा का एहसास हुआ। आखिरकार जब दूसरे पक्ष ने 4 उपहासपूर्ण शब्द कहे थे, साथी भट्टी शरीर साधक, वांग चेन पहले से ही कूदने और उसे जोरदार थप्पड़ मारने के लिए तैयार था। चले जाओ, क्या तुम इसे खुद नहीं निकाल सकते? या तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे डाला या निकाला जा सके? वांग चेन अप्रसन्न भाव दिखाया, सिल्वर लॉन्ग स्पियर को अपने भंडारण स्थान में रख दिया और काफी व्यंग्य के साथ मजाक उड़ाया। आदमी के चेहरे पर उदासी छा गई। वह स्वाभाविक रूप से वांग चेन के शब्दों का अर्थ समझ गया, के शब्दों में निहित अर्थ समझ गया। एक पल के लिए गुप्त कक्ष हथियार कब्रिस्तान में सभी लोग किन येफान को छोड़कर, जो अपनी तलवार को पुनः प्राप्त करने की पूरी कोशिश कर रहा था, तमाशा देखने लगे। भिन 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 भिन। इस समय पूरा गुप्त कक्ष हथियार कब्रिस्तान कांप उठा और वांग चेन की निगाहें निकटवर्ती क्षेत्र की ओर मुड़ गईं। इसे देखकर किन येफान हाथ में एक टूटी हुई तलवार थी, जिससे हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी, उसकी अभिव्यक्ति अत्यधिक आश्चर्य से भरी हुई थी। अब न केवल किन येफान बेहद हैरान था बल्कि वांग चेन भी बेहद हैरान था, क्योंकि खुशी के एक पल के बाद किन येफान उसकी ओर चलने लगा। उसके चेहरे पर तिरस्कार का भाव था। वो आ गया, आ गया। जब तक वो मुझे उकसाता रहेगा, मैं उसे खुलेआम लूट सकती हूँ। वांग चेन मन ही मन खुश था। अपने पिछले जीवन के हजारों सालों के युद्ध अनुभव के साथ वह निश्चित रूप से बिल्डिंग स्पिरिट दायरे में अपने स्तर से ऊपर लड़ सकता था। मैं अपने स्तर से ऊपर लड़ सकता था। दूर हटो यहाँ से, ऐसे आदमी के साथ जो सिर्फ औरतों का खिलौना हो सकता है, इतना तर्क वितर्क क्यों कर रही हो? किन येफान ने वांग चेन के सामने खड़े उस आदमी को धक्का दे दिया, जिसके हाथ में हल्की सुनहरी टूटी तलवार थी, और उसने गर्व से वांग चेन को देखा। कल तुमने जागृति मंच पर मुझे घूरा था, अब मुझे चांदी का लंबा भाला दे दो और हम हिसाब बराबर कर लेंगे। या आप मुझे अपने गुरु से जुड़ने में मदद करें और हमारी शिकायतें मिट जाएंगी और हम अच्छे भाई भी बन सकते हैं। किन्येफान ने एक चंचल मुस्कान के साथ अपनी बात समाप्त की और खुद को शांत दिखाने के लिए टूटी हुई तलवार को घुमाया। लेकिन वांग चेन अब और इंतजार नहीं कर सकता था। उसकी आंखों में एक जानलेवा इरादा चमक उठा और सिल्वर लॉन्ग स्पीयर अचानक उसके हाथ में आ गया। मरना, वांग चेन ने बिना कुछ कहे ही कहा। उसका शरीर अचानक उछल पड़ा और एक जबरदस्त गति के साथ उसने दोनों हाथों से लंबा भाला उठाया और जोर से उसके सिर पर वार कर दिया। ये पहले ही वार से घातक था, इसमें कुछ भी छिपा नहीं था। किन्येफान की आंखें भय से चौड़ी हो गईं। उसने जल्दी से अपनी बिल्डिंग स्पिरिट लोक लेवल 3 साधना शुरू की और रोकने के लिए अपनी टूटी हुई तलवार उठाई। टकराना, चांदी के भाले ने टूटी हुई तलवार पर जोर से प्रहार किया। चिंगारियां उड़ी और शक्तिशाली बल के कारण किन्येफान के पैर सीधे जमीन में धंस गए। कुन तकनीक, छाती कुचलने वाला लौह पर्वत झुकना। वांग चेन ने अचानक दोनों हाथों से लंबे भाले को छोड़ दिया, बिजली की गति के साथ एक घोड़े की मुद्रा ग्रहण की और अपने शरीर को किन्येफान की छाती में जोर से पटक दिया। टकराना, एक जोरदार धमाके के साथ किन्येफान की आंखें लगभग बाहर निकल आईं और उसकी छाती में एक चुभने वाला दर्द उठा। एक क्षण में उसके हाथ की टूटी हुई तलवार भी उड़ गई और उसका पूरा शरीर दीवार की ओर उड़ गया। उसके पैर जमीन को रगड़ रहे थे। टकराना, नियति का बच्चा वास्तव में अपने नाम के अनुरूप था। दीवार पर इतने सारे हथियारों के साथ वह किसी तरह एक खाली क्षेत्र पर निशाना लगाने में कामयाब रहा, लेकिन उसे तकलीफ देने के लिए बस इतना ही काफी था। गुप्त कक्ष, वेपन ग्रेवयार्ड में मौजूद बाकी लोगों की डरी हुई आंखों में पूरी दीवार टूट चुकी थी। इस पूरे कॉम्बो हमले में 2 सेकंड से भी कम समय लगा। यही कारण है कि किन्येफान प्रतिक्रिया भी नहीं कर सका। वांग चेन ने जमीन पर गिरी हुई सोने की टूटी तलवार और चांदी का लंबा भाला उठाया, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति सतर्क रही क्योंकि उसने किन्येफान की ओर देखा, क्योंकि वह जानता था कि उस आदमी के शरीर के भीतर एक राक्षसी आदरणीय की भयानक आत्मा छिपी हुई थी और यह शुरुआती चरणों में किन्येफान का मार्गदर्शक भी था। हालांकि राक्षसी आदरणीय अवशेष आत्मा द्वारा भाग्य के बच्चे पर परजीवीकरण का अंतिम परिणाम ये था कि राक्षसी आदरणीय अवशेष आत्मा उसके शरीर को जब्त करने में विफल रही और इसके बजाय उसके द्वारा निगल ली गई। जैसी कि उम्मीद थी, बुरी तरह घायल किन्येफान की अभिव्यक्ति धीरे धीरे विक्षिप्त हो गई। उसे मार डालो, उसे मार डालो, मुझे अपने शरीर पर नियंत्रण करने दो, मैं अपने हाथों से उसे मारने में तुम्हारी मदद करूंगा। किन्येफान ने वांग चेन को देखा। ये वह व्यक्ति था जो नियमों से नहीं खेलता था और उसकी आंखों ने उसके भीतर राक्षसी आदरणीय अवशेष आत्मा द्वारा प्रेरित हत्या के इरादे को प्रकट किया। मेरे लिए उसे मार डालो। किन्येफान ने अपनी छाती पकड़ ली, क्रोध में दहाड़ा और फिर एक भयंकर चीख निकाली। उसे पता नहीं था कि वह किससे बात कर रहा है। किन्येफान के चिल्लाने के बाद ऐसा लगा जैसे वह बदल गया हो, उसकी अभिव्यक्ति ठंडी हो गई हो और उससे एक धुंधली भयानक आभा निकल रही हो। हथियार कब्रिस्तान के गुप्त कमरे में मौजूद अन्य 5 लोग ये स्थिति देखकर काफी देर तक डरे हुए थे और एक कोने में दुबके हुए थे। वे भागना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्य से वांग चेन की आकृति हथियार कब्रिस्तान की सुरंग के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर रही थी, जिससे बचना असंभव हो गया था। जल्दी आओ और मेरी मदद करो, वह पागल हो गया है, वरना हम सब कट जाएंगे। वांग चेन ने कोने में बैठे 5 लोगों पर जोर से चिल्लाया, जिसका मुख्य उद्देश्य लड़ाई शुरू होने पर कुछ ताकत बचाना था। कैसे, हम कैसे लड़ें? हमारे सभी गुरु बाहर हैं। यहाँ सर्वोच्च साधना में हूँ, निर्माण आत्मा क्षेत्र के दूसरे स्तर पर। वह बिल्डिंग स्पिरिट दायरे के तीसरे स्तर पर है। वह युवक जिसने अभी अभी वांग चेन के प्रति उदास भाव दिखाया था, अब डर गया था और प्रभावित होने के डर से अन्य 4 लोगों के साथ सिमट गया था। वांग चेन ने देखा कि किन्येफान पर कब्जा करने वाले दानव आदरणीय की शेष आत्मा ने दीवार से एक लंबी तलवार की मूठ को जोर से पकड़ लिया था। फिर तलवार की इच्छा की परवाह न करते हुए उसने उसे बलपूर्वक बाहर खींच लिया और तलवार लहराने का प्रदर्शन किया। तो क्या आप चाहते हैं कि वह पहले आपको काट दे या हमें पहले हमला करना चाहिए और उसे एक साथ पकड़ना चाहिए? ये देखकर वांग चेन तुरंत फिर से चिल्लाया, फिर ऐसा इशारा किया जैसे कि वह उन 5 की ओर दौड़ना चाहता हो। कोने में छिपे 5 लोगों ने चौंक कर एक दूसरे को देखा और अंततः आंखें बंद करके और दांत पीसते हुए अपने अपने हथियार निकाल लिए। तो फिर आओ हम सब मिलकर उसे पकड़ें। बिल्डिंग स्पिरिट दायरे के दूसरे स्तर पर युवक ने अपने हाथ में कृपाण उठाया, इसे किन्येफान की ओर इशारा किया और मनोबल बढ़ाने के लिए चिल्लाया। जब वांग चेन ने 5 लोगों को एक साथ किन्येफान की ओर दौड़ते देखा तो उसके चेहरे पर राहत भरी एक शांत पिता जैसी मुस्कान आ गई। फिर वांग चेन ने अपने हाथ से सोने की टूटी तलवार और चांदी का भाला हटा दिया, अचानक घूम गया और उन्मत्त होकर बाहर की ओर भागा। अवसर पहले ही हाथ से निकल चुका था, अब लड़ाई कोई मायने नहीं रखती थी, इसलिए यदि संभव हो तो भाग जाना ही बेहतर था। पहले आप लोग रुकें, मैं आपको बचाने के लिए अतिरिक्त बल लेकर आता हूँ। वांग चेन बिजली की गति से चलते हुए अतिरिक्त सहायता लाने के बारे में चिल्लाते हुए अंधेरी सुरंग के बाहर की ओर भागा। वाह, वांग चेन, किन येफान सहित 6 लोगों की घबराई हुई आंखों में हथियार कब्रिस्तान की सुरंग से बाहर निकल गया। तुम धोखेबाज हो, वांग चेन, जो पहले ही हथियार कब्रिस्तान के गुप्त कमरे से बाहर भाग चुका था, ने अंदर से केवल कुछ गुस्से भरे शाप सुने। झनझन झनझन झनझन, बैंग बैंग बैंग, फिर हथियार कब्रिस्तान के गुप्त कमरे के अंदर कुछ देर तक युद्ध की आवाजें जारी रहीं, जिसके बाद दीवार पर वस्तुओं के टकराने की कई आवाजें सुनाई दीं। 5 लोगों को उड़ाने के बाद किन येफान ने एक कदम उठाया, जमीन तुरंत धंस गई और वह तेजी से अंधेरी सुरंग से बाहर निकलने की ओर भागा। नौयांग दिव्य शरीर, यदि यह आदरणीय व्यक्ति अपनी आत्मा को अवशोषित कर सकता है, तो यह आदरणीय व्यक्ति निश्चित रूप से अपनी एक तिहाई शक्ति पुनः प्राप्त कर लेगा। दानव आदरणीय की शेष आत्मा, जो वर्तमान में किन येफान को नियंत्रित कर रही थी, उसकी आंखें लालच से भरी हुई थी। वो लगभग वांग चेन की ओर दौड़ रही थी और उसे सीधे कुतरने के लिए तरस रही थी। इस समय वांग चेन अब स्वयं किन येफान से नहीं लड़ रहा था, बल्कि 10,000 साल पहले मर चुके दानव आदरणीय की शेष आत्मा से लड़ रहा था। धप धप धप, हथियार कब्रिस्तान के गुप्त कमरे से बाहर निकलने की ओर भारी कदमों की आवाज सुनकर वांग चेन चमक गया और प्रवेश द्वार के बाईं ओर छिप गया। इसके तुरंत बाद उसने अपने भंडार से चांदी का भाला निकाला और तेजी से सांस लेते हुए एक भयावह मुस्कान प्रकट की। वांग चेन चांदी का भाला थामे पूरी तरह तैयार, लगातार शक्ति संचय कर रहा था। वह जो करने वाला था उसके बारे में सोचकर ही उसे हंसी आ गई। धप धप धप, अब बहुत करीब आ चुके कदमों की आहट सुनकर वांग चेन ने अपनी मुस्कान बढ़ा दी और अचानक उठ खड़ा हुआ। हमम, दुष्ट प्राणी, बूढ़े वांग से यह वार झेलो। प्रवेश द्वार के बाईं ओर छिपे वांग चेन ने किन येफान को उभरते देखा और तुरंत चांदी का भाला उठाया और जमकर वार किया। झनकार, किन येफान के मुंह से बस एक तेज आवाज निकली, हे हे हे। वह वास्तव में उस काट को झेलने में कामयाब रहा। चांदी का भाला पकड़े हुए वांग चेन हक्का बक्का रह गया। ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए था। कब्जा करना एक बात है, लेकिन प्रतिरोध बढ़ाना भी। वर्तमान में किन येफान के पास हथियार होने के कारण इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि हथियार कब्रिस्तान में 5 लोग एक साथ काम करते हुए भी उसके हमलों का सामना नहीं कर सके। चरमराहट चरमराहट चरमराहट, इस समय किन येफान ने धीरे से अपना सिर घुमाया, जो चांदी के भाले की चोट से थोड़ा मुड़ा हुआ था, और लालच भरी आंखों से वांग चेन को देखा। नौयांग दिव्य शरीर, हे हे। किन येफान के बोलने के बाद उसने अपने दाहिने हाथ से हथियार कब्रिस्तान के गुप्त कमरे से निकाली गई उच्च श्रेणी की पीली स्तरीय लंबी तलवार उठाई और वांग चेन की ओर जोरदार वार किया। दफा हो जाओ, बिगड़ेल। वांग चेन ये दृश्य देखकर कांप उठा। उसने उसके हमले को रोकने के लिए भाले का इस्तेमाल किया और तेजी से पीछे हटने के लिए बल का प्रयोग करते हुए उसने शाप दिया। फिर वांग चेन ने जल्दी से चांदी का भाला फिर से रख दिया और अपने आसपास आने जाने वाले शिष्यों पर चिल्लाना शुरू कर दिया। बचाओ, हत्या हत्या, वांग चेन दौड़कर चिल्लाया और बाहर सार्वजनिक हथियार कब्रिस्तान की ओर भागा। वह लगातार आगे बढ़कर दीवार से हथियार खींचता रहा और उन्हें अपने पीछे फेंकता रहा, ताकि किन येफान का पीछा करने में बाधा उत्पन्न हो। हथियार फेंकते समय वांग चेन अपने भंडारण स्थान में और अधिक हथियार भरना नहीं भूला। आखिरकार ये सभी स्रोत बिंदु थे। तभी वांग चेन के भंडारण स्थान में रखी सुनहरी टूटी तलवार ने अचानक प्रतिक्रिया व्यक्त की, जो लगातार कांप रही थी। मुझे बाहर निकालो, बूढ़ा आदमी तुम्हें बचाएगा। वांग चेन को लगा कि उसके भंडार में रखी हुई सोने की टूटी तलवार से एक प्राचीन आवाज आ रही है, जो उसके मन में प्रवेश कर रही है। पीछे से आती हुई हत्या की मंशा को महसूस करते हुए वांग चेन ने इसकी परवाह नहीं की और जल्दी से सोने की टूटी हुई तलवार निकाल ली। झनकार, तभी वांग चेन के पीछे अचानक हथियार फटने की आवाज सुनाई दी। हे भगवान, अजय बैक शेख, वांग चेन ने सदमे में आगे देखा, जबकि उसके दाहिने हाथ ने उसके पीछे सुनहरी टूटी हुई तलवार पकड़ी हुई थी, जो आने वाली लंबी तलवार को रोक रही थी। प्रेतग्रस्त किन येफान भी सदमे में सुनहरी टूटी तलवार को देख रहा था। उसे स्पष्ट रूप से उम्मीद नहीं थी कि यह हमला रुक जाएगा। अचानक वांग चेन ने महसूस किया कि उसके दाहिने हाथ को सुनहरी टूटी तलवार ने खींचा है और वह जोर से पीछे की ओर वार कर रहा है। वांग चेन केवल जल्दी से घूम सकता था और अपने हाथ में सुनहरी टूटी तलवार की लय का अनुसरण कर सकता था, लगातार विभिन्न अपरिचित टूटी तलवार तकनीकों का प्रदर्शन कर सकता था। वांग चेन और किन येफान के आसपास शिष्य पहले से ही इकट्ठा हो गए थे, लेकिन वे सभी सिर्फ तमाशा देख रहे थे। दोनों को इतनी भयंकर लड़ाई करते देख शिष्यों ने हस्तक्षेप करने का साहस नहीं किया, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वे भी प्रभावित न हो जाएं। वे किसी के मरने के बारे में चिंतित नहीं थे, क्योंकि वहां कई एल्डर हथियार कब्रिस्तान की रखवाली कर रहे थे और वे संभवतः शीघ्र ही मध्यस्थता करने आ जाएंगे। यदि कोई मर भी गया तो भी वह उसका जीवन नहीं था। इस बीच केवल 10 सेकंड में टूटी हुई तलवार पकड़े हुए वांग चेन ने किन येफान के साथ सैकड़ों वार किए। वे तब तक लड़ते रहे जब तक कि स्वर्ण टूटी तलवार की सतह पर प्रकाशमान नहीं हो गया और वांग चेन ने महसूस किया कि खींचने की अनुभूति धीरे धीरे गायब हो गई। बच्चे, पहले तुम खेलो, बूढ़ा आदमी थक गया है, थोड़ी देर सोने जा रहा है। अचानक उसके हाथ पर लगा सारा खिंचाव गायब हो गया, जिससे वांग चेन की सुस्थापित युद्धलय स्पष्ट रूप से बाधित हो गई। उफ़, परिस्थिति जो कुछ हद तक उसके पक्ष में थी अचानक इस तरह बिगड़ गई और लापरवाही के एक क्षण में खून की एक फुहार प्रकट हुई। वांग चेन को अपने दाहिने हाथ में दर्द महसूस हुआ, जिसमें सोने की टूटी हुई तलवार थी, और सोने की टूटी हुई तलवार तुरंत उसके हाथ से उड़ गई। लगभग उसी समय उनके चारों ओर अत्यधिक ठंड बढ़ गई और दीवारें और जमीन तेजी से जमने लगी। एक पल में किन्येफान की आकृति एक ठंडी आभा द्वारा हवा में उठ गई। उसका चेहरा लाल और गर्दन मोटी मध्य हवा में लटकी हुई थी। दानव आदरणीय की शेष आत्मा ने खतरे को महसूस किया और जल्दी से शरीर का नियंत्रण किन्येफान को वापस दे दिया और अपनी दिव्य आत्मा में वापस चली गई। आशीर्वाद का आनंद दानव आदरणीय की शेष आत्मा द्वारा लिया गया, जबकि कठिनाइयों को किन्येफान द्वारा सहन किया गया। वांग चेन ने अपने खून बहते हाथ को ढकते हुए इस बेहद परिचित ठंड को महसूस किया और उसका लटका हुआ दिल आखिरकार शांत हो गया। धिक्कार है, पुरानी टूटी तलवार, जब तुम बूढ़े हो जाते हो तो ये किसी काम की नहीं रहती, बस खत्म हो जाती है और सो जाती है। वांग चेन ने अपने दाहिने हाथ में दर्द महसूस किया, जमीन पर गिरी टूटी हुई तलवार को उठाने के लिए नीचे झुका और खुद को कोसने से नहीं रोक सका। जैसे ही वांग चेन ने धुंधली सुनहरी टूटी तलवार को अपने भंडारण स्थान में रखा, उसने अपने दाहिने हाथ की ओर देखा, जो काफी हद तक कटा हुआ था। जब उसने काली गैस का एक टुकड़ा लगातार अंदर की ओर बढ़ता देखा तो वांग चेन का दिल अचानक से धड़क उठा। अरे बदमाश, हमेशा मेरे शरीर में घुसने की कोशिश करता रहता है, भाग जा। वांग चेन ने अपने हाथ पर लगी चोट की परवाह न करते हुए जल्दी से अपने बाएं हाथ को अराजक लपटों की एक परत से ढक लिया और अपने दाहिने हाथ पर जोर से थप्पड़ मारा। धमाक, क्रैक, वांग चेन का दाहिना हाथ काले और सफेद अराजक लपटों से नष्ट हो गया और काली ऊर्जा की वह किरण जो अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी तुरंत निर्दयतापूर्वक वाष्पित हो गई और नष्ट हो गई। हालांकि ऐसा करने की कीमत उसे अपने दाहिने हाथ की हड्डी तोड़कर चुकानी पड़ी तथा कंधे से लेकर हाथ के पिछले हिस्से तक तलवार का घाव फिर से गहरा हो गया। हिस, ये बच्चा सचमुच भयानक है। आसपास के शिष्यों ने जब वांग चेन को अचानक अपने प्रति इतनी निर्दयता से व्यवहार करते देखा तो वे अचंभित रह गए। वाह, इस समय जियांग लिंगक्सियन की आकृति अचानक वांग चेन के बगल में प्रकट हुई और वांग चेन की दयनीय स्थिति को देखकर उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। परी बहन, ये बहुत दर्द कर रहा है। वांग चेन जो शाप दे रहा था, जैसे ही उसने जियांग लिंगक्सियन को देखा वह तुरंत व्यथित हो गया। अत्यधिक रक्त की हानि और हाल ही में हथेली के प्रहार के कारण वांग चेन का चेहरा पहले से ही पूरी तरह से पीला और रक्तहीन हो गया था। ये देखकर जियांग लिंगक्सियन की हरकतें घबरा गईं और उसने जल्दी से उपचार की गोलियों की विभिन्न जेड बोतलें निकाल लीं। जल्दी से अपना मुंह खोलो, जियांग लिंगक्सियन ने अपने हाथ में कई गोलियां उड़ेल लीं। उसके आमतौर पर शांत चेहरे पर चिंता की झलक दिखाई दी। आह, वांग चेन ने मानो अपने हाथ के घाव के दर्द को सहन करते हुए अपना सिर उठाया और अपना मुंह खोला, वह दुखी दिख रहा था। जियांग लिंगक्सियन ने किसी और चीज की परवाह नहीं की, उसने सावधानीपूर्वक गोलियों को अपनी हथेली में पकड़ा और उन्हें वांग चेन के मुंह में डाल दिया। वांग चेन ने महसूस किया कि उसके होंठ दवा खिलाते समय थोड़ी ठंडी हथेली से ढके हुए थे और अवचेतन रूप से जियांग लिंगक्सियन के निष्पक्ष कोमल हाथ को धीरे से काट लिया। जियांग लिंगक्सियन को अपनी हथेली पर हल्का सा कुतरने का एहसास हुआ और वह क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। ये पुष्टि करने के बाद कि गोलियां वांग चेन के मुंह में थी, जियांग लिंगक्सियन ने जल्दी से अपना हाथ वापस खींच लिया, जैसे कि उसे बिजली का झटका लगा हो, और उसे उसके पीछे रख दिया। जैसे ही कई मुंह में पिघल जाने वाली गोलियां उसके मुंह में गईं और तरल दवा में बदल गईं जो उसके शरीर में प्रवेश कर गईं। वांग चेन ने तुरंत अपने शरीर में गर्मी महसूस की और उसके हाथ की चोटों का उपचार उसके शरीर के भीतर की औषधीय शक्ति द्वारा किया गया, जिससे रक्तस्राव रुक गया। ये देखकर कि वांग चेन की चोटें स्थिर हो गई थी, जियांग लिंगक्सियन ने उसे अपने पीछे ढक लिया। उसकी अभिव्यक्ति ठंडी थी क्योंकि उसने देखा मध्य हवा में किन्येफान को देख रही थी, विशेषकर उसकी सुंदर किंतु अत्यंत ठंडी आंखें, जो उसके आसपास के सभी लोगों को भयभीत कर देती थीं। संतति, वह थोड़ा मरा हुआ लगता है। लेकिन दर्शकों में से किसी ने सावधानी से किन्येफान की ओर इशारा किया, जिसका ठंडी आभा से मध्य हवा में दम घुट रहा था। जियांग लिंगक्सियन की बर्फीली आंखें पानी की तरह शांत थीं, लेकिन एक मजबूत चरम हत्या का इरादा धीरे धीरे उनके भीतर उमड़ रहा था। होम वांग चेन, मरो। जियांग लिंगक्सियन के दिल में गुस्से की लहर उठी और उसकी ठंडी निगाहें किन्येफान पर टिक गईं उसे बांधने वाली ठंडी आभा एक गर्जना के साथ फूट पड़ी। क्रैक, बैंग, किन्येफान पर एक सुरक्षात्मक जेड पेंडेंट की गर्दन। लेकिन फिर भी जियांग लिंगक्सियन की उग्र ठंडी आभा के तहत किन्येफान की रीढ़ अभी भी दो खंडों में टूट गई। वाह, अचानक एक फुसफुसाहट की आवाज सुनाई दी और ठंडी आभा ने किंग इरफान को लगभग कुचल दिया। लगभग कुचलने वाली थी, एक बैंगनी ऊर्जा द्वारा फिर से फैल गई। साध्वी, यह मेरा शिष्य है, आपने इस पर आक्रमण क्यों किया? अचानक उनके सामने लाल वस्त्र पहने एक महिला प्रकट हुई। उसकी आभा अत्यंत शक्तिशाली थी और उसका सुंदर चेहरा मनमोहक रूप से सुंदर था। यह नवागंतुक कोई और नहीं बल्कि वांग चेन के पिछले जीवन में किन येफान की रखेलों में से एक थी, जो उसकी महिला गुरु थी। नवागंतुक को देखकर जियांग लिंगक्सियन मदद नहीं कर सका, लेकिन भौहें चढ़ा दी उसके दिल में ये जानकर कि किन येफान बचा लिया गया था। कल मैं उसका दाहिना हाथ देखना चाहता हूँ, अगर नहीं देखा तो मैं खुद उसे मार डालूंगा। जियांग लिंगक्सियन थोड़ा भौहें चढ़ाई और लाल वस्त्रधारी महिला को ठंडी निगाहों से घूरने लगी। उसकी स्पष्ट ठंडी आवाज से आज उसके इरादे स्पष्ट हो गए। मेरे शिष्य को पहले ही सजा मिल चुकी है, वह लगभग मर ही रहा है। क्या संतनी कोई सम्मान नहीं देना चाहती? तुम योग्य नहीं हो। जियांग लिंगक्सियन ने यह सुना और शांति से लाल वस्त्रधारी महिला और किंग इरफान को देखा देखा फिर हल्के से तीन शब्द बोले। फिर वह लाल वस्त्रधारी महिला के उदास चेहरे को देखे बिना ही मुड़ गई और धीरे धीरे चिंता भरी आंखों से वांग चेन की ओर देखने लगी। वांग चेन पीछे से शो का आनंद ले रहा था, लेकिन जियांग लिंगक्सियन को देखकर उसने तुरंत दर्द का भाव पुनः प्रकट कर दिया। शो देख रहे विभिन्न ताइजू अमर संप्रदाय के शिष्य सभी अवाक थे। वांग चेन, जब वह अकेले थे उन्हें गंभीर चोटें लगी थी, लेकिन वे शांत रहे, मानो मरना कोई चोट नहीं थी। लेकिन जियांग लिंगक्सियन को देखते ही उसका चेहरा तुरंत पीला और कमजोर हो गया। वह बहुत दयनीय लग रहा था, लेकिन शिष्य को सबसे अधिक ईर्ष्या, जलन और घृणा इस बात से हुई कि जियांग लिंगक्सियन उस समय सचमुच चिंतित हो गई जब उसने वांग चेन की पीड़ा भरी अभिव्यक्ति देखी। चल दर, वांग चेन की पीड़ा भरी अभिव्यक्ति को देखकर जियांग लिंगक्सियन ने अंततः अपने गुरु का व्यवहार त्याग दिया और धीरे से उनके बाएं हाथ को सहारा दिया। सभी की आश्चर्यचकित निगाहों के सामने उनके सामने का शून्य अचानक खुल गया और एक दरार प्रकट हो गई। जियांग लिंगक्सियन ने कुछ नहीं कहा, बस वांग चेन का समर्थन करते हुए वे उसमें प्रवेश कर गए। उनके आकृतियों के प्रवेश करने के बाद बर्फीली शक्ति द्वारा फाड़ी गई स्थानिक दरार धीरे धीरे बंद हो गई और गायब हो गई। इस बीच लाल वस्त्रधारी महिला अपने शिष्य की रक्षा करने के लिए उत्सुक थी। उसने बुरी तरह घायल किंग इरफान को उठाया और तेजी से हथियार कब्रिस्तान में गायब हो गई। संतनी ने वास्तव में शून्य को चीरना सीख लिया है। एक संत आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ वास्तव में भयानक है। शो समाप्त होते देख हथियार कब्रिस्तान में उपस्थित शिष्यों ने अपने 100 से अधिक शब्दों के विचारों पर चर्चा शुरू कर दी। तस्क तस्क तस्क, वह शिष्य जिसे संतति वापस लाई है संभवतः पूरे ताइजू अमर संप्रदाय में परेशानी पैदा करेगा। हाँ हाँ डॉट डॉट डॉट, ताइजू अमर संप्रदाय के भीतर ताइक्सु संतस हॉल में कसकर बंद किए गए शयन कक्ष के केंद्र से अचानक स्थानिक उतार चढ़ाव उत्पन्न हुए, जिसके बाद एक स्थानिक दरार खुल गई। वांग चेन, जो शून्य से उभरा था, अब शक्तिहीन होकर जियांग लिंगक्सियन के कंधे पर भारी रूप से झुका हुआ था। वांग चेन की आंखें थोड़ी बंद थी, उन्हें हल्की नींद आ रही थी, उन्हें सचमुच नींद आ रही थी, न कि उस तरह की नींद जो मौत से पहले आती है। परी बहन, क्या मैं मरने जा रहा हूँ? अपनी तंद्रा में वांग चेन अवचेतन रूप से बड़बड़ाने लगा। जियांग लिंगक्सियन को चिढ़ाना चाहता था, लेकिन जियांग लिंगक्सियन को चिढ़ाना अच्छा नहीं लगता था। मरना शब्द सुनते ही उसकी भावनाएं काफी उतार चढ़ाव भरी हो जाती थी। जियांग लिंगक्सियन के कदम तेज हो गए क्योंकि उसने स्थानिक दरार के भीतर वांग चेन का समर्थन किया। अंत में उसने उसे सीधे उठाया, जल्दी से स्थानिक दरार से बाहर निकल गई और उसे उसके बगल में नर्म बिस्तर पर लिटा दिया। जियांग लिंगक्सियन के अचानक आलिंगन से वांग चेन चौंक गया और उसकी तंद्रा बिना किसी निशान के तुरंत गायब हो गई। अगले ही पल, इससे पहले कि वांग चेन कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, उसने महसूस किया कि उसके दाहिने हाथ पर से कपड़ा धीरे से खींचा जा रहा है। आह, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। ताइजू अमर संप्रदाय के वस्त्र की लंबी आस्तीन वांग चेन के दाहिने हाथ के घायल मांस से चिपक गई थी और अब जैसे ही इसे खींचा गया यह उसे फाड़ने लगी। इसे सहन करो, मैं तुम्हें अभी ठीक कर दूंगा। जियांग लिंगक्सियन की अभिव्यक्ति में असामान्य रूप से घबराहट दिखाई दी और उसने जल्दी से उसके दाहिने हाथ के घाव पर कोमल बर्फ आध्यात्मिक ऊर्जा छोड़ी। आह, बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। वांग चेन दर्द में था और अब जम गया था। उसका पूरा चेहरा तुरंत लाल हो गया और लाल हो गया, उसकी आत्मा पुनर्जीवित हो गई। जियांग लिंगक्सियन, आपकी उपचार प्रक्रिया अभी भी मेरे पिछले जीवन की तरह अनुभवहीन क्यों है? वांग चेन अपने दिल में गुस्से से दहाड़ा, क्योंकि अपने पिछले जीवन में जब वह गंभीर रूप से घायल हो गया था, जियांग लिंगक्सियन भी उसे इसी तरह ठीक किया था। हाहाहा, ये सिस्टम तो हंसी से मर रहा है। होस्ट, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी पिछली जिंदगी में लौट गए हैं? मेरे पास आपकी बहन का है। ट्रैश होस्ट, मैं तुम्हारे पिछले जन्म की यादें ताजा कर रहा हूँ, फिर भी तुम मुझे डांट रहे हो। तुम्हें तो जान से मारने की सजा मिलनी चाहिए। अगर मैं सचमुच मर गया तो तुम फिर से दुखी हो जाओगे। वान चेन ने अपने दांत पीस लिए। अपने दाहिने हाथ में धीरे धीरे सुन्न हो रहे दर्द को सहन किया क्योंकि वह जम गया था और गुस्से से अपने मन में सिस्टम को जवाब दिया। वो अलग बात है, वैसे भी ट्रैश होस्ट अब मर नहीं सकता, बस थोड़ा दर्द जरूर है। तुम घृणित बदमाश सिस्टम, हमेशा मुझे कचरा कहते हो, तुम एक विकृत व्यक्ति हो, चले जाओ। वान चेन ने अब अपने मन में भौंकने वाली प्रणाली पर ध्यान नहीं दिया और एक पीले चेहरे के साथ उसके बगल में जियांग लिंगक्सियन के घबराए हुए और केंद्रित सुंदर चेहरे को देखा। जियांग लिंगक्सियन के परिचित और आकर्षक अद्वितीय चेहरे को देखकर वांग चेन के मन को अप्रत्याशित रूप से बहुत अधिक शांति महसूस हुई। इस समय जियांग लिंगक्सियन ने वांग चेन की निगाहों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, वह सिर्फ दवा के साथ उसकी चोटों का इलाज करने पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। तुम्हारे हाथ की हड्डियां पूरी तरह टूट गई हैं, मुझे उन्हें दवा से ठीक करना होगा, थोड़ा दर्द हो सकता है, सहन कर लो। जियांग लिंगक्सियन की स्पष्ट ठंडी आवाज ने बोलना समाप्त कर दिया। फिर उसने अचानक ऊपर देखा और उसकी खूबसूरत आंखें वांग चेन की निगाहों से मिली। उनकी गहरी निगाहें एक क्षण के लिए जम गईं, एक दूसरे को देखते हुए उनकी पुतलियां धीरे धीरे हिलने लगी, उनकी आंखों में भावनाएं बहने लगी। वांग चेन उस चिंता को भी देख सकता था जो हमेशा जियांग लिंगक्सियन की आंखों में मौजूद थी, वह भावना कि उसे डर था कि उसके साथ कुछ हो जाएगा। हालांकि जैसे ही वांग चेन ने देखना जारी रखा उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जियांग लिंगक्सियन की आंखों से वांग चेन ने देखा कि वह उसके वर्तमान स्वरूप में उसके पिछले स्वरूप को देख रही थी। मैं इसे सहन करने की कोशिश करूंगी, वांग चेन खुद को रोक नहीं सका और सबसे पहले अपनी नजरें हटा ली। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और अपना सिर घुमा लिया तथा हल्के से जवाब देते हुए अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ा दिया। लेकिन जियांग लिंगक्सियन ने उसे सुना नहीं, बल्कि वह वांग चेन के प्रोफाइल को घूरता रहा और उसने अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। वह अभी अभी जब उसकी नजर वांग चेन से मिली तो उसे ऐसा लगा जैसे उसने उस शिष्य को देख लिया हो जिससे वह पिछले जन्म से परिचित थी। शिष्य, जियांग लिंगक्सियन ने अनायास ही शिष्य पुकारा। उसका दिल वांग चेन से जवाब पाने के लिए बहुत उत्सुक था, जैसा उसने अपने पिछले जीवन में किया था। लेकिन वांग चेन उसकी बात का जवाब देने की हिम्मत कैसे कर सकता था? वह बस अपनी आंखें कसकर बंद रखे हुए था, न कुछ देख रहा था और न ही सुन रहा था। परी बहन, बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी करो। हालांकि वांग चेन ने फिर भी कुछ अप्रासंगिक चिल्लाया और उसका सुन्न दर्द भरा दाहिना हाथ कमजोरी से मुट्ठी में भींच गया, मानो कोई दिखावा कर रहा हो। वांग चेन के बोलने के बाद कमरे में कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। ठीक है, जियांग लिंगक्सियन की आंखें जो अभी अभी आशा की एक झलक से चमक उठी थी इस क्षण धीरे धीरे फिर से मंद हो गई और उसने एक बार फिर अपना सुंदर चेहरा नीचे कर लिया। अगले ही पल वांग चेन ने महसूस किया कि उसका पूरा दाहिना हाथ धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, मानो उसकी संवेदना पूरी तरह से खत्म हो गई हो। अंततः उसके हाथ में टूटी हुई हड्डियों के अचानक हिलने का एहसास हुआ जो लगातार एक एक करके चिपकती जा रही थी। यह एहसास आंशिक रूप से बेहोशी की दवा के साथ सर्जरी करने जैसा था, अविश्वसनीय रूप से अजीब, दर्दनाक लेकिन सुन्न। चरमराहट, चरमराहट, मांस के भीतर हड्डियों के हिलने की आवाजें आ रही थी। जियांग लिंगक्सियन के हाथ पहले से ही खून से सने हुए थे क्योंकि वह हड्डियों को फिर से जोड़ने पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। जियांग लिंगक्सियन द्वारा हड्डियों को फिर से जोड़ने की प्रक्रिया के दौरान दर्द और सुन्नता के कारण वांग चेन अनजाने में सो गया। एक पूरी रात बीत गई। जब वांग चेन धीरे धीरे फिर से जागा तो उसने अपना शरीर दो बार हिलाया और तुरंत उसकी पीठ और कमर में दर्द महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे पूरी रात शरीर के तकिए की तरह इस्तेमाल किया गया हो, जिसके कारण अगले दिन उसकी नींद की स्थिति असुविधाजनक हो गई और पूरे दिन मांसपेशियों में दर्द बना रहा। जियांग लिंगक्सियन बहुत अनुचित है, मैं घायल हूँ, फिर भी उसने मुझे बहुत कसकर पकड़ रखा है। वांग चेन ने अपनी दुखती गर्दन को मरोड़ा जो ऐसा लग रहा था जैसे पूरी रात उसे दबाए रखा गया हो, और मन ही मन जियांग लिंगक्सियन के बारे में दो बार शिकायत की। यदि उसे रात के दौरान जियांग लिंगक्सियन की हरकतों के बारे में पता नहीं होता तो वह शायद सोचता कि ऐसा उसके हाथ की चोट के कारण हुआ है जिससे उसका पूरा शरीर प्रभावित हो रहा है। अपनी चोट के बारे में सोचते हुए वांग चेन एक पल के लिए रुका, फिर जल्दी से अपनी बांह की ओर देखा। वांग चेन ने नीचे देखा तो पाया कि उसका पूरा दाहिना हाथ पहले से ही आध्यात्मिक ऊर्जा पट्टियों में लिपटा हुआ था। उसकी बांह में गर्माहट महसूस हो रही थी और अब ज्यादा दर्द नहीं हो रहा था। सचमुच एक चमत्कारी चिकित्सक, डॉक्टर जियांग। वांग चेन नर्म सुगंधित बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसने आध्यात्मिक ऊर्जा पट्टियों में लिपटे अपने दाहिने हाथ को अपनी आंखों के सामने जांचने के लिए उठाया। उसकी अभिव्यक्ति खुशी से भरी हुई थी। चरमराहट। इसी समय प्रवेश द्वार से दरवाजा खुलने की तेज आवाज आई, उसके बाद थोड़ी जल्दबाजी में कदमों की आवाज आई। तुम्हारी चोट अभी ठीक हुई है, अपना हाथ इधर उधर मत हिलाओ। जियांग लिंगक्सियन अपने बाएं हाथ में एक बांस की भोजन की टोकरी लेकर जल्दी से वांग चेन के पास गई, धीरे से उसका दाहिना हाथ पकड़ा और उसे वापस बिस्तर पर रख दिया। ओह, वांग चेन जियांग लिंगक्सियन की अचानक कार्रवाई से स्तब्ध रह गया और जो कुछ हुआ उसे महसूस करने के बाद उसने भावशून्य स्वर में कहा, ओह परी बहन, क्या आप खाना ले जा रही हैं? वांग चेन की निगाहें जियांग लिंगक्सियन के बगल में बांस की टोकरी से आने वाली भोजन की सुगंध पर टिक गईं और उन्होंने उत्सुकता से पूछा, हम, आपकी साधना अभी तक गुई युआन क्षेत्र तक नहीं पहुंची है, इसलिए आप भोजन के बिना नहीं रह सकते। मैंने कुछ भोजन बनाया है। क्या तुम खाना बना सकते हो? जियांग लिंगक्सियन के शब्द सुनकर वांग चेन लगभग बिस्तर से उछल पड़ा, उसकी आवाज कई सब तक ऊपर उठ गई। जियांग लिंगक्सियन बिस्तर के पास खड़ी होकर वांग चेन को देख रही थी, जो अचानक बिस्तर से उठकर बैठ गया था और अपनी नाजुक भौहों को सिकुड़े बिना नहीं रह सकी। क्या मेरी खाना पकाने की क्षमता आपको इतना आश्चर्यचकित करती है? जियांग लिंगक्सियन बिस्तर के पास खड़ी थी, उसकी नाजुक भौहें सिकुड़ी हुई थी, उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव दिखाई दे रहा था, मानो वह वांग चेन की जांच कर रही हो। नहीं नहीं, मैं तो बस इस बात से हैरान हूँ कि परी बहन न केवल उच्च शिक्षित है और बहुत सुंदर है, बल्कि खाना भी बना सकती है। वांग चेन ने जल्दी से अपना सिर हिलाकर समझाया, लेकिन वह मुस्कुरा रहा था, जबकि उसका दिल निराशा से भरा हुआ था। क्योंकि अपने पिछले जीवन में, जिस क्षण से वह जियांग लिंगक्सियन का शिष्य बना, उस अवधि के दौरान जब उन्हें खाने की आवश्यकता होती थी, वह व्यक्ति था जो दिन में तीनों समय का भोजन तैयार करता था। उनके पाककला कौशल के कारण जियांग लिंगक्सियन, जो अपने पिछले जीवन में वर्षों तक भोजन से दूर रही थी, ने भी एक साथ भोजन करने की आदत विकसित कर ली। अपने पिछले जीवन में उसने कई बार जियांग लिंगक्सियन से उसके लिए खाना बनाने के लिए कहा था, लेकिन उसका जवाब हमेशा यही होता था, मुझे नहीं पता कैसे। जियांग लिंगक्सियन ने उसके शब्दों को सुनकर कुछ देर तक सोचा, फिर उसकी खूबसूरत आंखें वांग चेन की ओर देखी, जो उसकी ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहा था। उठो और खाओ। जियांग लिंगक्सियन ने इस बार वांग चेन की मदद नहीं की, क्योंकि उसका हाथ घायल हो गया था, उसका पूरा शरीर लकवाग्रस्त नहीं था। वांग चेन ने जियांग लिंगक्सियन की पीठ की ओर देखा, क्योंकि वह कमरे के केंद्र में तीन कुर्सियों के साथ मेज की ओर चली गई थी और केवल असहाय रूप से बिस्तर से बाहर निकलने के लिए अपने शरीर को हिला सकती थी। ओह, मुझे अपनी पीठ और कमर में दर्द क्यों महसूस हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कल रात जब मैं सो रहा था तो किसी ने मुझे पकड़ रखा था। बिस्तर से उठने के बाद वांग चेन ने अचानक एक अजीब अभिव्यक्ति दिखाई, जैसे कि वह खुद से बात कर रहा था, या शायद ये जानबूझकर किया गया था। जियांग लिंगक्सियन ने ये शब्द सुने और उसके हाथ, जो मेज के पास से खाने के बर्तन निकाल रहे थे, थोड़ा रुक गए। हालांकि उसने जल्दी ही खुद को शांत भाव से अपना काम जारी रखने के लिए मजबूर कर लिया, हालांकि उसने अभी भी अपराध बोध के साथ समझाया, यह आपके हाथ की चोट के कारण हो सकता है, सावधान रहें, अपने दाहिने हाथ को बेतरतीब ढंग से न हिलाएं। जियांग लिंगक्सियन ने महसूस किया कि वांग चेन, जिसका दाहिना हाथ पट्टियों में बंधा हुआ था, उसके सामने आकर खड़ा हो गया और वह भोजन को ध्यान से देख रही थी और धीरे से निर्देश दे रही थी। ओह, तो यह ऐसा ही है। वांग चेन जियांग लिंगक्सियन के सामने खड़ा था, उसे देख रहा था, जिसने उसकी नजरों से नजर मिलाने की भी हिम्मत नहीं की, और उसका दिल सचमुच हंसी से फटने वाला था। जब लोग दोषी महसूस करते हैं तो वे आमतौर पर बहुत व्यस्त होने का दिखावा करते हैं, और जियांग लिंगक्सियन की वर्तमान स्थिति बिल्कुल वैसी ही थी। वांग चेन को उसे चिढ़ाने में बहुत मजा आने लगा, चाहे वह पहले का हो या अब का, वांग चेन उसे बिना किसी वजह के चिढ़ाना पसंद करता था। हालांकि एकमात्र अंतर यह था कि उनके पिछले जीवन में उनका रिश्ता अधिक परिचित था और अपनी महिला सम्राट शिक्षक जियांग लिंगक्सियन को छेड़ने के बाद उनका पीछा किया जाता था और उन्हें पीटा जाता था। अब अपरिचित होने का नाटक करते हुए वह खुलेआम दुस्साहसी हो गया। जियांग लिंगक्सियन ने उसे मारने की हिम्मत नहीं की, शायद उसे डर था कि वह भाग जाएगा। ये देखकर कि जियांग लिंगक्सियन ने भोजन के बर्तन निकाल लिए हैं, वांग चेन ने उसे चिढ़ाना बंद कर दिया और बैठ गया। मैं सचमुच भाग्यशाली हूं कि मुझे फेरी सिस्टर द्वारा बनाया गया भोजन चखने का मौका मिला। अफसोस, मुझे लगता है कि इस भोजन के बाद मैं इसे दोबारा नहीं खा पाऊंगा। वांग चेन कुर्सी पर बैठे सामान्य रंग के बर्तनों और उनसे आने वाली हल्की सुगंध को देखते रहे और बोले बिना नहीं रह सके। आप क्यों कहते हो कि? उसके सामने बैठी जियांग लिंगक्सियन ने महसूस किया कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसके संवेदनशील दिमाग ने तुरंत वांग चेन के प्रस्थान की कल्पना की, क्योंकि परी बहन शायद अगली बार मेरे लिए ये फिर से न बना पाए। ऐसा कहने के बाद वांग चेन ने अपना बायां हाथ उठाया, जियांग लिंगक्सियन द्वारा मेज पर रखी गई चॉपस्टिक उठाई और चीनी गोभी का एक बड़ा टुकड़ा उठाया और उसे अपने मुंह में डाल लिया। ये सुनकर जियांग लिंगक्सियन का तनावग्रस्त दिल आखिरकार शांत हो गया और उसे वांग चेन के शब्दों में निहित चिढ़ाने वाले निहितार्थ समझ में आ गए। हालांकि जैसे ही वह आराम कर रही थी, वांग चेन ने एक पल के लिए चीनी गोभी चबाया, फिर अचानक उसकी भौहें तन गईं, उसकी अभिव्यक्ति धीरे धीरे अजीब होती गई। खांसी खांसी, वांग चेन खुद को रोक नहीं सका और दो बार जोर से खांसा, फिर जल्दी से अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी और अपना मुंह ढक लिया। उसके सामने बैठे जियांग लिंगशियान ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए और चिंतित हो गए। क्या आपकी चोट फिर से हो गई है? जियांग लिंगक्सियन ने कहा। वह खड़ी होकर वांग चेन की ओर चलने वाली थी, लेकिन उसने उसे हाथ से रोक दिया। चबाओ चबाओ, कुरकुराओ कुरकुराओ। गल्प। वांग चेन ने अपने मुंह में अत्यधिक नमकीन चीनी गोभी के कड़वे स्वाद को सहन किया, खुद को कुछ बार चबाने के लिए मजबूर किया, फिर एक गहरी सांस ली और उसे निगल लिया। नहीं, मैं ठीक हूं, बस गोभी का दिल मेरे गले में अटक गया था। वांग चेन ने सच नहीं बताया, लेकिन उसने धीरे से अपने होठों को दो बार दबाया, जैसे कि खाना इतना स्वादिष्ट था कि वह अभी भी उसका स्वाद ले रहा था। अरे वाह, खाने का रंग और खुशबू तो बिल्कुल सामान्य लग रही थी, लेकिन खाने पर यह इतना नमकीन क्यों था? इस समय वांग चेन को अंततः जियांग लिंगक्सियन की बात पर विश्वास हो गया। अपने पिछले जीवन में हमेशा कहा था कि वह वास्तव में खाना नहीं बना सकती थी। ये बहुत स्वादिष्ट है परी बहन, आपको इसे अवश्य आजमाना चाहिए। वांग चेन ने इस बात पर बड़ी मुस्कान दी कि यह कितना स्वादिष्ट था। उसने पकवान से चीनी गोभी का सबसे बड़ा टुकड़ा उठाया और इसे जियांग लिंगक्सियन के पास ले आया। मैं इसे नहीं खाऊंगा, अगर यह स्वादिष्ट है तो तुम्हें और खाना चाहिए, ये असल में तुम्हारे लिए ही बनाए गए थे। जियांग लिंगक्सियन ने अपनी नाजुक भौहें सिकोड़ ली, उसका सुंदर चेहरा थोड़ा पीछे झुक गया, ऐसा लग रहा था कि वह वांग चेन के साथ चॉपस्टिक साझा करने के लिए तैयार नहीं थी। हालांकि ये सामान्य बात थी, क्योंकि उनका वर्तमान रिश्ता अभी इतना घनिष्ठ नहीं था कि इस तरह के अंतरंग संकेत मिल सकें। इस पर वांग चेन की अभिव्यक्ति कठोर हो गई और उसने अपना सिर थोड़ा नीचे कर लिया, जैसे कि उसे नापसंद किया गया हो, और वह आहत दिख रहा था। लेकिन यह वास्तव में स्वादिष्ट है परी बहन, बस एक टुकड़ा चखो, ठीक है? वांग चेन की आवाज थोड़ी धीमी थी, क्योंकि वह धीरे धीरे वापस बैठ गया और कड़वाहट से गोभी को अपने कटोरे में रख रहा था। ये सुनकर जियांग लिंगशियान चुप हो गया और एक पल के लिए कमरे का माहौल अस्पष्ट रूप से शांत हो गया। जब तक चॉपस्टिक की एक जोड़ी धीरे धीरे वांग चेन की नीची निगाहों में बड़ी, धीरे से उसके कटोरे से गोभी को उठाया। जियांग लिंगक्सियन वांग चेन की भावनाओं के प्रति बहुत विचारशील थी, उसने पकवान से गोभी लेने के बजाय वह गोभी लेने का फैसला किया जो उसने पहले ही अपने कटोरे में डाल दी थी। इस समय वांग चेन की गहरी आंखें चमक उठी और उसने जल्दी से मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। हालांकि अगर कोई अब वांग चेन की मुस्कुराहट को ध्यान से देखे तो उसे उसमें शरारत का संकेत मिलेगा। जियांग लिंगजियन ने बहुत ही शान से खाया, अपने बाएं हाथ से अपने बालों की एक लट को कान के पीछे धीरे से लगाया और धीरे धीरे गोभी को अपने थोड़े से खुले होंठों तक लाया। अगले ही पल जियांग लिंगजियान की भौहें सिकुड़ गईं। नहीं, 99.9% गलत। लेकिन फिर उसे याद आया कि कैसे वांग चेन कहा था कि यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है, इसलिए उसने फिर भी हठपूर्वक कई और निवाले चबाए। फिर उसने चुपचाप अपना सुंदर चेहरा नीचे कर लिया, अपनी मतली को दबा लिया और गोभी को धीरे से मेज पर थूक दिया। आपने मुझसे झूठ बोला, जियांग लिंगक्सियन ने अपना सुंदर चेहरा उठाया, अपनी नाजुक भौहों को कसकर सिकुड़ा और वांग चेन को घूरा शर्म और गुस्से के भाव के साथ। विशेषकर जब गोभी ने उसे नमकीन बना दिया तो उसका सुंदर चेहरा थोड़ा झुर्रीदार हो गया, ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ बहुत अन्याय हुआ हो, जो कि अत्यंत मनमोहक था। वांग चेन ने जियांग लिंगक्सियन की ओर देखा इस तरह, परी बहन, ये तुम्हारा खाना है, बनाते समय तुम्हें नमक का स्वाद नहीं आया, बस यूं ही पागलों की तरह नमक डाल दिया। या क्या आपने सब्जी का एक टुकड़ा उठाया, उसे खाया, उसे स्वादहीन पाया और फिर बर्तन में एक चम्मच नमक डाल दिया? फिर आप सब्जी का एक और निवाला हाथ में लेंगे, उसे अभी भी फीका पाएंगे और फिर बर्तन में एक और चम्मच नमक डालेंगे। ये प्रक्रिया तब तक दोहराते रहना जब तक कि आपके हाथ में रखी सब्जी खत्म न हो जाए और आपको लगे कि बर्तन में रखी सब्जियां लगभग जल चुकी हैं, तो आपने उन्हें ऐसे ही परोस दिया। ये शब्द सुनते ही जियांग लिंगक्सियन की अभिव्यक्ति रुक गई और एक पल के लिए उसका सुंदर चेहरा शर्म से लाल हो गया। मैं जियांग लिंगक्सियन इतनी घबरा गई थी कि वह बोल नहीं पा रही थी। वह चाहती थी कि शर्म के मारे उसे कोई छेद मिल जाए जिसमें वह घुस जाए, क्योंकि जब वांग चेन ने वे बातें कही तो उसे वे बातें याद आईं और अचानक उसे एहसास हुआ कि उसने खाना बनाते समय ये सारी बातें की थीं। शुरू से ही शब्दों के साथ अच्छा नहीं होने के कारण इस समय वांग चेन का सामना करते हुए वह लंबे समय तक केवल हकलाती रही, यह नहीं जानती थी कि खुद को कैसे समझाए। याद दिलाए जाने और इसे महसूस करने के बाद ही जियांग लिंगक्सियन ने मन ही मन खुद को दोषी ठहराया, ये सोचकर कि उस समय उसका दिमाग गड़बड़ हो गया होगा। अरे कोई बात नहीं, चलो ये मीट चखते हैं, तुम दो गलतियां तो नहीं कर सकते, है ना? वांग चेन ने फिर से अपनी चॉपस्टिक उठाई, एक और मांस का टुकड़ा लिया और धीरे से उसे अपने मुंह में डाल लिया। अंत में ताइक्सु सेंटेस हॉल के बाहर वूश प्लॉप, जियांग लिंगक्सियन ने भोजन की कई प्लेटें अपने सामने साफ पानी के परिवर्तन पूल में डाल दी और पानी में गिरने के बाद वे निगल ली गईं और गायब हो गईं। जियांग लिंगक्सियन ने पानी में डूबते हुए कुछ बर्तनों को देखा, दुखी होकर अपने होठों को भींच लिया और खुद के प्रति थोड़ी नाराजगी महसूस की। ये तो पहले से ही बुरा था कि इस जीवन में उसका शिष्य उसे महिला सम्राट गुरु कहने को तैयार नहीं था, अब तो उसकी स्वयं की धारणा और भी गिर गई होगी। यदि यह जारी रहा तो क्या वह वास्तव में उन आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्गों के पास जाकर स्वयं को प्रशिक्षित करना चाहेगा? जियांग लिंगक्सियन सुनसान ताइक्सु सेंटेस हॉल के बाहर अस्पष्ट रूप से कल्पना की कि वांग चेन एक निश्चित आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्ग के साथ जा रहा है, के साथ जा रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जियांग लिंगक्सियन की आमतौर पर ठंडी अभिव्यक्ति में अस्पष्ट रूप से क्रोध की लहर दिखाई दी, और जब उसे इसका एहसास हुआ तो वह तुरंत चौंक गई। जब से उसके शिष्य की पिछले जन्म में मृत्यु हुई थी और उसने पुनर्जन्म लेने के लिए आत्महत्या कर ली थी, तब से जियांग लिंगक्सियन ने पाया था कि उसका मन तेजी से संवेदनशील होता जा रहा है। जियांग लिंगक्सियन को यकीन था कि अगर उसके शिष्य ने उसे इस जीवन में फिर से छोड़ दिया तो वह निश्चित रूप से क्यूई विचलन में गिर जाएगी। भले ही इस जीवन में उसकी शिष्या की मृत्यु न हुई हो, बल्कि वह किसी अन्य स्त्री के आलिंगन में चली गई हो, तब भी वह क्यूई विचलन में ही गिरेगी। जियांग लिंगक्सियन जितना अधिक सोचती उतनी ही तेजी से उसका दिल धड़कता, और जब उसने फिर से प्रतिक्रिया की तो वह जल्दी से पूल के किनारे पालथी मारकर बैठ गई और अपनी साधना तकनीक का संचार करना शुरू कर दिया, जिससे उसे धड़कन महसूस हुई। इस बीच ताइक्सु सेंटेस हॉल के अंदर वांग चेन खुशी से अपने भंडारण स्थान में विभिन्न हथियारों और संसाधनों का आयोजन कर रहा था। इस समय वांग चेन अभी भी मूर्खतापूर्ण रूप से इस बात से अनजान था कि उसके पिछले जीवन की महिला सम्राट शिक्षिका ने इस जीवन में उसके प्रति अत्यधिक अधिकार भाव विकसित कर लिया था। वांग चेन काया अराजक नौ यांग दिव्य शरीर साधना क्षेत्र भवन आत्मा क्षेत्र प्रथम परत शिखर शरीर संयम नौवीं परत के रूप में प्रच्छन्न साधना कला अराजक नौ यांग दिव्य कला भंडारण स्थान गहन स्तरीय निम्न श्रेणी ताई जूटूटी तलवार X1 पीच ब्लॉसम 1 से प्राप्त ब्लाइंड बॉक्स X1 पीला स्तरीय सुप्रीम ग्रेड चांदी भला X1 पीला स्तरीय निम्न श्रेणी हथियार X12 पीला मूल बिंदु 7458 समग्र मूल्यांकन एक बिल्डिंग स्पिरिट रियल फर्स्ट लेयर बॉट। वांग चेन ने सिस्टम पैनल का निरीक्षण किया, उसका हानिकर बायां हाथ हुक का आकार बना रहा था, जबकि वह विचारमग्न होकर अपनी ठुड्डी को धीरे से सहला रहा था। सिस्टम गणना करें कि शेष संसाधनों को कितने मूल बिंदुओं में परिवर्तित किया जा सकता है, ताइजू टूटी तलवार और ब्लाइंड बॉक्स को छोड़कर। डिंग, गणना हो रही है, गणना पूरी हो गई, कुल 11,458 मूल बिंदुओं को परिवर्तित किया जा सकता है। होस्ट, उन्हें जल्दी से परिवर्तित करें, भुगतान करें, भुगतान करें, आपको अभी भी मेरे 4,000 मूल अंक देने हैं। चिल्लाना बंद करो। 4,000 ओरिजिन पॉइंट्स वापस चुकाने के विचार से वांग चेन को हल्का सिरदर्द और दिल का दर्द महसूस हुआ। उन्हें परिवर्तित करें, उन्हें परिवर्तित करें, यहाँ उन्हें ले लो आप बॉट सिस्टम। लेकिन वांग चेन ने फिर भी उन सभी कबाड़ हथियारों को मूल बिंदुओं में परिवर्तित कर दिया, सबसे पहले सिस्टम को अपना कर्ज चुकाया। सिस्टम का ऋण चुकाने के बाद वांग चेन ने शेष 7,458 मूल बिंदुओं को देखा और एक पल के लिए विचार किया। सिस्टम, क्या आप उस कामोद्दीपक को सिगरेट की तरह और उस जहरीली गोली को कैंडी की तरह मॉल के गोल्डन कार्ड में रख सकते हैं? 10,000, 10,000 क्या मूल बिंदु, इसे भूल जाओ। एक धर्मी सज्जन होने के नाते मुझे ऐसी कुटिल बातों की परवाह नहीं है। वांग चेन ने बड़े गर्व से अपना हाथ हिलाया, एक विद्वान की आभा बिखेरते हुए, और फिर आह, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। चरमराहट, मैंने तुमसे कहा था कि अपना दाहिना हाथ बेतरतीब ढंग से मत हिलाओ। तभी दरवाजा खुला और जियांग लिंगक्सियन ने ठंडे स्वर में बात की, जिसमें थोड़ी सी झुंझलाहट भी थी, और वह जल्दी से भौहें चढ़ाते हुए बिस्तर के पास चली गई। फिर उसने वांग चेन के दाहिने हाथ को सहारा दिया, जो उसकी भव्य लहर से प्रभावित हुआ था। उसकी निगाहें कुछ ठंडी थीं। वांग चेन जानता था कि जियांग लिंगक्सियन उसकी परवाह करता है, और दोषी महसूस करते हुए वह केवल अपना सिर नीचे कर सकता था और चुप हो सकता था। आज सुबह तो ये गर्म और सुन्न था, लेकिन अब हर हरकत के साथ इसमें दर्द क्यों हो रहा है? लेकिन वांग चेन सिर झुकाए थोड़ा उलझन में था। क्या हो सकता है कि बेहोशी की दवा का असर खत्म हो गया हो? तुम्हारी बांह की ठंडी हवा लगभग खत्म हो गई है, अब तुम स्वाभाविक रूप से दर्द महसूस कर सकते हो। जियांग लिंगक्सियन ने वांग चेन की उलझन को समझ लिया था, क्योंकि उसने अपना सिर नीचे कर लिया था और उसने आध्यात्मिक ऊर्जा पट्टी को खोलने में उसकी मदद करते हुए शांत भाव से बात की। तो परी बहन, क्या आप मेरे लिए थोड़ा और इंजेक्शन लगा सकती हैं? बहुत सारा इंजेक्शन लगाए। वांग चेन ने जियांग लिंगक्सियन की ओर देखने के लिए अपनी आंखें उठाई, उनसे अनुरोध किया। उनका मुख्य उद्देश्य था कि यदि संभव हो तो दुख से बचा जाए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी चोट ठीक होना मुश्किल हो जाएगा। क्या आप हमेशा इस चोट के साथ जीना चाहते हैं? जियांग लिंगक्सियन ने ठंडी नजर से वांग चेन की ओर देखा, लेकिन उसके हाथ उसे एक नई आध्यात्मिक ऊर्जा पट्टी से फिर से बांधने पर केंद्रित थे। ओह ठीक है, तो फिर भूल जाओ। वांग चेन केवल असहाय होकर मुस्कुराते हुए जवाब दे सका, क्योंकि उसने जियांग लिंगक्सियन को उसके लिए दवा और पट्टियां फिर से लगाते हुए देखा था। आप बाद में आराम करने के लिए अपने कमरे में वापस जा सकते हैं। अगले कुछ दिनों तक अपने दाहिने हाथ का इस्तेमाल न करने की कोशिश करें और यह जल्दी ठीक हो जाएगा। ये देखने के बाद कि वांग चेन की चोट का इलाज हो गया है, जियांग लिंगक्सियन खड़ा हुआ, फर्श से खून से सना हुआ पट्टी उठाया और उसे दूर रख दिया। ये देखकर वांग चेन हेडबोर्ड पर पीछे झुक गया, हल्की खुशबू वाली रजाई को अपने ऊपर खींच लिया और खुद को ढक लिया। वांग चेन ने रजाई की खुशबू को तुरंत पहचान लिया। ये वही सुखदायक ठंडी और हल्की खुशबू थी जो उसने 2 रात पहले जियांग लिंगक्सियन द्वारा उसे सुलाए जाने के दौरान महसूस की थी। ये कमरा बहुत अच्छा है, क्या मैं यहाँ आराम कर सकता हूँ? ये देखकर कि जियांग लिंगक्सियन उसे जाने के लिए कहने वाली थी, वांग चेन बिस्तर पर पीछे झुक गया, ये दिखावा करते हुए कि उसे नहीं पता कि यह उसका बॉडोया है, और पूछा। जियांग लिंगक्सियन ने देखा कि वांग चेन ने खुद को रजाई से ढक लिया था और उसकी खूबसूरत आंखें थोड़ी झपक उठी, लेकिन उसने अंततः उसे नहीं रोका। यह मेरा कमरा है, जियांग लिंगक्सियन एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर उसने शांत धीमी आवाज में वांग चेन को सच्चाई बताने का फैसला किया। ये ठीक है, मैं फर्श पर सो सकता हूँ। नहीं, एक पुरुष और एक महिला का एक कमरा साझा करना अनुचित है, खासकर जब मैं आपका स्वामी हूँ। वांग चेन का जवाब सुनने के बाद जियांग लिंगक्सियन को अचानक महसूस हुआ कि इस जीवन में उसके शिष्य को भी उसके प्रति स्नेह की भावना है। अन्यथा ये सुनने के बाद कि यह उसका कमरा है, वह ये क्यों कहेगा कि वह फर्श पर सोने को तैयार है? परी बहन, आप हमेशा कहती हैं कि आप मेरी गुरु हैं, लेकिन क्या आपने कभी मेरी राय पूछी? इस समय वांग चेन अचानक भौहें चढ़ाकर बिस्तर पर पीछे झुक गया। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई क्योंकि उसने ऊपर देखा और जियांग लिंगक्सियन से सवाल किया। ये सुनकर बिस्तर के पास खड़ी जियांग लिंगक्सियन अपने ठंडे और आकर्षक भाव के साथ एक पल के लिए स्पष्ट रूप से जम गई। मैं जियांग लिंगक्सियन वहीं जम गई। उसकी नजर वांग चेन की हल्की सिकुड़ी हुई भौहों और आंखों पर पड़ी और उसके शब्द एक पल के लिए उसके गले में अटक गए। हाँ, इस पूरे जीवन में वह इच्छाधारी सोच ही रही थी, लेकिन वह अपने पिछले जीवन में 1000 वर्षों से अधिक समय तक वांग चेन की गुरु रही थी। वह पहले से ही इस तरह से वांग चेन के साथ बातचीत करने की आदी थी। परी बहन, असल में मैं शिष्य नहीं बनना चाहता। अगर तुम यहीं रहना चाहते हो तो रहो। मुझे अचानक याद आया कि मुझे कुछ काम निपटाना है। तुम निश्चिंत रहो और आराम करो। जियांग लिंगक्सियन को पता था कि वांग चेन क्या कहने वाला था और घबराहट में उसने जल्दी से उसे बीच में ही रोक दिया। उसकी सांसें भी कुछ अनियमित हो गईं। तब जियांग लिंगक्सियन ने वांग चेन के बाद के शब्दों को भी नहीं सुना, जल्दी से मुड़ गया और बाहर चला गया, दरवाजा बंद कर दिया। वांग चेन जियांग लिंगक्सियन की अचानक कार्रवाई से थोड़ा हैरान था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसकी भावनात्मक उतार चढ़ाव इतनी अधिक होगी। वांग चेन पता था कि पिछले कुछ दिनों में रात में जियांग लिंगक्सियन के असुरक्षित व्यवहार को देखते हुए ऐसे शब्द कहने से उसकी भावनाएं आहत हो सकती हैं, लेकिन अगर वह ऐसा नहीं कहता तो वह गुरु शिष्य का रिश्ता कभी नहीं तोड़ता जैसा कि वह मानती थी। वह न तो ऐसा होना चाहता था, न ही वह ऐसा बने रह सकता था। वह इस जीवन में जियांग लिंगक्सियन का आज्ञाकारी शिष्य। वांग चेन लगा कि जियांग लिंगक्सियन के साथ उसकी मौजूदा बातचीत कुछ ज्यादा ही अजीब लग रही है। वह उसे नींद में ही कसकर गले लगाने को तैयार थी, फिर भी जब वह जाग रहा था तो जियांग लिंगक्सियन की प्रतिक्रिया ऐसी थी मानो उसके सक्रिय स्पर्श से भी उसे बिजली का झटका लगा हो। वह बहुत संवेदनशील हो गई थी और उसे बचना चाहती थी। क्या ऐसा हो सकता है कि जब वह मुझे छूती है तो उसे ये लक्षण महसूस नहीं होते, लेकिन यदि मैं उसे सक्रिय रूप से छूता हूँ तो वह परेशान हो जाती है? वांग चेन ने काफी देर तक सोचा और आखिरकार उसे कुछ समझ आया। उसने सोचा कि बाद में वह उसे और भी ज्यादा बार हल्के फुल्के अंदाज में छेड़ेगा। अपने मन में चल रहे अस्त व्यस्त विचारों को दूर करते हुए वांग चेन की नजर उसके भंडारण स्थान में पीच ब्लॉसम फॉरेस्ट से आए छोटे भाग्यशाली बॉक्स पर गई। उसने उसे बाहर निकाला और अपनी हथेली में रख लिया। वह न ज्यादा बड़ा था न ज्यादा छोटा, बस उसकी हथेली के आकार का। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अंदर क्या है। सावधानी के तौर पर वांग चेन ने इसे थोड़ा दूर रखा, फिर अपने बाएं हाथ से बड़ी मुश्किल से कुंडी खोलने लगा। क्लिक करें, एक तेज क्लिक की आवाज के साथ वांग चेन ने बॉक्स को बिस्तर पर रखा, ढक्कन को पकड़ा और धीरे से उसे खोल दिया। ये है, वांग चेन ने अपनी उंगलियों से बॉक्स के अंदर गोल सुनहरी वस्तु को चुटकी में पकड़ा, धीरे से उसे बाहर निकाला और भौहें सिकोड़ ली। डिंग, स्वर्ग स्तरीय सर्वोच्च ग्रेड ड्रैगन मूल मोती, निगला जा सकता है या 1,00,000 मूल बिंदुओं में परिवर्तित किया जा सकता है। ड्रैगन मूल मोती। वांग चेन को अंदर से आश्चर्य हुआ और वह अपने हाथ में तरल युक्त सुनहरे गोलाकार मोती की जांच करने लगा। उसने सुना कि यकिन की साधना उसके पिछले जीवन में इन्हीं दिनों के आसपास अचानक आत्मा क्षेत्र 6ठी परत के निर्माण तक पहुंच गई थी और फिर वह संप्रदाय प्रशिक्षण के लिए बाहर चला गया और भी अधिक मजबूत हो गया। ऐसा लगता है कि यह ड्रैगन मूल मोती यकिन की साधना वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता था, लेकिन अब इसे उसने छीन लिया था। छोटे होस्ट, क्या आप इसे मूल बिंदुओं में बदलना चाहते हैं? रुको रुको, मैं पहले मॉल में गोल्डन कार्ड को रिफ्रेश कर लूंगा, फिर विचार करूंगा कि इसे बदलना है या नहीं। वांग चेन ड्रैगन मूल मोती को 1 लाख मूल अंकों में बदलने की जल्दी में नहीं था, इसके बजाय उसने सिस्टम मॉल खोला। बस इसे बदल दो, मैं तुम्हें वह सुनहरा कार्ड मुफ्त में दे सकता हूँ जिसमें सिगरेट जैसी मोहक खुशबू और कैंडी जैसी जहरीली गोली है। सिस्टम के लाड़ प्यार भरे शब्दों को सुनकर वांग चेन ने भौहें चढ़ाई और फिलहाल इसे नजरअंदाज करने का इरादा किया। वांग चेन ने अपने दिमाग में 9 नए सुनहरे कार्डों को देखने के लिए अपना सिर घुमाया और एक विचार के साथ उसने क्लिक किया और कार्ड को पलट दिया। जैसे ही सुनहरा कार्ड पलटा, उस पर छपा पैटर्न धीरे धीरे घूम गया और उसकी दृष्टि में प्रकट हो गया। पहला आइटम, स्वर्ग स्तरीय शीर्ष ग्रेट ड्रैगन मूल मोती, कीमत 200,000 मूल अंक। सिस्टम, मेरी क्लासें जल्दी शुरू हो गई हैं। तुमने मुझसे पूरे 1 लाख ओरिजिन पॉइंट्स काट लिए हैं। वांग चेन ने पहली वस्तु की कीमत देखी और अपने मन में मानव मशीन प्रणाली को कोसे बिना नहीं रह सका। हे हे तुम, कोई बात नहीं, मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। वांग चेन ने अपने दिल में गुस्से को दबा लिया, खुद को याद दिलाया कि एक मूर्ख प्रणाली पर गुस्सा करना उचित नहीं है। फिर उसने कार्ड को फिर से पलट दिया। दूसरा आइटम, गाढ़े तरल पदार्थों के लिए पेपर टॉवल का अतिरिक्त बड़ा पैक, कीमत 666 ओरिजिन पॉइंट्स। तीसरी वस्तु, पंगु सार। नौवीं वस्तु, एक साधारण कल्टीवेटर के लिए 3 साल की खेती, कीमत 5,000 मूल अंक। अरे, ये नौवीं चीज अच्छी है, मैंने अपने पिछले जीवन में शायद ही कभी इस तरह की चीज देखी हो। वांग चेन ने नौवीं वस्तु को देखा और तुरंत उसे खरीदने का फैसला कर लिया। अपने पिछले जन्म में जब भी उसे कोई खेती मिलती थी, वह उसे खरीद लेता था। एक विचार के साथ उन्होंने खरीदने के लिए क्लिक किया और वांग चेन के मूल अंक तुरंत इस समय 2,458 तक कम हो गए और उसके भंडारण स्थान में एक सुनहरा कार्ड प्रकट हुआ जिसमें से एक मंद आध्यात्मिक प्रकाश निकल रहा था जो बहुत ही उत्तम था। वांग चेन ने अपने भंडारण स्थान में सुनहरे कार्ड और अपनी हथेली में ड्रैगन मूल मोती को देखा, फिर बिस्तर पर छोटे बक्से को रख दिया। इस पर विचार करने के बाद वांग चेन ने निर्णय लिया कि बेहतर होगा कि पहले अपनी साधना को बेहतर बनाने के लिए ड्रैगन मूल मोती का उपयोग किया जाए। जैसे ही उसने 2 सेंटीमीटर आकार के ड्रैगन ओरिजिन मोती को अपने मुंह में डाला और उसे चबाया, ड्रैगन ओरिजिन की एक लहर बाहर निकल आई। सिस्टम, साधारण कृषक 3 साल की खेती कार्ड का उपयोग करें। इसके अलावा खेती सफलता उतार चढ़ाव परिरक्षण समारोह सक्षम करें। डिंग, साधारण किसान 3 साल का खेती कार्ड सफलतापूर्वक उपयोग किया गया। डिंग, कल्टीवेशन ब्रेकर थ्रू फ्लक्चुएशन शील्डिंग फंक्शन सक्षम, 2,000 मूल अंक घटा रहा है। स्वर्ग स्तरीय शीर्ष श्रेणी के ड्रैगन मूल मोती और साधारण कल्टीवेटर 3 वर्षीय कल्टीवेशन कार्ड का एक साथ उपयोग करने पर वांग चेन को तुरंत ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पूरे शरीर में आग लग गई हो। इतना गर्म, वांग चेन ने जल्दी से कवर उतार फेंका, बिस्तर से बाहर निकला, जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया और जल्दी से अपनी जनजात साधना तकनीक अराजक नौयांग दिव्य कला को प्रसारित करना शुरू कर दिया। अनगिनत आध्यात्मिक ऊर्जाएं कमरे में आने लगीं और अंततः वांग चेन ने एक भंवर की तरह उन सबको अवशोषित कर लिया। वांग चेन अपनी आंखें बंद करके जमीन पर पालथी मारकर बैठे थे और कुछ सेकंड के लिए ध्यान केंद्रित कर रहे थे, तभी उनके शरीर के भीतर साधना अवरोध तुरंत टूट गया। जल्दी से आना, आत्मा क्षेत्र दूसरी परत का निर्माण। पॉप पॉप पॉप, बिल्डिंग स्पिरिट दायरे की 3री परत, बिल्डिंग स्पिरिट दायरे की 4थी परत, बिल्डिंग स्पिरिट दायरे की 5वीं परत, बिल्डिंग स्पिरिट दायरे की 6ठी परत तक ऐसा नहीं था कि वांग चेन के चारों ओर की विशाल आभा जो जमीन पर पालथी मारकर बैठी थी थोड़ी कमजोर हो गई। वांग चेन जानता था कि यह साधारण साधक के 3 वर्षीय साधना कार्ड का प्रभाव समाप्त हो रहा था और उसने शीघ्रता से अपने सारे प्रयास ड्रैगन मूल को अपने शरीर में समाहित करने पर केंद्रित कर दिए। इस क्षण वांग चेन की धीरे धीरे कमजोर होती आभा अचानक एक और डिग्री तक बढ़ गई। दहाड़, अचानक वांग चेन के शरीर के भीतर से एक दहाड़ते हुए ड्रैगन की चीख निकली और उसका दायरा सीधे बिल्डिंग स्पिरिट दायरे की 7वीं परत तक पहुंच गया। और ताइक्सू सेंटेस हॉल के ऊपर एक असामान्य घटना अचानक घटित हुई। एक अराजक ज्वाला भंवर धीरे धीरे अंतरिक्ष को चीरता हुआ उसके ऊपर मंडराने लगा। 9 ड्रैगन के आकार के प्रेत पूरी तरह से शुद्ध सोने के, लेकिन काले और सफेद अराजक नरक की लपटें उत्सर्जित करते हुए लगातार एक दूसरे में गुथे हुए और एक अराजक कड़ाई के चारों ओर उड़ रहे थे। खेती की दुनिया में यह एक अनसुनी घटना थी। अराजक 9 ड्रैगन ज्वाला कड़ाही को घेर रहे हैं। यदि दूसरों द्वारा देखा जाए तो साधना जगत की प्रमुख ताकतें निस्संदेह उसे ताइजू अमर संप्रदाय से छीनने के लिए कोई प्रयास नहीं छोड़ेंगी। उस स्थिति में निश्चित रूप से एक के बाद एक अनगिनत मुसीबतें वांग चेन का पीछा करेंगी। लेकिन सौभाग्य से वांग चेन ने सिस्टम को परिरक्षण फंक्शन सक्रिय कर दिया। इस समय दूर ताइजू तलवार लाल चोटी पर जियांग लिंग अक्सियन आसमान में ऊंचे स्थान पर खड़ा था और ठंडे मन से किंग इरफान को दबाव में आकर अपना दाहिना हाथ काटते हुए देख रहा था। साधु जी, मेरे शिष्य ने तो अपना दाहिना हाथ काट लिया है, क्या अब आप संतुष्ट हैं? लाल वस्त्रधारी महिला जमीन पर खड़ी थी, आकाश में जियांग लिंगक्सियन का सामना कर रही थी, हमला करने की इच्छा को दबा रही थी और ठंडे स्वर में बोली। उसके बगल में पीड़ित किन येफान था, उसका दाहिना हाथ जमीन पर पड़ा था जिसके चारों ओर ताजा खून था। जियांग लिंगक्सियन ने अपनी ठंडी निगाहें हटा लीं, लाल वस्त्रधारी महिला और उसके सामने किन येफान को देखा, उसकी आंखों में बर्फीले हत्या के इरादे को छुपाया। यह अफसोस की बात थी कि ताइजू अमर संप्रदाय के भीतर चीजें बहुत बड़ी नहीं बनाई जा सकी, अन्यथा वह अब तक उन दोनों को मार चुकी होती। हालांकि किन येफान अब नहीं मरेगा, उसे मरना ही था और उसे मरना ही होगा। ये जियांग लिंगक्सियन का दृढ़ विश्वास था, जिसने भी इस जीवन में वांग चेन का दुश्मन बनाया उसे मरना होगा। जियांग लिंगक्सियन आसमान में ऊंची खड़ी थी, धीरे धीरे अपना दाहिना हाथ बढ़ा रही थी और एक भयंकर पकड़ के साथ उसने दूर से किन येफान के कटे हुए दाहिने हाथ को जमीन पर कुचल दिया। क्रैक क्रैक, धमाक, किन येफान का दाहिना हाथ जो जमीन पर गिर गया था जल्दी से जम गया और अंततः एक जोरदार धमाके के साथ वह अनगिनत बर्फ के क्रिस्टल में फट गया। तुम्हें इसी का हक है, तुमने उसका एक हाथ घायल किया है तो मैं तुम्हारा एक हाथ तोड़ दूंगा। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। जियांग लिंगक्सियन की आभा ठंडी थी, यहां तक कि उसके चारों ओर के बादल भी पतली बर्फ बन गए थे और उसने ठंडे स्वर में दोनों को चेतावनी दी। जियांग लिंगक्सियन, जिसे वांग चेन के साथ झटका लगा था, अंततः अपनी कुछ हताशा व्यक्त करने में सफल रही। किन येफान और एल्डम युहोंग की नाराजगी भरी निगाहों को नजरअंदाज करते हुए जियांग लिंगक्सियन के विचार बदल गए और एक स्थानिक दरार तुरंत उसके सामने खुल गई। जियांग लिंगक्सियन ने जल्दी से अपने ताइक्सु संत हॉल को चिन्हित किया और उसकी आकृति तेजी से स्थानिक दरार में गायब हो गई। जियांग लिंगक्सियन के चले जाने के बाद किन येफान के रक्तहीन चेहरे ने अपने दांत पीस लिए और क्रोध के उफान में उसकी आंखें धीरे धीरे काली हो गईं। जाओ, जल्दी लौट आओ, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। एल्डम युहोंग ने किन येफान की चेतना वापस बुला ली और शैतानी के लक्षण तुरंत गायब हो गए। वह केवल अपने दिल में हत्या के इरादे को बलपूर्वक रोक सकता था। उसके दिल में, जब तक वह उठ सकता है, वांग चेन निश्चित रूप से बाद में मर जाएगा और जियांग लिंगक्सियन के लिए हे। लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वांग चेन उसे ये मौका ही नहीं देगा। एक बार उसकी साधना टूट गई तो वो सबसे पहले उसे जरूर मार डालेगा। ... समय उड़ता गया और जल्द ही डूबते सूरज ने पूरे आसमान को लाल रंग में रंग दिया। ताइजू अमर संप्रदाय के सबसे ऊंचे स्थान से देखने पर यह दृश्य अविश्वसनीय रूप से सुंदर लग रहा था। हालांकि इस समय ताइक्सु सेंटेस हॉल का दृश्य पूरी तरह से बेमेल था। अजीब घटनाएं लगातार दिखाई दे रही थी और वांग चेन के शरीर के भीतर से ड्रैगन की दहाड़ स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। हालांकि ये विभिन्न घटनाएं एक मौन ऊर्जा से आच्छादित थीं, जिसे वांग चेन के अलावा किसी ने नहीं देखा और न ही सुना। जियांग लिंगक्सियन के दृष्टिकोण से वांग चेन कमरे के अंदर फर्श पर चुपचाप बैठा हुआ था और शांतिपूर्वक साधना कर रहा था। यही कारण था कि अपने पिछले जीवन में जियांग लिंगक्सियन ने वांग चेन के साथ हजारों साल बिताने के बावजूद कभी यह नहीं पाया कि वह पूरी तरह से एक भट्टी शरीर नहीं था। और इस समय, जैसे ही ताइक्सु संत हॉल में विभिन्न अदृश्य घटनाएं धीरे धीरे गायब हो गईं, वांग चेन धीरे धीरे अपनी साधना से जागृत हो गया। बिल्डिंग स्पिरिट दायरे 9वीं परत पीक हासिल। वांग चेन ने अपने शरीर के भीतर ऊर्जा का उफान महसूस किया। ऐसा महसूस कर रहा था जैसे वह एक ही मुक्का से 100 बिल्डिंग स्पिरिट दायरे के राक्षसी बैलों को मार सकता है। हाहाहा, वांग चेन बहुत खुश था। उसने अपना सिर पीछे फेंका और जोर से हंसने लगा। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। ऐसा लग रहा था जैसे वह पहले से ही अजेय था। हाहा, हालांकि जब वह दूसरी बार हंसा तो उसने अचानक देखा कि जियांग लिंगक्सियन कुछ ही दूरी पर बैठा हुआ उसे देख रहा था और उसकी हंसी तुरंत रुक गई। क्या आप अभी खेती कर रहे थे? जियांग लिंगक्सियन एक कुर्सी पर बैठी थी। उसकी खूबसूरत आंखें संदेह से भरी हुई थी। वह काफी संदेह के साथ पूछ रही थी। उसे याद आया कि इस जीवन में उसने वांग चेन को अभी तक कोई साधना विधि नहीं दी थी। क्या उसने दी थी? इस बार जियांग लिंगक्सियन न केवल वांग चेन का बदला लेने गया बल्कि वांग चेन के लिए उपयुक्त सेंट स्तरीय खेती पद्धति खोजने के लिए ताइक्सु ट्रेजर पवेलियन भी गया। हालांकि उसके पास वांग चेन को देने का समय नहीं था जब उसने अचानक उसे जमीन पर चुपचाप बैठे देखा। ऐसा लग रहा था कि वह खेती कर रहा था।